الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان سے، شیطان کے وار سے، اس کی تھوک سے، اس کی پھوک سے عافیت میں رکھے. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے، اور ایک ہلکا سا بھی شیطان کا وار ہمارے اوپر نہ سوچ کا ہو، نہ بول کا ہو، اور نہ سننے کا ہو. ہم کو یہ ایک ایسا لفظ نہ بول دیں کہ جو ساری کی کرائی کو ضائع کر دیں، اور ہم سننے کا حق ادا کرتے ہوئے ایسے نہ ہو جائیں کہ حق سے حق تلفی کی طرف آ جائیں. ہر وہ چیز اپنے دل، دماغ اور اپنے ارد گرد سے ہٹا لیجئے جو آپ کو اس وقت اس کتاب کو سننے سے دور کرے. شیطان بہت سارے چھپے ہوئے راستوں سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کے رکھے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2020 میں 30th پارے کو کنٹینیو کریں گے. عم یتساءلون آخری سیڑھی ہے. یہاں پر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر قدم نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ چلنے والوں کو اللہ راستے دکھاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راستے دکھا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اس پورے قرآن پاک میں ہم نے جو کچھ پڑھا، آج اس سارے کے اوپر ہمیں لبیک کہتے ہوئے عمل کی گواہیاں قائم کرنے کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تک ہم نے جو صورتیں کر لیں اس میں سے آخری صورت جو ہم نے پچھلے حصے میں کی تھی وہ تھی صورت البروج. تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں کہ یہ پارہ فتنوں کے اس دور میں ہم کس تھیم کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو اپنے موجودہ مسائل میں سے سب سے بڑے مسئلے، اور وہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق محسوس نہیں کرتے، اور قیامت کی جواب دہی کا وہ احساس نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. یہ اس لیے بولا کہ احساس تو ہے لیکن وہ نہیں ہے، ڈر تو ہے مگر وہ نہیں ہے، امیدیں اس سے کچھ زیادہ ہی ہیں جتنی ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے کہ جب کسی کا عقیدہ آخرت خراب ہوتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. تیسواں پورا پارہ قیامت، جنت اور جہنم کے گرد گھومتا ہے، اگر ہم اس کو دوسرے جہان کی نظر سے دیکھیں. اور اس دنیا میں بھی ہم موجود ہیں، کیونکہ ابھی موت نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، اور ابھی جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو اس دنیا کے ناطے سے اگر اس پارے کو میں اور آپ دیکھوں تو یہ تزکیہ اور تربیہ کا سفر ہے. فالہمھا فجورھا وتقواھا. اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کل نفس لما علیہا حافظ، یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل اس پارے کو پڑھتے وقت آپ اور میں شکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہم زندہ ہیں. تو ہمارا خوشحالی کے فتنوں کا جو ایک ٹاپک تھا جس کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، یعنی جب زندگی میں خوشی آتی ہے فتنہ تو سر رہا، تو اس کے ساتھ عموماً جو مشکلات اور جو خرابیاں آنے لگتی ہیں اس میں سے ایک کیا ہے کہ عبادت میں کمی آنے لگتی ہے. انسان وقت کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے، ایک جملہ اکثر لوگ بولتے ہیں، وقت ہی نہیں ملتا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، نہیں وقت نہیں ملتا. اچھا آپ قرآن پڑھنے نہیں آئے، وقت نہیں ملتا. اور اسی طرح سے آپ اور میں اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو کیا مجھے ابھی بھی وقت نہیں ملتا؟ تو پھر الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. پھر اللہ کہتے کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میری خشیت سے ڈر جائیں؟ جس نے وقت دیا اس کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر یہ وقت جا کہاں رہا ہے؟ हम कुरान पाक के सफ़र में अगर अपने लूप होल्स को देखें और वो लीकेज देखें कि हमारी बास्केट में सुराख किधर है, तो इंशाल्लाह ये पारा आपको मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखा रहा है। पूरे कुरान क्या पूरे इस्लाम की बुनियाद टाइम पर है। वला सरिन अल इंसान लफ़ी खुसरिल्लज़ीन आमनू वामिलुस्सालिहाती व तवासु बिल हक की व तवासु बिस सब्र। ये एक बड़ा सा घड़ियाल जो हमारे सरों पे लगा है ज़माने का वक्का, ये आपको मुझे यही दिखाता है। फिर इसी तरह से इल्म वही से बढ़कर इल्म दुनिया का हरीस होना, इसको आज हम सूरत अलक की रोशनी में कदर तफसील से देखेंगे। फिर ज़हनी दबाव और खलू का शिकार होना, एंगजाइटी और स्ट्रेस, इसके बारे में हम इंशाल्लाह सूरत दुहा और अलम नशरख के अंदर कुछ टिप्स लेने वाले हैं कि कैसे आज इंसानियत खलू का शिकार हुई। फिर हम देखते हैं कि जितना माल बढ़ता है उतना ये एहसास होने लगता है कि मेरा रब मुझसे खुश है। अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यानी इंसान माल बढ़ाते बढ़ाते कब्रों में पहुंच जाता है और कहता है जब इधर मिला है तो उधर क्यों नहीं मिलेगा। फिर आप देखिए कि जब दौलत बहुत होती है ना तो मुखलिस मोहब्बतों से महरूम हो जाते हैं, खुदगर्ज़ दोस्त साथ आने लगते हैं, क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो वही आएगा ना जिसको आपसे सच्ची मोहब्बत है। इसके बरक्स आप देखिए कि चाय पीने के लिए और काम निकलवाने के लिए बहुत सारे खुदगर्ज़ लोग जो हैं वो माल और पैसे वालों और शोहरतों वालों के इर्द गिर्द जमा होने लगते हैं। फिर इसी तरह इंसान हलाल और हराम का फ़र्क मिटा देता है। बस सफ़ा एक बहुत बड़ा फितना जो माल के और घर के और दौलत के बढ़ाने के साथ आता है कि हम बहुत सारे बड़े बड़े हराम कामों को भी नागुज़ीर समझने लगते हैं। सूद के बगैर काम नहीं होता आज के दौर में, अब क्या करें, लड़के लड़की को अलग कैसे करें, ये और वो। तो एक जुमला तो लिखिए कि छोटे गुनाह यानी हराम और हलाल के फ़र्क को मिटाकर इंसान कबीरा को सगीरा समझने लगता है। तो फिर अगला काम क्या है कि गुनाहों के फितने आते हैं। पैसे वाले, माल वाले, शोहरतों वाले, बड़े बड़े स्टेटस वालों का तो कई जगह मसला बन जाता है कि जब तक वो ये गुनाह ना करें उनका स्टेटस नहीं पूरा होता। फिर इसी तरह आप देखिए कि रिश्तेदारों की गमी खुशी में इंसान शामिल नहीं हो पाता। बस दफ़ा भाई इतने मसरूफ़ होते हैं कि बहनों के बच्चों की खुशी है लेकिन वो चेक भेज देंगे लेकिन खुद नहीं आ सकेंगे, तो बहन क्या कहती है कि भाई आकर बच्ची को दुआ दे दीजिए, अपनी मोहब्बत दे दीजिए, पैसों को क्या करना है। फिर इसी तरफ देखिए जितना माल बढ़ता है उतना बुखल आने लगता है, और ये भी देखने वाली बात है क्योंकि माल ज़्यादा हो जाता है तो दिल में एक किस्म का क्लॉट आने लगता है। फिर इसी तरह इंसान आसाइश पसंद हो जाता है। आप अपने बच्चों को जब बहुत ज़्यादा आसाइशों में पालते हैं, वॉक वो नहीं करते क्योंकि गाड़ियों में आना और जाना और खाने बहुत अच्छे अच्छे और खूब एनरिच फूड, तो फिर अमूमन देखिए कि बच्चे वक्त से पहले ज़्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं, आंखों पे ग्लासेस लग जाते हैं और इस तरह के हेयरिंग एड्स भी देखे गए। तो आसाइशों में इंसान फितरत से कट जाता है। आज भी अगर आप देखिए तो देहात में पलने वाला बच्चा जो मट्टी में फिरता घूमता है, और शायद ही उसको कभी कोई ऐसी चीज़ें मिलती हों कि जो आज हम अपने बच्चों को हर वक्त अवेलेबल रखते हैं उनके लिए, तो फिर क्या होता है कि उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी, उनको वायरसेस कुछ नहीं कहते, उनको गर्मी सर्दी का असर नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ देखे ज़रा सी कमी बेशी होती है तो हमारे बच्चे बीमार होने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इस बारे में आपको दिखेगी कि खुशहालियों के साथ ही साथ आखिरत की जवाबदेही का एहसास ख़त्म हो जाता है। काम निकलवाने की आदत पड़ जाती है ना, पैसा दिया काम करवा लिया, अपना कार्ड दिखाया काम करा लिया, तो अंदर खाते वही चीज़ जो हम पीछे सूरह बकरा में 2 दफ़ा पढ़ चुके कि वत्तकु यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, और उससे आगे की बात, यानी ये ख्याल पैदा हो जाता है कि दुनिया में भी तो हम अपने काम करा ही लेते हैं ना, देखो मेरे कितने हाथ लंबे हैं, फलां मिनिस्टर से मेरी सलाम दुआ है। तो इस तरह फिर गैर महसूस तरीके से इंसान इस चीज़ में पड़ता है और एक रैट रेस का शिकार होता है। जिसको देखना हो तो आप अपने इर्द गिर्द के लाइफ स्टाइल को देखिए कि क्या रैट रेस है हमारी शादियों पे, ब्याहों पे, और पहनने में और ओढ़ने में और ब्रांड्स में, और जो एक के पास है वो मेरे पास ना हुआ तो क्या, तो क्या हुआ, आप जीत जाइए, रहेंगे तो रैट ही, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जदीद नस्ल की बेचैनी और ज़हनी कर। आज के इस बारे में आपको ये 2 रंग साथ साथ दिखेंगे। आज का पारा हमारी यूथ के नाम है। अपनी बेटियों को साथ बिठा लीजिए, अपनी बहुओं को बुलाइए, क्योंकि वो नस्ल बेचारी जिसको हमने इतनी परेशानियों में डाल दिया, आज कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हम करने लें, क्योंकि अक्सर लोग अपने बच्चों को ही कोसते रहते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, सुनते नहीं बोलते नहीं। अब तो वैसे माजरत के साथ कहूँ माओ को ये भी नहीं बुरा लगता, आज ये भी एक्सेप्ट हो गया। वही बात है कि पहले जो एक्सपेक्टेड था वो एक्सेप्टेड हो गया। लेकिन कुछ दर्द रखने वाली माएँ और बाप, और ख़ास तौर पे जब कुरान के साथ शौरी ताल्लुक़ जुड़ता है, तो वाकई वो कुड़न का शिकार दिखती हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आपने बच्चे को किस सांचे में डाला। उनका इतना कसूर नहीं है जितना आज माहौल का और हमारा कसूर है, और फिर कामयाबी के गलत मेयार जिस पे हम बात कर भी चुके, और आगे हम इंशाल्लाह सूरत तलासुर में इस पे मज़ीद बात करने वाले हैं। आज जो पारा पढ़ने वाले हैं उसके हिस्से का मरकज़ी थीम सूरत अलक की वो इब्तदाई आयात हैं जिसको पहली वही के नाम से हम जानते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लम अल इंसान मा लम यालम। पढ़िए ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और आपका रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिससे वो ना जानता था। पहली वही पहली ईंट, आप इसको इमेजिनेशन में लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे हैं, ताक रात है, लैलतुल कद्र की रात है, और एकदम जिब्राइल आते हैं और अल्लाह के नबी के सीने में ये आयात इल्का करते हैं। क्या वो मंजर होगा, क्या वो समा होगा। और आप सोच के तो देखिए कि पहली चीज़ बड़ी अहम होती है। आप कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। किसी भी जगह बात हो तो सबसे पहले मेन मकसद की बात की जाती है। पहली वही में दो चीज़ों का रंग गालिब है, एक कलम का और दूसरी तख्लीक का। ये इशारा है अल्लाह के नबी के ज़रिए आपको मुझको कि जिस माशरे में माँ और उस्ताद की इस्लाह हो जाती है वहाँ की उम्मतें सवरने लगती हैं। कलम के साथ ताल्लुक़ उस्ताद का है, कलम पकड़ना उस्ताद सिखाता है, और पेट में रख कर पैदा करके कदम कदम पे चलना माँ सिखाती है। जिस माशरे में माँ की इस्लाह हो जाती है और वहाँ के उस्ताद अच्छे हो जाते हैं उन माशरों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है जिसको आज समझने की ज़रूरत है। वो माँ जो कुरान पढ़ लेती है और जिसकी अपनी इस्लाह शुरू हो जाती है फिर उसको अपने बच्चों का गम लग जाता है। एक जेम बना दीजिए, वो माँ जो अपने बच्चों को दीन पे चलाना चाहेगी वो ज़रूर बुरी बनेगी। आज के दौर में वो माएँ मुजरिम बन गईं। ऐसे लगता है ना पेट में रखा, ना पाला, ना इनकी गंदगियां साफ की, ना खिलाया ना पिलाया। आज औलादें ऐसे घूरती हैं, उनको माएँ जहर लगती है। वो कहती है आप बहुत टू मच है, आप बड़ी रिजिड मॉम है। तो याद रखिए इन चीज़ों को सुनते वक्त पढ़ते वक्त हमने अपनी इसलाह करनी है। कह लीजिए कि जदीद नस्ल की बेचैनियाँ और इनकी ज़हनी कर्ब के असबाब ढूंढने हैं, और इंशाल्लाह फिर उनको साथ लेकर चलना है। चैलेंजिंग फेसिंग टू मुस्लिम यूथ, आज डिप्रेशन सुसाइड और स्ट्रेस का लेवल बूढ़ों से ज़्यादा जवानों में है। जाके देख लीजिए फिगर्स को अगर आपको इस बात पे यकीन ना आए। आज बूढ़े लोग इतने डिप्रेस नहीं जितने बच्चे डिप्रेस हैं। वजह क्या है कि हमने उनको एक गलत सेटअप में डालकर उनको परेशान कर दिया। फिर इसमें आज जो हम दुआ सीखेंगे बहुत ही प्यारी दुआ है, क्योंकि आखिरी पारे का मेन थीम ही आखिरत है, और जन्नत और जहन्नम का जिक्र अब सिर्फ तर्जमे पर ही गौर करते जाएं तो देखते जाएंगे। तो जो दुआ हमने इंशाल्लाह आज भी सीखनी है और इसको अब अगले दिनों में सीखते ही रहना है, और वो क्या है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत वमा क़र्रब इलैहा वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन अव अमल वाऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन अव अमल वअस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन क़ज़ैतहू ली खैरा। हे अल्लाह मैं तुझसे जन्नत की तलबगार हूँ और इस कौल और अमल की भी जो जन्नत से करीब कर दे, और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ जहन्नुम से और इस कौल और अमल से जो जहन्नुम के करीब कर दे, और मैं तुझसे सवाल करती हूँ कि हर वो हुक्म जिसका तूने मेरे लिए फ़ैसला कर दिया है बेहतर कर दे। तो अपनी औलादों को भी और ख़ुद को भी जन्नत मांगना सिखाना है, जहन्नुम से दूर करना सिखाना है, और इंशाल्लाह जो काम कोशिशों से रह गया वो दुआओं से हासिल होगा। सिलसिला तो सही है कि रिवायत जो आज की हदीस है 593 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं। आपने फरमाया जो आदमी इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह ताला सख्ती और परेशानियों में इसकी दुआएं कबूल करें, इसे चाहिए कि फराखी और खुशहाली में बकसरत दुआ करें। तो इससे पहले कि बीमार हो जाएं अभी दुआ कर लीजिए, इससे पहले कि औलादें बिगड़ जाएं अभी दुआ कर लीजिए, इससे पहले कि फ़क्र आ जाए अभी से दुआ कीजिए। तो मोमिन वो होता है जो खुशियों में भी अल्लाह को याद करता है और गमियों में। तो खुशहालियों के फितनों में एक फितना क्या है कि इंसान रब से मांगना छोड़ देता है। आइए चलते हैं कुरान पाक के सफ़र पे, सूरत तारिक से तरतीब के अतबार से 86 नंबर की सूरा और 17 आयात है। एक सितारे के नाम पे ये सूरत मौसूम है जिसकी मक्का वाले और अरबों के कुछ कबाइल इबादत करते थे, पूजा करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मु सकिब। कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, तुझे मालूम भी है कि वो रात को नमूदार होने वाली चीज़ क्या है? वो रोशन सितारा है। जवाब कसम सुनिए ज़रा शऊर के साथ। इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज। कोई ऐसा नहीं जिस पर निगहबान फरिश्ता न हो। अपने इर्द गिर्द देखिए, कमरे में आपके साथ कोई है? जी, दो फरिश्ते हैं आपके मेरे साथ इस वक्त भी। किरामन कातबीन, जिसको कहा गया साइक और शहीद बन जाएंगे कब्र से निकलते वक्त, जो आपको मुझे देख रहे हैं। तो यू आर बींग वॉच्ड। शऊर के साथ जिया करें, तन्हाई में कुछ देखते सुनते पढ़ते वक्त इस चीज़ को महसूस करें कि मेरी एक एक चीज़ रिकॉर्ड भी हो रही है और नोट भी हो रही है। फल जंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक। इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। वो एक उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने के दरमियान से निकलता है। 1400 साल पहले किसी को ये बात नहीं मालूम थी कि बच्चा जिस मादे से बनता है वो माँ के सीने और बाप की पुश से निकलता है। और कुरान ने सारी साइंस पढ़ा दी, क्योंकि कुरान को भेजने वाला भी वही है जो कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। बेशक वो इसे फेर लाने पर यकीनन कुदरत रखने वाला है, जिस दिन पोशीदा बातों की जांच पड़ताल होगी। सोचिए, यौमतुब्लसराइर, क़यामत के दिन सारे पर्दे हट जाएंगे, सब सिर सराइर राज खुल जाएंगे। दुनिया में जब आप एयरपोर्ट्स पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या देखा होगा, आपको मशीनों से गुजारते हैं। एक मशीन जो आजकल तकरीबन पूरे ही यूएसए में और नॉर्वे में भी मैंने देखी, शीशे का एक बॉक्स होता है, आपको एक ख़ास एंगल में से उसमें से गुजरना होता है। तो मैंने जब पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा पीछे कंट्रोल रूम होता है। जो शख्स गुजरता है ना, उसके जिस्म की एक एक हड्डी और एक एक अंदर की चीज़ दिखती है। मैंने कहा इससे मकसद क्या है? कहने लगे कुछ लोग बॉडी के अंदर भी कुछ छुपा के ले जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा। तो जिस रब ने इंसान को इतनी अक़ल दी, क्या वो खुद आपके मेरे दिल, मेरे इरादे, मेरी सोचें और ख़ाइनतुल अयुन और वमा तुख्फ़ि सुदूर को नहीं जानता? तो आज ही ठीक कर लीजिए, किसी मेहमान के आने पे घर को लॉक करने, कमरों को बंद करने, अंधेरा करने, ऊपर चादरें डालने की क्या ज़रूरत है? घर साफ़ होगा तो खुद ही खोल खोल के दिखाता है इंसान। बिल्कुल याद रखिए, अगर दिल साफ़ है तो उस दिन कोई गम नहीं कि अल्लाह मेरे दिल को देख रहा है। और याद रखिए कि अल्लाह तो आज भी देख रहा है, उस दिन दूसरों को दिखाएगा। आप और मैं इस पे गौर करके अपने आप को आज से साफ रखना शुरू कर दें, इंशाल्लाह मौत से पहले पूरी तरह तैयार होंगे। फ़मा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। तो ना होगा इसके पास कुछ जोर ना मददगार। बारिश वाले आसमान की कसम और फटने वाली ज़मीन की कसम। और कसम का जवाब ले लीजिए, क्योंकि ये पूरा पारा कसमों और जवाब कसम से भरा हुआ है। जब मैं जवाब कसम कहूँ तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में भी इंसान कुछ चीज़ों पे कसम खाता है, यकीन दिलाने के लिए गवाह बनाता है कुछ चीज़ों को। अल्लाह ताला ने जितनी भी कसमें कुरान पाक में और ख़ास तौर पर 30वें पारे में खाई हैं, ये यकीन दिलाने के लिए नहीं है हमें, क्योंकि अल्लाह ताला की तो शान बहुत बड़ी है, उसकी बात तो शक से पाक है। असल में ये हमें दिखाने के लिए कि बात कितनी अहम है। तो यहाँ कसम का जवाब क्या है? अल्लाह अकबर। बेशक ये कुरान अलबत्ता दो टोक फैसला करने वाला कलाम है। जी, इन्नहु लकौलुन फसल। क्या इस कुरान ने आपको दो टोक फैसले करने की कुव्वत दे दी है 29.5 पारे पढ़ने के बाद? याद रखिए, इसके बाद ज़िंदगी में एकदम सीधापन आता है। दो टोक, या हेयर या देयर। फिर ये नहीं होता हैंकी पैंकी, ये है वो है, और ये फैसले करवाती है किताब। यकीन कीजिए, इसी किताब का फैसला था। बीबी आसिया ने जन्नत का घर चूज़ कर लिया था, लेकिन फिरौन की बात नहीं मानी। और ये इसी कुरान का फैसला था कि जिसमें बिलाल ने उमैया के कोड़ों के जवाब में बियाहद अहद की पुकारें लगाई। अगर हम कई साल से कुरान सुनने के बाद अभी तक कुछ फैसले नहीं कर पाए तो दुआ कीजिए। और दूसरी बात, वमा हुआ बिलहज़ल, ये हंसी और बेफायदा बात नहीं, ये कॉमेडी नहीं है, ये फन नहीं है, ये आपका कोई एंटरटेनमेंट आवर नहीं है। कुरान के साथ कौन हंसी उड़ाता है? जो कहता है एक सफ़ा तुम पढ़ लो एक मैं पढ़ लेती हूँ, जो इस कुरान के तावीज़ बना के गलों में पहन लेता है, जो बेटी के सर से पाँव तक उसको सुन्नतों और कुरान के हुक्मों से खिलाफ ना संवार के और फोटो सेशंस में लेने के लिए कुरान सर पे रखे, ये है गजल। इस कुरान का मजाक दूसरों ने नहीं उड़ाया। आप कहते फुला ने कुरान का मजाक उड़ाया, उसने इसको फ्लश कर दिया और इसके ऊपर नाचे और अपनी औरतों के खुले बदन के ऊपर कुरान की आयतें लगा दी, वो तो करेंगे ही। आज का मुसलमान इस कुरान का मजाक कैसे करता है? तो दुआ कीजिए कि अल्लाह इस कुरान को हमारे साथ हंसी अलाना बना। अमूमन लोग आखिरी पारे के साथ दुआ के लिए बहुत मुंतजर होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुरान की आयतों को पढ़ने के दौरान दुआएं मांगी जाए तो वह आखिर में एक रस्मी कलामी, एक ऐसी दुआ के जो बात में बस दफ़ा थोड़ी सी अजीब सी कैफियत देने लगती है और एक रस्म बन जाती है। तो इसमें साथ साथ दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह हमें इस कुरान की हंसी उड़वाने से बचा। और हंसी तो ऐसे भी बंदा उड़ाता है ना, कि ताल्लुक हो कुरान से और अमल ना हो उस पर, लोग बाद में हंसेंगे आपके सामने, लोग नहीं कहेंगे, नहीं कहते, बाद में कहते हैं देखो देखो कुरान पढ़ी नहीं, देखा इनको ये क्या कर रही थी उधर, ये उनका क्या था? आपने इनकी खुशियाँ देखी, आपने इनके ट्रिप देखे, आपने इनके प्रोफाइल देखे, आपने इनकी फेसबुक देखी, भाई आपको क्या ज़रूरत है मुझे देखने की? वो कहते हैं वो खुद दिखाते हैं, तो फिर मुझे तो नहीं देखनी। लोग हंसी उड़ाते हैं। मैंने एक चीज़ आज से बहुत साल पहले सीख ली थी, पूरी कोशिश करती हूँ उस पर कायम रहूँ, आपको भी सिखाने की कोशिश करती हूँ, कि अब मेरी आपकी इज्जत बस कुरान पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने के बाद, इस पे अमल करने में, बस अब हम महफिलों में लोगों को खुश करने और उनमें इज्जतदार बनने के लिए इस कुरान के हुक्मों को तोड़ के जाते हैं, नहीं होगी इज्जत। जब अल्लाह ने आपका मेरा ताल्लुक़ जोड़ जो दिया मुसलमान होकर इस किताब से, तो अब सिर्फ आपकी मेरी इज्जत है जब हम पूरे इस्लाम के नमूने बन के निकलेंगे। लोग आपकी वजह से अनकम्फर्टेबल होंगे लेकिन आपकी दिल से इज्जत करेंगे, और आपको वहाँ बैठा देखकर लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, देखो देखो ये देखे वो देखे, तो अल्लाह न करे हम इस कुरान की हंसी का जरिया बने। इन्नहुम यकीदू न कईदा, अलबत्ता काफिर हाथ में है और मैं भी एक चाल चल रहा हूँ, तो काफिरों को मोहलत दे दे, इन्हें थोड़े दिन छोड़ दे। तो क्या पता चला इस सूरत से हमें कि हमने इस किताब पर अमल करना है और इसको हंसी खेल नहीं बनाना। अगली सूरत अल आला है, अल्लाह ताला के नामों में से एक खूबसूरत नाम। अब मैं नंबर्स नहीं बोलूंगी, आप चाहें तो बाद में खुद स्लाइड से देख लें, और मुसहफ में तो मिलता ही है। ये सूरत और इससे अगली दोनों सूरतें अल्लाह के नबी सल्लम वितर की रकात में भी पढ़ते थे, ईदैन की नमाजों में भी, और बाज़ औक़ात आप जुमे में भी यही पढ़ते थे। कोई तो बात होगी, आइए उसको ढूंढते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा। अपने बहुत ही बुलंद अल्लाह के नाम की पाकीज़गी बयान कर, जिसने पैदा किया और सही सालम बनाया, और जिसने ठीक ठाक अंदाज़ा किया और फिर राह दिखाई, और जिसने ताज़ा घास पैदा की और इसने उसको सुखा कर कूड़ा करकट कर दिया। हम तुझे पढ़ाएंगे फिर तू ना भूलेगा, ए अल्लाह हमें भी पढ़ा और फिर हम कभी ना भूलें। ए अल्लाह जो साथी लफ्जी तर्जमे याद कर चुके हैं उनको ना भूलें, जो कुरान हिफ्ज कर रहे हैं कर चुके हैं अल्लाह उनको ना भूलें, अल्लाह इस किताब का पैगाम हमें ना भूले, और अल्लाह वो सबक हमें ना भूले जो उम्मत को तेरे नबी पढ़ा कर चले गए। अल्लाह वो भूले वे सबक आज हमें याद दिला दे, या अल्लाह सदाकत का, अमानत का, शुजात का सबक भूल चुके हैं वो याद करा दें। अल्लाह हमसे भी दुनिया की इमामत का काम आज ले ले, मगर जो कुछ अल्लाह चाहे वो जाहिर और पोशीदा को जानता है, हम आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। ये किसको कहा जा रहा है? ये उनको कहा जा रहा है जो डरते डरते दिलों से, कांपते हाथों से अगले कोर्सेज को साइन अप कर रहे हैं। नहीं होगा मुझसे, नहीं नहीं कर लो, हो जाएगा, देखो ना बिस्मिल्लाह करो। याद रखिए जिसके रास्ते पे आप और मैं चलते हैं ना, वो आसानियाँ कर देता है, वो तो है ही यूसर देने वाला। अल्लाह ताला तो इतने प्यार से ये बातें कहते हैं कि मैं आसानियाँ पैदा करता हूँ, तो लिहाजा कभी दीन सीखने पे या सिखाने पे या उसके किसी तकाजे को पूरा करने पे दिल में कोई बोझ आए ना, तो फौरन इस आयत को याद कीजिएगा कि अल्लाह ताला तो आसानियाँ पैदा कर देंगे, तो आप नसीहत करते रहें अगर नसीहत कुछ फ़ायदा दे। ये किसको कहा जा रहा है? इस वक्त तो मुझे कहा जा रहा है। इस उम्मीद के साथ आपको बात कहूँ कि आप सभी सुनेंगे, ये तो नहीं चाहती कि एक सुने, दो सुने, सब सुने, और आपको भी ये पैगाम दिया जा रहा है अपने प्यारे प्यारे बच्चों को, नसीहतें करते रहिए, समझाते रहिए, फजक्किर, क्योंकि जब नसीहत का दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तो अक्ल पे पर्दे पड़ जाते हैं, फिर लोग इस तरह की बातों को सुन के ये नहीं कहते और अच्छा कोशिश करते, मामा आई विल डू, आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो अपनी औलादों को, अपने डिपेंडेंट्स को, अपने प्यारों को बुलाते रहिए, शौहर बीवियों को बुलाते रहें, बीवियां शौहरों को बुलाते रहें, और डरने वाला तो नसीहत ही लेगा। ये भी एक अल्लाह ने नसीहत को जोड़ दिया। लिखिए नसीहत का ताल्लुक डर से है। डर होगा तो नसीहत से फ़ायदा तो ज़रूर लिया जाएगा। आप देखिए छोटी छोटी बातों पे सहाबा किराम कैसे दुबक जाते थे, हम क्यों नहीं दुबकते? अगर आज भी किसी को नसीहत करें और वो आगे से वो बात करे तो समझ लीजिए कि भी डर नहीं, तो फिर टोन चेंज कीजिए, फिर हिकमत यह है कि आप उस अमल पे ना टोकें जो आपको बुरा लग रहा है उसका, फिर उसको अभी अल्लाह का डर सिखाइए। और जो माएँ अपने बच्चों को अल्लाह का डर दे देती हैं और जो उस्ताद अपने शागिर्दों के अंदर अल्लाह का डर भर देते हैं ना, याद रखिए उनको ज़्यादा नसीहतें नहीं करनी पड़ती। इस बात को हज़रत उमर फ़ारूक ने बहुत ही प्यारे अंदाज से कहा कि अपनी औलादों को कुरान सिखा दो, कुरान उनको सब कुछ सिखा देगा। अमूमन शिकवा तो यही है ना, सुनते नहीं, बच्चे बोलते नहीं, मानते नहीं कि आपने उनको अल्लाह का डर दिया। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, और वो क्या है, वह यतजन्नबुहुल अशका। हाँ, बदबख्त इससे गुरेज करेगा जो बड़ी आग में जाएगा, फिर जहाँ ना मरेगा ना जिएगा, यानी ना वो ऐसी ज़िंदगी है कि उसको ज़िंदगी कहा जाए और मौत तो आ नहीं रही, मुराद क्या कि हालत नज़ा में रहेगा। वो जिसको किसी ने कहा कि मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाओगे, अल्लाह ना करे कि मरने के बाद हमारा बुरा हाल हो जाए, हम बुरे मामलात में पड़ जाएँ। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही फ़सल्ला, बेशक इसने फलाह पाई जो पाक हो गया और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह हमें पाक कर दे, अल्लाह हमें तेरे नाम को याद रखने वाला बना दे और हमें और हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। बल तू सिरू नल हयात दुनिया वल आखिरत खैरू व अबका, लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बहुत बेहतर और बहुत बका वाली है। अपनी तरजीहात का किबला देखना है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या है लीस्ट प्रायोरिटीज़ और क्या है एट लीस्ट। हम सारी ज़िंदगी क्या दुनिया को ही पसंद ना करते रह गए और पीछे एक बहुत बड़ी आखिरत हमारे सामने सामने थी। और ये बातें पहली किताबों में भी हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा की किताबों में। हज़रत अबू बकर का एक कॉल नकल कीजिए, कहते हैं मैंने तो अभी तक आखिरत की कोई तैयारी ही नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि मैंने तो कोई आखिरत की तैयारी नहीं की, कि जिन्होंने अपनी जान, अपनी इज्जत, अपना नफ्स, अपना घर, अपना माल सब अल्लाह के रास्ते में दिया। वो कौन सा मुकाम था कि जहाँ अल्लाह के नबी हों और अबू बकर ना हों, जो साबिकून अलवलून हैं, जो अशरा मुबशरा में हैं, जो पहले खलीफे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला के नबी ने फरमा दिया कि मैंने सब का हक दे दिया पर अबू बकर का हक मैं नहीं दे पा रहा, और मैंने जिस पे भी इस्लाम पेश किया उसने थोड़ा सा सोचा सिवाय अबू बकर के, और अबू बकर तो तस्दीक करके सिद्दीक बन गया। अगर उन्होंने आखिरत की तैयारी नहीं की तो ज़रा सा एक लम्हा ख़ुद को दीजिए, सोचिए, आंखें बंद कीजिए, क्या मैंने आखिरत की तैयारी शुरू कर दी? इफ्तारी की तैयारी असर के बाद शुरू कर देते हैं, बल्कि कुछ तो सारा दिन ही करते रहते, खेलते ही रहते हैं खानों के साथ, लेकिन क्या मैंने आखिरत की संजीदगी के साथ तैयारी शुरू की? देखिए, टेक इट सीरियस, इट्स योर लाइफ चेंजिंग। एक छोटी सी गलती से अगर किसी का हादसा और टांग कट जाए, वो गफलत की सज़ा भुगतेगा? आज मैं और आप कुछ कर सकते हैं, अगर आज ना किया तो कल नहीं होगा। मतलब देखिए 30वां पारा है, अगर मैं 26वें पारे में कोई चेंज कराना चाहूँ तो कर सकती हूँ? अभी नहीं, गुजर गई, चली जाने दें, आगे देखेंगे। 25वें में कुछ करूं, मुझे तो ये करना है कि अभी जो रह गया उसका हक अदा कर दूं। तो आज जिंदा है, अभी सहीफे चल रहे हैं, अभी कलम चल रहे हैं, सहीफे खुले हुए हैं, अभी अनडू कर सकते हैं अपने गुनाहों को, अभी कॉटन पे सब कुछ हो सकता है। एक तौबा का फाहा लगाइए, सब पिछली ज़िंदगी के गुनाह माफ़ होंगे। तो क्या सीखा सूरत बुरूज तारिक और आला से? अर्श का मालिक अपने बंदों से बहुत प्यार करता है। क्या आपको कुरान पाक पढ़ते हुए ये प्यार महसूस हुआ? मुझे तो हर दिन हुआ, और ख़ास तौर पर अर्शियों का फ़र्शियों से ताल्लुक़। अल्लाह ने तो कामों पे लगाया ना फरिश्तों को आपके मेरे, कि फरिश्तों इनको वक्त नहीं मिलता अब दुआएं करने के लिए, तुम इनकी दुआएं किया करो। फरिश्तों इनको बहुत ज़्यादा अब अपनी इबादत का वक्त नहीं मिलता, तुम इनके लिए मस्जिदों में नाम लिख दो कि ये बैठे हुए थे वहाँ। और इसी तरह सदाकते कुरान का जिक्र है और सलातुल वितर की सूरतें आज हमने समझ ली, और जिसने नमाज बर वक्त अदा की वो फलाह पा गया। एक नियत करके अगली सूरत पे चलिए, नमाज लेट नहीं करनी। जैसे रमज़ान में घड़ी पे नजरें थी, ख़ास तौर पे फजर और मगरिब के वक्त, इसी तरह मैंने अब गैर रमज़ान में भी ऐसे करना है। बोलिए इंशाल्लाह। ईद के दिन से लेकर ईद की पार्टियां, और वो तो इस साल पता नहीं कैसे होंगी, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में खो नहीं जाना। हमने रमज़ानी मुस्लिम नहीं बनना, हमने हर वक्त के मुसलमान बनना है। आगे है सूरत अलगाशिया, क़्यामत के नामों में एक और नाम लिस्ट में डालिए, अलगाशिया, छा जाने वाली। गशी के लफ्ज़ को जहन में रखिए तो क़यामत का दिन समझ में आ जाएगा, कितने लोग उस दिन बेहोश हो रहे होंगे। और आपने सूरत हज में भी पढ़ लिया था कि क़यामत का जलजला ऐसा है कि जिसमें लोग क्या लगेंगे, जैसे वो नशे में हैं, हालांकि वमा हुम भी सुकारा, वो नशे में नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब की झिड़क बड़ी सख्त है। हलता का हदीस उल गाशिया वजू हुई यौम इज़ैन खाशिया आमिलतुन नासिबा, क्या तुझे भी छुपा लेने वाली क़यामत की खबर पहुंची है? उस दिन बहुत से चेहरे जलील होंगे और मेहनत करने वाले थके हुए होंगे, वो दहकती हुई आँख में जाएंगे, नहायत गर्म चश्मे का पानी इनको पिलाया जाएगा, इनके लिए कांटेदार और दरख्तों के सिवा और कोई खाना न होगा जो न मोटा करेगा न भूख मिटाएगा। बहुत से चेहरे उस दिन तरोताज़ा और आसूदा हाल होंगे, अपनी कोशिश पर खुश होंगे, बुलंदोबाला जन्नतों में होंगे जहाँ कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, जहाँ बहता हुआ चश्मा होगा और इसमें ऊंचे ऊंचे तख्त होंगे और पीने के बर्तन रखे हुए होंगे और कतार में लगे हुए तकिए होंगे, सलीके से सजी हुई बैठक और मखमली मसनदें फैली हुई होंगी। क्या ये ऊंटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए और आसमान को के किस तरह ऊंचा किया गया और पहाड़ों की तरफ के किस तरह गाड़ दिए गए और जमीन की तरफ के कैसे वो बिछा दी गई? करिए क्या फजक्किर इन्नमा मुजक्किर, बस आप नसीहत कर दिया करें क्योंकि आप सिर्फ नसीहत करने वाले ही हैं। अल्लाह अकबर, नसीहत करते रहे। आप देखिएगा इस बारे में कितना इसका जिक्र है, यानी डोंट लूज होप, बिगड़े वो को हिदायत पे अल्लाह ला सकता है। आप दुआओं के साथ अच्छी तरीके से नसीहत करते रहें। और बाकी रह गई कि आप कुछ इन पर दारोगा नहीं हैं। हाँ, जो शख्स रूगर्दानी करे और कुफर करे इसे अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजाब देगा, बेशक हमारी तरफ इनका लौटना है, फिर बेशक हमारे जिम्मे इनसे हिसाब लेना है। तुम इन्ना अलैना हिसाबहुम, तो क्या सीखा आपने मैंने सूरत गाशिया में? पहली बात है कि आज दुनिया में मेहनत का वक्त है, तो मेहनत करते वक्त देखिए कि सही रुख पे कर रहे हैं कि नहीं। लफ्ज़ आमिलतुन नासिबा को हाईलाइट कीजिएगा, ऐसे काम जिसकी कोई मजदूरी ना मिले, एक दिन के वेजिस ना मिले तो मजदूर अगले दिन आना पसंद ना करे। सोचिए, जिसने कुछ किया ही नहीं वो तो बिस्तर तोड़ता रहा, आराम फरमाता रहा, लेकिन जो सुबह से शाम तक काम करे और बाद में चेक ना मिले, क़यामत के दिन कुछ लोगों की मेहनतें ऐसे ही ज़ाया होंगी। तो आइए दुआओं में दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह हमारी कोशिशों को ज़ाया ना करना, ये वो अमल ना हो जो ज़ाया हो। ये कौन से होते हैं? हज़रत उमर एक मौके पे एक किसी गिरजे के पास से गुजरे तो बड़े इत्तेफाक से लोगों को इबादत करते देखी, जैसे वो अपने ज़ोम में ठीक समझ के कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू भर गए। आकर अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी, इनकी बातों का क्या होगा? यानी आपकी समझाने के लिए कहती हूँ, गलत अकीदों के साथ की हुई बातों का क्या होगा? बिदात में डूबे हुए लोगों की इबादत का क्या होगा? अल्लाह को ना मानकर उसके बंदों को कुक दिलाने वालों की अच्छी नेकियों का क्या होगा? तो आपने कहा आमिलतुन नासिबा, अल्लाह ना करे आपका मेरा ये दौरे कुरान आमिलतुन नासिबा बन जाए। फिर दूसरी चीज़ जो इस सूरत में आपके मेरे लिए थी वो क्या थी? लिसाजी हारो दिया, ये नहीं कहा नतज क्या निकले, कोशिशों पर राजी होंगे। आपका मेरा काम अंधेरों में चिराग जलाना है, कोशिश कीजिए, ट्राई इट, स्ट्रगल इट, और इसी में दुनिया से चले जाइए। आपसे मुझसे नहीं पूछा जाएगा इस्लाम आया कि नहीं, आपसे मुझसे बड़े बड़े मुल्कों के नामों के साथ नहीं पूछा जाएगा कि वहाँ इस्लाम के झंडे क्यों नहीं लगे, आपसे मुझसे अपने मुल्क का भी नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह देखेगा तो आपकी मेरी कोशिशें देखेगा। फिर आप देखिए कायनात पे गौर व फिक्र भी सिखाया, अमल की नियतों के साथ इन चीज़ों को सुना करें कि इंशाल्लाह ताला हमने कायनात पे गौर व फिक्र करना है, बाहर निकला करें, इन चीज़ों को देखा करें। और फिर आखिरी बात कि अल्लाहुम्मा हासिब हिसाब यसीरा, हमेशा ये दुआ मांगा करें, अल्लाह हमारा हिसाब आसान लेना। आगे सूरत अल-फज्र है, फजर तो नमाज का भी वक्त होता है और यहाँ ख़ास तौर पर 10 दिनों की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्फज्री वलयालिनश्री वश्शफ़ी वल्वत्री वल्लैली इज़ा यस्र, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की, यानी 10 दिन अशरा ज़िलहज्जा के और 10 रातें रमज़ान का आखिरी अशरा। और आज जब चलने लगे, क्या इनमें अक्लमंद के वास्ते काफ़ी कसम है? क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया, सतूनों वाले इरम के साथ, यानी अपने दौर की बड़ी बड़ी ताकतें सरकशी करने वालियाँ, उस वक्त में अल्लाह के रसूल को पीछे, उसके हुक्म को पीछे डालकर अपने बाप दादा के तौर तरीक़ों पर चलने वालियाँ, जिनकी मानित कोई कौम मुल्कों में पैदा ही न की गई, और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे और फिरौन के साथ जो मेखों वाला था, इन सबों ने शहरों में सर उठा रखा था, यानी सरकशी करते थे, और बहुत फसाद मचा रखा था। आखिर तेरे रब ने इन सब पर अजाब का कोड़ा बरसाया, यकीनन तेरा रब घात में है। वसब अलैहिम रब्बुका सऊता अजाब इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अजाब के कोड़े बरस रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तो घात लगाए रहता है। क्योंकि फामल इंसान निज़ाम अब्तलाहु रब्बुहु फअक्रमहु व नअमहु फयकूलु रब्बी अक्रमन। इंसान का ये हाल है कि जब इसका रब इसको आजमाता है और इज्जत और नेमत देता है, तो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बनाया। नोट किया आपने, नेमतें आजमाइश होती हैं जी। कुमलिया ब्लुआ कुमैय को मकसन अमला, तो नेमतें, औलाद, माल, सेलफोन, ये इम्तिहान के पर्चे हैं। हमारे कल्चर में अमूमन दुख, तकलीफ, बीमारी को तो आजमाइश समझा ही जाता है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इज्जत मिलने को भी आजमाइश समझें, और नेमतों को तो हम हक समझने लग गए। और जब इसको आजमाता है और इसकी रोजी तंग कर देता है, तो कहने लगता है मेरे रब ने मेरी तौहीन की, नाउज़ु बिल्ला। अल्लाह से गुस्सा करता है। और बाज़ दफ़ा तो लोग कहते हैं मैं अल्लाह से पूछूंगा, मैं जाऊंगी तो पूछूंगी। नहीं पूछ सकते आप। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह ताला को इल्ज़ाम देता है कि उसने मुझको जलील कर दिया। ये कौन करेगा जिसके अंदर तकब्बुर है? अपने आप को बड़ा समझने वाला ही ये कह सकता है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि बात यह है कि तुम ही लोग यतीमों की इज्जत नहीं करते और मिसकीनों को खाना खिलाने की एक दूसरे को रग़बत नहीं दिलाते। देखिए, इंसान के थुड़ दिलेपन की बात है। एक इंसान कितना ही महरूम है कि अल्लाह से नाराज़ हो तो हदीस दिल की तख्तियों पर लिखिएगा। और ये मेरी फेवरेट हदीसों में से एक हदीस है। जब मैं लोगों को बेचैन और परेशान देखती हूँ और अगले दिन उनका फ़ोन आता है, माशाल्लाह सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया, एक फ़ोन पे रो रहे हैं, दूसरे पे हंसते हैं, तो कैसे होता है? ये हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमारा रब बंदों की नाउम्मीदी और अपनी तरफ से हालात के तब्दील होने के करीब होने पर हंसता है। आधी बात तो समझ आ गई होगी। अबू रजीन जो हरावी हैं कहते हैं कि अल्लाह ताला हंसते भी हैं। आपने फरमाया, जी हाँ। फिर फरमाया, जो रब हंसता हो, हम इसके यहाँ खैर और भलाई को मफकूत नहीं पा सकते। क्या मतलब है? कि बंदे की मायूसी अल्लाह को नापसंद है, क्योंकि मायूसी स्ट्रेस का जरिया बनती है, और इस पर फिर अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे की दुआ करनी चाहिए। बस दफ़ा हमारे हालात बिल्कुल बदलने के करीब होते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा, और अगले ही लम्हे हालात बदलते, मैं इसको कैसे इंजॉय करती हूँ, इस वक्त भी मैं कर रही हूँ। आप ढूंढ रहे हैं किसी का घर, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। अब नेविगेटर का दौर, उसको छोड़िए, बल्कि उसमें भी नहीं आ रहा। बाद में पता चला जी नया सब डिवीजन था, इसलिए इसमें आ ही नहीं रहा। और आप परेशान परेशान नंबर देख रहे, लाइन देख रहे, फुलां फुलां देख रहे। आप कहते छोड़ो, नहीं मिलना घर, चलो हल्का सा एक टर्न लगाते हैं, कोने वाला ही घर होता है। ये होता है आपके मेरे साथ। हंसी और मुस्कुराइए। अगर आज भी आप किसी मायूसी में, बीमारी में, परेशानी में, औलाद का, माल का, बीवी का, बच्चे का गम, माँ बाप भाई बहनों का गम है, इस हदीस को अपने हाथों से लिख लीजिए कि बंदा बिल्कुल नाउम्मीद हुआ होता है और अल्लाह को तो ऊपर से दिख रहा है ना। ये ऐसी है जैसे माँ को पता होता है कि बच्चे के लिए मैंने क्या छुपा के रखा है, और बच्चे को कहती है ढूंढ लो, तो माँ जेरे लब मुस्कुराती है, देखना अभी जब इसको मिलेगा तो खुश हो जाएगा। तो ये है मेरा रब, और जो मुस्कुरा पड़े वो रब फिर भलाई नहीं देगा। अल्लाह सारी भलाइयाँ सुनने वालों को दे दे। अल्लाह इस वक्त जितने लोग हमारे साथ सुन रहे हैं, इन सब को हर वो अच्छी चीज़ दे दे जो इनके हक़ में अच्छी है, और जो इनके हक़ में अच्छी नहीं, इनको अच्छी बना के दे दे। और अल्लाह अगर हमारे हक़ में कोई चीज़ अच्छी नहीं, तो हमारी दुआएं बदल दे। अल्लाह बच्चों को हमारे सबसे बेहतरीन अच्छे बच्चे बना दे। अल्लाह सब साथी जो इस सारे सिलसिले में मुआविनीन और मददगार हैं, ऐ मालिक, इस कुरान के तकमील के मौके पे दुआ करती हूँ कि तू इनको बेहतरीन तरीके से इनकी मनपसंद चीज़ें अता फरमा दे। और फिर एक और इंसान की गलती, और बहुत बड़ी गलती, खामी है बल्कि, बल्कि हकूकुल इबाद में कमी है, उसका जिक्र है। बताकुलो नतुरास अक्लल्लम्मा, और मुर्दों की मीरास समेट समेट कर खाते हो। हाईलाइट करें, भाई बहनों के हिस्से खा गए, चचा भतीजों के हिस्से खा गए, कहीं भतीजा भतीजे चचाओं के हिस्से खा गए, कहीं बीवी शौहर का, शौहर बीवी का खा गए। अल्लाह ने क्या हकीकत की बात खोल दी। इंसान की ज़िंदगी में तो उसका कलम ना उठाएं, उसकी ज़िंदगी में उसके पेन को ना कोई देखे, उसके बैग में कोई ना झांके, उसकी अलमारी को कोई ना देखे, और उसके आंखें बंद करते ही उसके माल को माले मुफ गनीमत समझ के ले जाते हो। बहुत बड़ा जुर्म है जो इंसानियत में रहा और आज भी है। और वजह क्या है इसकी? व तुहिब्बू नल माल हुब्बन जम्मा, और माल को जी भर कर अजीज रखते हो। ये है खुशहाली का फितना। पूछिए जरा, थोड़ी सी मोहब्बत कम हुई दिल से माल की? तिजोरियों में रखना, समेट के रखना, सजा सजा के रखना, गिन गिन के रखना, तो कहाँ याद रहेगा वक्त कुछ नमाजों की रकतों को याद रखने का और कुछ और। तो अल्लाह ताला बाप को मुझे क़यामत की तरफ ले चलते हैं कि देखो इतना सजा के ना रखो घरों को, ये शोपीस नहीं है। एक बच्चे को रुला देते हो सिर्फ इस वजह से कि उसने तुम्हारे बेड पे कोई चीज़ गिरा दी। मेहमान आए और आपके सोफे के ऊपर कुछ डाल गए और आप कहते हैं नंद को तो कभी बुलाऊंगी नहीं, आज के बाद चार बच्चे लेके आ जाती हैं। और दोस्त हैं बच्चों वाली, नहीं बच्चों को ना लाइएगा प्लीज़, क्योंकि हमने नए नए पर्दे लगाए और वो भी ऑफ वाइट कलर के, और कारपेट तो पहले से क्रीम था। क्या करना है पूजना है? मैं ये नहीं कहती गंदे छोड़ दीजिए, लेकिन दिल से निकाल दीजिए। हो गई तो हो गई चीज़, क्यों किसी का दिल तोड़ते हैं, क्यों किसी की बेइज्जती करते हैं, क्यों रिश्ते नाते काटते हैं? अल्लाह कहते हैं देखो वो माल को जी भर कर अजीज रखते हो, जबकि यकीनन जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी, डिमोलिश कर दिया जाएगा तुम्हारा घर, और तेरा रब खुद आ जाएगा और फरिश्ते सफ़े बांध कर आ जाएंगे, और जिस दिन जहन्नुम भी लाई जाएगी उस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर आज इसके समझने का क्या फ़ायदा। वो कहेगा काश मैंने अपनी इस ज़िंदगी के लिए कुछ पेशगी सामान किया होता। आप इस जुमले पे बाद में गौर कीजिएगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। जो जमा किया सब पीछे रह गया, जो जोड़ा जो सेविंग्स थी पीछे रह गई, जो घर बना के छोड़ा वो पीछे रह गया, कब्र में साथ क्या जाता है? आज मैं और आप इस दुनिया में खो गए और कद्दम तुली हयाती के लिए भूल गए, असल हयात तो वो थी। तो सुनिए फिर, फ़यौमैज़िल्ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद। बस आज अल्लाह के अजाब हो जैसा अजाब किसी का न होगा, न इसकी कैदोबंद जैसी किसी की कैदोबंद होगी। अल्लाह हमें इस अजाब से बचा ले। जो दुनिया में कॉन्टेंट रहा, स्ट्रेस फ्री रहा, ये स्ट्रेस की बहुत बड़ी वजह घर का बुत, एक्स्ट्रा सफाई पसंद होना। कितनी दफ़ा चुपके चुपके जाकर हमारी बहुएं रोती होंगी क्योंकि आपने गुस्से में उनको कुछ कह दिया, और शायद वो बोली कल क़यामत के दिन आपके रास्ते में खड़ा हो जाए कि आप आराम से उतर नहीं सकती जब तक आप इसका जवाब ना दे सकें। शोहर ने गुस्से में एक चीख मारी, बीवी को सहमा के रख दिया, हाथ उठा लिया। शायद सारी ज़िंदगी की नेमतें और एहसानात जो बीवी पर की थी उसके बदले में ये एक थप्पड़ी आपको रोक रहा है। तो याद रखिए आखिरत ओरिएंटेड बनिए। और जब दुनिया में इत्मीनान होता है ना, अब यहाँ आगे मैं ज़रा सा आपको फील कराना चाहती हूँ, जिसकी ज़िंदगी स्ट्रेस फ्री होती है। ये जो लव स्ट्रेस फ्री मैंने इस बारे में डाला ना, इसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये जो अभी बता रही हूँ, दूसरी हमारा आने वाला कोर्स है जो इंशाल्लाह आपको बताते हैं बाद में। सारा स्ट्रेस किस चीज़ के आज? आई एम अंडर स्ट्रेस, मर्द स्ट्रेस में, बच्चे स्ट्रेस में, बेटियां स्ट्रेस में, बेटे देर हो रही जल्दी कीजिए वक्त नहीं है, ट्रैफिक रोल आप देखिए, स्पेशली यूके में जो ट्रैफिक के हालात हैं खासतौर पे लंदन और उसमें उसके इर्द गिर्द के इलाकों में, बताइए स्ट्रेस किस बात का है? इस बात का है जिसको अल्लाह ने यहाँ पेश कर दिया कि इन्नल इंसान लिखुब्बिल खैरी लशदीद, जो सूरत आदियात में भी पढ़ेंगे। आप एक दफ़ा कह दिए जो होना है हो जाएगा, जो मिलना है मिल जाएगा, मेरे नसीब में है अगर जोड़ा सेल में से लेना तो मिल जाएगा, स्ट्रेस फ्री। तो आज स्ट्रेस फ्री रहिए ताकि आपकी मौत बड़ी प्यारी आ जाए। स्ट्रेस फ्री मौत क्या होती है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन्ना इरजी इला रब्बी की राधियतम मर्दिया, ए इत्मीनान वाली रूह तो अपने रब की तरफ चल, लौट चल, इस तरह के तू इससे राजी और वो तुझसे राजी, दो रजाएं मिल रही हैं इधर। और फदखुली फी इबादी, बस मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती और मेरी जन्नत में चली जा। ये है वो मौत जिसके लिए कोई तमन्ना करे। अगर स्ट्रेस करना है ना तो इस मौत को लेने का स्ट्रेस कीजिए। देखिएगा ज़रा एक स्लाइड, नफ्से मुतमईन्ना। हमने 13वें पारे की पहली आयत में पढ़ा था नफ्से अम्मारा, कैसे नफ्स अम्मारा बन के बंदे को गुनाहों पर डालता है। पिछले पारे में 29वें पारे में नफ्स लवामा का जिक्र पड़ा है सूरत क़यामत में। ये है नफ्स मुतमईना, स्ट्रेस फ्री नफ्स, कूल काम, रिलैक्स्ड, स्माइली, मुतमईन, शाकिरा, जाकिरा और राजिया, अल्लाह की रज़ा पे राजी, साइमा, जिसने अपने नफ्स को बांध लिया, ये बनी है। क्योंकि देखिए दुनिया में मौत के वक्त और आखिरत में स्ट्रेस से आज़ाद होने की हर एक को ख्वाहिश है। करना क्या है? हर हाल में मुतमईन रहिए, यदि नेकियों पर कायम रहिए, कनात रखिए, अल्लाह की नाफरमानी पर मुश्तमिल हर फेल से बेजार हो जाए, स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा और नफ्स मुतमईन हो जाएगा। हर वो चीज़ निकाल कर फेंक दीजिए घर से जो अल्लाह की नाफरमानी की तरफ माइल करे। इसी तरह अल्लाह की इताअत पर रही, इताअत इलाही, जिक्र इलाही, ये लोग खुशी और इत्मीनान पाते हैं और एक और नुस्खा, एक टिप नफ्से मुतमईना बनने की, इबादत में लज्जत महसूस कीजिए। फैज़ा फ़रख्त फ़न सब आगे पढ़ने वाले हैं, इबादत का वक्त मुकर्रर कीजिए। अकेला, दिस इज़ योर टाइम, इट्स माई टाइम। ये रमज़ान में दौरे कुरान बहुत अच्छा माई टाइम रहा, बहुत सारे लोगों ने इसके फीडबैक भी दिए थे शुरू में जब ये जुमला बोला गया, इट्स माई टाइम। तो आपका हक बनता है कि आप सारा दिन घरवालों की खिदमत करें, लेकिन कुछ माई टाइम, और इसी तरह सो ऑन, और हर किस्म से दूर करेंगे, नफ्स से मुतमईना होगा। याद रखिए, जिसका नफ्स दुनिया में मुतमईन नहीं, उसका मौत के वक्त मुतमईन नहीं होगा। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का एक कौल नकल कर लीजिए, कहते हैं कि आखरत की जन्नत में दाखिल होने से पहले दुनिया की जन्नत से गुजरना लाजमी है। तो आज दुनिया को जन्नत बनाइए, मुतमईन हो। नफ्स से मुतमईना का ठिकाना जन्नत होगी, हर किस्म की परेशानी और स्ट्रेस से आज़ाद जन्नत। और अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह सब सुनने वालों को मौत के वक्त ये जुमले सुनवा दे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना। अल्लाह हमारे साथ काम करने वाले हर साथी को, वो मेल है कि फीमेल है, उसकी मौत के वक्त उसको ये जुमले सुनवा दे, या ये तुहन नफ्सुल मुतमईना। और अल्लाह हमारे साथ पढ़ने और सुनने वाले और वो प्यारे प्यारे साथी जो दिन रात फॉर्म्स फिल करे, या अल्लाह इन सब को मौत के वक्त ये जुमले सुनवा दे कि या ये तुहन नफ्सुल मुतमईना। अल्लाह इस दुनिया में हमारे दिलों से दुनिया की हिरस और रग़बत निकाल दे। तो क्या सीखा सूरत गाशिया से लेके फजर तक में, सबको ढांपने वाली हकीकत, यानी क्यामत सबको ढांप लेगी, सब एक बराबर हो जाएंगे। मलिया मिट्टी, वो कहते हैं ना, डेथ द लेवलर। कायनात पे गौर व फिक्र और तदब्बर की दावत मिली, शफा और बतर से क्या मुराद है, ऑड एंड इवन कह लीजिए। वसत रिस्क को इकराम न समझो बल्कि इम्तिहान समझो, यानी खुशहालियों में पढ़कर अल्लाह को न भूल दो। और सजदों की बरकतें नफ्स से मुतमईना बनता है। दिन में कुछ वक्त, मे बी फ्यू मिनट्स, सजदे में जाइए, रिलैक्स कीजिए। लोग इसको योगा कहते होंगे या पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे, अल्लाह इसको अपना कुर्ब कहता है। कभी आपकी कोई बात ना मानी जाए, होता है। देखिए, स्ट्रेस कब होता है और डिप्रेशन कब होता है, आप तकरीबन पूरा अगले 6 हफ्ते सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस और गम पे बात सुनने वाले हैं। खुश हो जाइए। जिनको इस तरह का कोई मसला है वो नाम नोट कर लें, बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, और जिन तक पहुंची हुई है उनको तो पता ही है। ये दुनिया इस काबिल नहीं है कि आप और मैं इसका स्ट्रेस करें और इसके डिप्रेशन में रहें। अगली सूरह देखिए, सूरत अल बलद, मक्का के नामों में से एक नाम बलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ववालिदैन वमा वलद। ये तो सारी कस्में हैं, मैं इस शहर की कसम खाता हूँ और आप इस शहर में मुकीम हैं, और कसम इंसानी बाप और औलाद की। अब जवाब कसम सुन लीजिए। लक़द खलक़नल इंसान नफ़ी कबद, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया है, क्या ये गुमान करता है कि ये किसी के बस में ही नहीं। कहता फिरता कि मैंने बहुत कुछ माल खर्च कर डाला, क्या यूँ समझता है कि किसी ने इसे देखा ही नहीं। अलम नजअल्लहु ऐनैन वलिसानं वशफतैन, क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई, कहिए बनाई, और जुबान और होंठ नहीं बनाए। हमने दिखा दिए इसको दोनों रास्ते, सो इससे ना हो सका कि घाटी में दाखिल होता। और क्या समझा कि घाटी क्या है, किसी गर्दन यानी गुलाम लौंडी को आज़ाद करना, या भूख वाले दिन खाना खिलाना, किसी रिश्तेदार यतीम को, या खाकसार मिस्कीन को। फिर इन लोगों में हो जाता है जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की वसीयत करते हैं, यही लोग हैं दाएं बाजू वाले, खुशबख्ती वाले। और इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग, वल्लज़ीना कफरू भी आयातिना हुम असहाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मूसदा, और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ कुफर किया ये कम बख्ती वाले हैं, इन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ से घेरी हुई होगी। बदबख्त और खुशबख्तों का मामला है। देखिए, इसमें अल्लाह ने हमें दो ज़ाहरी नेमतें बल्कि 3 ज़ाहरी नेमतों का एहसास दिलाया, दो आंखें, एक जुबान और होंठ। कभी आपने इसको नेमत समझा? जरा अपनी आंखों पे थोड़ी देर पट्टी बांध के अपने घर में फिर के देखिए, कैसे देखेंगी ये? अगर ये आंखें ना होती तो इतने प्यारे प्यारे बच्चों को कैसे देखती? ये पोतों को देख देख कर आंखें कैसे खुश होती? अगर आंखें ना होती तो इन नेमतों को कैसे देखते? आप देखिए कि बाग में सब्जा देखिए, घर की खूबसूरतियां देखिए, मोहब्बतों को देखिए, अपनी आपके लिए जो मोहब्बत है आपके प्यारों के दिल में उसको कैसे देखते? अगर आंखें ना होती, ये जुबान ना होती, तो कैसे इसे अल्लाह का नाम लेते? ये दो होंठ ना होते तो कैसे इसको इस्तेमाल करके हम अल्लाह ताला के नबी का नाम ना लेते? कि मोहम्मद, लफ्ज़ मोहम्मद में देखिए 2 दफ़ा होंठ आपस में मिलते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात नहीं, नेमतों की भी बात कर दी, ईमान, दीन, इस्लाम, तौहीद, कुरान, सही रास्ते की समझ। तो सवाल कीजिए, क्या मैं अपनी ज़ाहरी नेमतों को बातनी नेमतों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ? हमसे मतलूब क्या है? वहदैनाहु नजदैन, दोनों रास्ते दिखा दिए। इन आंखों से अच्छी चीज़ें देखो तो या बुरी देखो, इस जुबान से अच्छे जुमले बोलो या बुरे बोलो, और इन होंठों को अल्लाह के नबी के नाम के साथ तर कर दो या फिर इन होंठों से कोई गुनाहों के काम ले लो। ज़ाहरी और बातनी नेमतों पे गौर करना सीखना है, अज़ा के सही इस्तेमाल से हिदायत के रास्ते पे चलना है, और अज़ा का गलत इस्तेमाल करके गलत रास्ते अख्तियार करना दरअसल इन नेमतों की नाशुक्री है। और अल्लाह की नेमतों का इल्म, एहसासे शुक्र और तदब्बुर करना स्ट्रेस से बचाता है। अल्लाह ताला आपको मुझे स्ट्रेस फ्री कर दे। फिर आप देखिए कि इसमें आयत 6 में हमने देखा, यकूल अखलक तुमा लल्लुबादा, क्या पता चला कि बुरे आमाल खुशनुमा होने लगते हैं। वजह खुद साख्ता मेयारे ज़िंदगी है, ऐसे ही खुद ही खुश होते रहते हैं। बस आप देखिए कि आज हम जो नाम अपने इर्द गिर्द बड़े खूबसूरत सुनते हैं, मतलब किसको स्मार्ट कहते हैं? पहले दौर में जिसको चालाकी और झूठ कहते थे ना, आज उसको स्मार्टनेस कहा जाता है। आज जिस लफ्ज़ को फ्लेक्सिबल कहते हैं ना, बींग फ्लेक्सिबल एंड आई एम वेरी न्यूट्रल, उसको पहले दौर में मुनाफ़त और धोखादेही कहा जाता था। आज जिसको कॉन्फिडेंट होना कहते हैं, कल के दौर में उसको बदलिहाज होना और बेमुरौवत होना कहते थे। और आज जिसको बोल्ड होना कहते हैं, कल उसको ज़ुबान दराज और चर्ब ज़ुबान कहा जाता था। तो ये हैं नए और पुराने ज़माने के मेयार। नई नस्लों की अखलाकी तबाही में आज फिल्मों का और कार्टून्स का बड़ा हिस्सा है, जिसमें कुछ ऐसे बोल सिखा दिए जाते हैं, बच्चे वही बोलने लगते हैं। फिर आप देखिए, हमने दो सूरतें पढ़ी ना, फजर और बलद, दोनों में खुशहाली का फितना फजर में 15 नंबर आयत पे और बलद में 11 पे आया। दोनों में देख लीजिए कि फजर में खुशहाली में इंसान अल्लाह को भूल जाता है और समझता है कि जो कुछ मुझे मिला मेरी मेहनत से मिला, अल्लाह ने मुझे मुअज्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया चूँकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। इसी तरह सूरत बलद में क्या पता चला कि इंसान अपने माल को इस तरह ना करे कि खर्च करे वो, और वो खर्च उसके लिए आखरत के अजाब का ज़रिया बने। और माल की कसरत अक्सर इंसान को मुख्तलिफ फितनों में डालती है, तो खुशहाली के फितनों में एक फितना के इंसान गुनाहों की तरफ चल पड़ता है। अल्लाह ताला सब साथियों पर रहम फरमाए। फिर आगे है सूरत शम्स, सूरज, इतना बड़ा सूरज, पीछे कमर सूरत पढ़कर आए, यहाँ शम्स को ले लीजिए। अल्लाह अपनी प्यारी प्यारी मखलूकात के नाम पर ये सूरतें पेश करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपने मैंने इनसे भी सबक सीखना है कि ये कैसे अल्लाह ताला के आगे झुके में। व शम्स व दुहा खा वल कमर इज़ा तला खा व नहार इज़ा जल्ला खा वल्लैलि इज़ा यग्शा हा वस्समा इवमा बना हा। कसम है सूरज की और इसकी धूप की, कसम है चाँद की जब के इसके पीछे आए, कसम है दिन की जब सूरज को नुमायाँ करे, कसम है रात की जब इसे ढांप ले, कसम है आसमान की और इसके बनाने की, कसम है ज़मीन की और इसे हमवार करने की, कसम है नफ्स की और इसे दुरुस्त बनाने की, फिर समझ दी इसको बुराई की और बचकर चलने की। 7 आयतें कसम की और सिर्फ 2 आयतें हैं जवाबे कसम की। और वही आपने मैंने सोचना भी और देखना भी है कैसे। फरमाया, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। जी, कसम है नफ्स की और इसे दुरुस्त बनाने की, फिर समझती इसको बुराई की और बचकर चलने की। जिसने इसे पाक किया वो कामयाब हो गया, और जिसने इसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। कौम समूत ने अपनी सरकशी के बायस छुटलाया जब इनमें से एक बदबख्त खड़ा हुआ। इन्हें अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह ताला की ऊँटनी और इसके पीने की बारी की हिफाजत करो। इन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर इस ऊँटनी की कूँछें काट डाली, बस इनके रब ने इनके गुनाहों के बायस इन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और इस बस्ती को बराबर कर दिया। और वला यखाफ उकबाखा, और वो नहीं डरता इसके तबाह कुन अंजाम से। तो नोट कीजिए, इसमें से फल हमहा फजूर रहा व तकवा खा, खैर और शर की पहचान इंसान के अंदर वदियत कर दी गई, इंडल्ज कर दी गई, डाटा में फीड कर दी गई, और पीरव सुन लीजिए, इंसान के DNA में डाल दी गई। खैर और शर का फ़र्क तो जानवर को भी पता है। आप देखिए कि बिल्ली को अगर आप दूध दें तो आपके पास बैठकर पीने लगती है, बल्कि आपके पाँव चाटेगी। लेकिन वही बिल्ली किचन की खिड़की से चुपके से आए और गोश्त की एक बोटी उठा के ले जाए, कभी वहाँ खड़े होकर नहीं खाएगी, क्योंकि पहली चीज़ उसके लिए हलाल है, दूसरी चीज़ हराम है। पहली चीज़ उसको मालिक की खुशी से मिल रही है, दूसरी चीज़ उसको मालिक की नाराज़गी से मिल रही है। सवाल कीजिए, एक बिल्ली को तो हलाल और हराम का फ़र्क पता है, मुझे आपको पता है? हम क्या कमाते हैं, अबदी कामयाबी या अबदी नाकामी? आप देखिए कि अच्छाई का भी वजन होगा क़यामत के दिन, कद अफलहा मन ज़क्काहा, बुराई का भी वजन होगा, दोनों कामयाबियों का नतीजा वजन करने के बाद ही होगा। तो आप, मैं देखिए जो घर लेती हूँ अल्लाह की नाराज़गी से ले रही हूँ कि रज़ा से, जो बच्चों की खुशियाँ लेते हैं वो अल्लाह की रज़ा से लेते हैं कि नाराज़गियों से लेते हैं। अल्लाह ताला मेरा आपका तज़किया करे। अभी सिर्फ चंद सूरतें पढ़ी हैं और 3 दफ़ा तज़किया का जिक्र आ गया, मेरा आपका तज़किया ना हुआ कुरान पढ़ के तो क्या मिला। और तज़किया ड्यूल एक्शन होता है, नेकियों का प्रमोशन और बुराइयों का निकालना। जैसे माली पौधे भी लगाते हैं और जड़ी बूटियाँ भी निकालता है, ऐसा ना हो कि दौरे कुरान के दौरान हम अच्छी अच्छी चीज़ों के आदी हो गए हों और बुराइयाँ ना हो। कोई बात नहीं, अगर पहली दफ़ा सुन रहे हो इट्स नेचुरल, अच्छे काम करते जाइए, आहिस्ता आहिस्ता इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात की सूरत में आपके गुनाह हटाएंगी। लेकिन अगर बार बार के कुरान पढ़ने के बाद भी अभी उधर ही खड़े हैं जहाँ खड़े थे तो फिक्र की बात है। आगे है वल्लैल, रात। देख रहे कायनात की छोटी छोटी मासूम सी चीज़ें जो सुबह शाम देखते हैं लेकिन हम इस पे गौर नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैली इज़ा यख्शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़कर वल उन्सा, कसम है रात की जब छा जाए और कसम है दिन की जब रोशन हो और कसम है ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। कस्मों का जवाब सुन के अपने दामन में झांकते हैं, इन नसायकुम लशत्ता, यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ किस्म की है, स्कैटर्ड स्ट्रगल्स हैं तुम्हारी, बिखरी हुई कोशिशें। मुझे लगता है आज हम मुसलमानों की दीन के नाम पे भी कोशिशें बिखरी हुई हैं, पता ही कोई नहीं, बुलाने वाले को नहीं पता क्यों बुला रहे हैं, आने वाले को नहीं पता क्यों बुला रहे हैं, और बस काम बराए काम, तबलीग बराए तबलीग, पढ़ना बराए पढ़ना, पढ़ाना बराए पढ़ाना, और क्लास बराए क्लास, कोर्स बराए कोर्स। हम उस बच्चे को कहाँ खड़ा करते हैं जो 10 साल तक सिर्फ तीसरी क्लास में घूमता रहे। अल्लाह ताला आपकी मेरी कोशिशों का रुख सीधा कर दे। फम मन आता व तका व सद्दक बिल हुस्ना, अबू बकर सिद्दीक की खूबियाँ आ गईं इधर, जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा। तो हम भी इसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे, लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही की और नेक बात को छुटलाया तो हम भी इसकी तंगी और मुश्किल के सामान मुयस्सर कर देंगे। इसका माल इसे औंधा करने के वक्त कुछ काम ना आएगा। बेशक राह दिखा देना हमारे जिम्मे है और हमारे हाथ में आखरत और दुनिया है। मैंने तो तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने छुटलाया और उसकी पैरवी से मुंह फेर लिया। और इससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार होगा, जो बाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है। किसी का इस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जाए, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्गो बुलंद की रजा चाखने के लिए। यकीनन वो अल्लाह बियान करीब रजामंद हो जाएगा। अबू बकर सिद्दीक और अबू जहल का तकाबुल था इस सूरत में, हमारे असलाफ की तफासीर की रोशनी में, इन आयतों में। आपने मैंने क्या सीखना है इसमें से? क्या आप और मैं भी अबू बकर सिद्दीक के नक्शे कदम पे चल के फैयाज हुए कि नहीं, या फिर नाउ सुबेला अबू जहल वाली रौनत और बड़ाई तो नहीं आ गई? और कोशिशों का रुख सीधा करना है। और आप देखिए कि उसर में यूसर है, जिस रास्ते पे चलेंगे कल वो आसान होगा। गुनाह करने वाले को आराम से करते हैं, नाफरमानियाँ करने वाले को आराम से करते हैं। तो अल्लाह ताला आपको मुझे क्या सिखाता है सूरत बलद, शम्स और लैल में, सदकात और अमाले साले जहन्नुम से निजात के ज़ामिन हैं। और अल्लाह की कस्मों का जिक्र और नफ्स की पाकिजगी का बयान है। आले समूद की तबाही के असबाब क्या थे? सरकशियाँ। अल्लाह से डरते रहो ताकि वो तुम पर अपना फजल करे, और मोमिन की मंजिल अल्लाह की रज़ा होती है। ऐ मालिक हम सब से राज़ी हो जा, या अल्लाह जो बात में भी हमारे साथ शामिल होंगे इस सफ़र में उनसे भी राज़ी हो जा। या अल्लाह हमें खैर के लेने और देने वालों में शामिल कर दे, हमें अहले खैर में डाल दे। वद्दुहा, चढ़ता सूरज, दुहा का वक्त, जो कुछ मुल्कों में इस वक्त भी है और जहाँ बैठकर मैं बात कर रही हूँ वहाँ भी इस वक्त दुहा का वक्त है। देखते हैं ये सूरत और इसकी अगली सूरत अलम नशर, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ध्यान दिलाती। जब दुहा का लफ्ज़ सुनेंगे तवज्जो अल्लाह के नबी की तरफ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल अूला, कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जबकि वो छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हुआ है। हाईलाइट कीजिएगा अगले जुमले को, वलसौफ़ योती का रब का फतरता, यकीनन तेरे लिए इंजाम आगाज से बहुत बेहतर होगा, तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू राजी और खुश हो जाएगा। क्या इसने तुझे यतीम पाकर जगह ना दी और तुझे राह भूला पाकर हिदायत न दी, और तुझे नादार पाकर तवंगुर न बनाया। बस यतीम पर तू भी सख्ती न किया कर, और न सवाल करने वाले को डांट डपट, और अपने रब की नेमतों को बयान करता रह। वा अम्मा बि नेमति रब्बिका फहद्दिस। प्यारे नबी के बारे में ये आयत है, ये सारी सूरत ही ऐसी है। वही के ना आने की वजह से अल्लाह के नबी के दिल में कुछ खदशात है। पहली वही के बाद कुछ अरसा वही रुक गई थी, जिसको फतरतुल वही कहते हैं। तो आप क्रेविंग फील करते थे, जैसे आज ही बहुत सारे लोग दुखी हो रहे हैं, कल क्या करेंगे। तो बताएंगे आपको कल क्या करेंगे इंशाल्लाह। लोग सोचते हैं हाय दौरे कुरान ख़त्म हो रहा है, कोई बात नहीं, दौरे कुरान ख़त्म हो रहा है ना, तो इसके फ़ौरन बाद बहुत कुछ शुरू भी हो रहा है। आपको एक दिन फारिग नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, इवन आप चाहेंगे तो हम ईद के दिन भी आपको कुछ देने को तैयार हैं। तो ये अंदेशे थे कि शायद मेरा रब मुझसे नाराज़ है, शायद मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया है, मुझसे नबूवत का काम नहीं लेना चाहता। आप देखिए, जो वॉलंटियर करना चाहें और कुछ दिन तक उनको काम ना मिले, वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे, हमें काम क्यों नहीं दिया जा रहा, हमसे ये काम क्यों नहीं लिया जा रहा, सिखाया तो क्यों नहीं। कोई बात नहीं, आप स्टैंड बाई पर रह कर भी इंशाल्लाह अजर पा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे काम बहुत सारे लेने, इसीलिए आप काम सीख रहे हैं। फितना और उम्मत के जवाल की वजह से अल्लाह ताला के बारे में मुसलमानों के दिलों में कुछ खदशात हैं। बस आप देखिए कि आजकल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुनिया मुख्तलिफ हो गई, इवन ये ईद भी बड़ी मुख्तलिफ है। बहुत सारे साथी रोज़ पूछ रहे हैं कि बताइए ईद कैसे करें। तो इंशाल्लाह कल हम एक शॉर्ट सेशन करेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट बाद में होगी आपके सामने, कि ये ईद 2020 कैसे मनानी है। लेकिन कुछ लोग जो गलत फहमी का शिकार है, वो क्या, वो कहते हैं देखे ना, अल्लाह हमसे नाराज़ है, शायद इसलिए मस्जिदों के दरवाजे और तवाफ़ बंद हो गए, अल्लाह ने हमें छोड़ दिया, इसलिए देखे मुसीबतें टूटनी थी तो गैर मुस्लिमों पर टूटती, कोरोना मुस्लिम्स पे क्यों आ गया, और शायद अल्लाह हमसे उम्मत वसत की जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता। देखिए, अगर ये सारे जुमले एहतसाब के लिए ना और सेल्फ असेसमेंट के लिए तो वेरी गुड, लेकिन अगर फतवे हैं और जुमले हैं और आके लोगों को सताने और खपाने के लिए, तो बिल्कुल नहीं बोलने। हमेशा मुश्किलात में अल्लाह का ये जवाब याद रखिए, तसल्ली देता है अल्लाह नबी को, क्या कहते हैं, आपका रब आपसे नाराज़ नहीं, आपके रब को अल्लाह ने नहीं छोड़ा, आने वाला वक्त बेहतर होगा, अल्लाह खुश करेगा। इतनी प्यारी आयत है कि आपका आखिरी वक्त दुनिया के वक्त से बेहतर होगा, आपका बुढ़ापा आपकी जवानी से बेहतर होगा, आपके तालीम लेने के दिनों से आपके तालीम देने के दिन अच्छे होंगे। पर उम्मीद रहिए, आज मुसलमान भी यही सोचे, आपका रब नाराज़ नहीं है, रब ने छोड़ा नहीं है, अभी ईमान दिलों में है, अभी नेक मुसलमान मौजूद हैं, अभी उम्मीद की किरण मौजूद है, उम्मत वसत की जिम्मेदारी हमारे लिए मशरूत है। हबलुल्लाह को पकड़ना, रमल बिर मारूफ और नहीं अनिल मुनकर शरायत में आज पकड़ लीजिए, कल अल्लाह आपके हालात बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह इस आफत और मुसीबत को हमारे लिए खैर का जरिया बना दे। इसके बाद देखिए कि इस सूरत में अल्लाह के नबी की हालत को भी बयान किया गया है, अल्लाह के एहसानात का भी जिक्र है, और अल्लाह का हुक्म कैसे, हालत क्या थी, यतीमी की थी, अल्लाह का एहसान हुआ नबूवत मिल गई, हुक्म यह कि आप भी यतीमों का ख्याल रखिए, और यकीन कीजिए जो खुद यतीम हो वही यतीम का दर्द जान सकता है। इसी तरह आप तंग दस्त थे, अल्लाह ने गिना करके तंग दस्ती को दूर किया, आपको भी कह दिया साहिल को ना झिड़को, माली मुआवनत करो, माली वसाइल को अच्छा इस्तेमाल करो। फिर आप भूले हुए थे, यानी अल्लाह की तलाश में थे, लिखिए अल्लाह के नबी के दिल में हिदायत की तलब थी, तभी तो बाप दादा छोड़िए पूरा खानदान एक राह पे था और आप दूसरी राह पे चले गए। अल्लाह ने हिदायत दे दी तो मांगने वाले को अल्लाह हिदायत देते हैं, वो कहते हैं ना कि ढूंढने वालों को हम दुनिया नई दुनिया देते हैं। आप में तलब थी तभी दौरे कुरान हो रहा है, जिन साथियों ने पहली दफ़ा दौरे कुरान किया है मुबारक हो, आप में बड़ी खैर है, तभी तो अल्लाह ताला आपको अब मज़ीद चीज़ों पर लेके आ रहा है। तो नेमत का इजहार कैसे, कि इल्मी साइल को कुरान की तालीम और दावत दी जाए, यानी इल्म के सवाली, जो लोग कहते हैं अब हमें और पढ़ाइए और बताइए, तो उन उस्तादों के लिए भी बात है कि सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी लोगों को सिखाइए, ये ज़िंदगी भर करने का काम है। फिर आप देखिए कि चूके बारे में हम थीम में चल रहे हैं साथ साथ, कि जब बंदा बहुत चीज़ों में खो जाता है तो स्ट्रेस होता है, तो इस सूरत में लिख लीजिए स्ट्रेस की रूहानी अलामतें, यानी कैसे पता चले कि आप स्ट्रेस्ड हैं कि नहीं। जिस्मानी अलामतें आपको आगे जाके इंशाल्लाह अगले कोर्स में दूंगी, यहाँ सिर्फ चंद चीज़ें जो इस सूरत में से एक्सट्रैक्टेड हैं वो नोट कीजिए। अगर आप अल्लाह के बारे में बदगुमान हैं, बुरे बुरे गुमान करते हैं, अल्लाह से आप शिकवे और शिकायतें करते रहते हैं, इबादत में आपको खुशी महसूस नहीं हो रही, बेसब्रापन है, अल्लाह की रज़ा में आप राज़ी नहीं हैं, लोगों से आपके ताल्लुकात ख़राब है, दिल में बुग़्ज़ और कीने रखे हुए हैं, अब तो आपने दुआएं भी करनी छोड़ दी, तवक्कुल की कमी की वजह से मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूस हैं कि आप तो गए बस, अब तो दुकान भी बंद और फैक्ट्री भी बंद। हाँ, इसी तरह लोगों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा के उनको बद दुआएं दे रहे हैं कि इनकी वजह से हो रहा है। और अगर आप अपनी मुश्किलात के वक्त में अंदेशों और फिक्रों में डूबे रहते हैं, रब पे भरोसे नहीं करते, लिख लीजिए ये 11 पॉइंट, दीज 11 पॉइंट्स अगर आपके अंदर सारे हैं, यू आर वेरी मच स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड हैं। निकलने के तरीके आप सीख ही रहे हैं, आगे आपको बताए भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सब चीज़ें खुरच के निकालें, इसको एक चेकलिस्ट बना लें हर सुनने वाला अपने लिए कि मैंने ये चीज़ें अपने अंदर से निकालनी है। आगे है सूरत शरह, शरह सदर की दुआ तो रोज़ मांगते हैं, रब्बी शरह ली सदरी, और ज़ुबान की गिरें खुलवाते हैं। आइए सूरत को पढ़ के देखते हैं कि ये क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक वरफ़ाना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और आपसे आपके बोझ नहीं उतार दिए, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, और हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। करें क्या आपके मेरे लिए, कल से क्या करना है। फैज़ा फ़रख्ता फ़नसब वइला रब्बिका फ़रग़ब, बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। हर मसले और मुसीबत का हल हर मुश्किल के साथ आसानी में है, बाद नहीं साथ साथ चलती है। ये दुनिया धूप और छाँव है, ये नहीं कि ये पूरा महीना धूप रहे और पूरा महीना छाँव रहे। देखिए रात कभी दिन, कभी सुबह कभी शाम, कभी बारिश कभी आंधी, तो ज़िंदगी में धूप छाँव तो रहेगा। तो बाद का इंतज़ार ना करें, साथ ही साथ खैर में रखें। अल्लाह का तो एक दफ़ा भी बयान करना काफ़ी था कि फाइंदा माल उसरी युसरा, मगर दूसरी बार क्यों फरमाया, इसकी गैर मामूली हैसियत को जाहिर कर रहा है। हमसे क्या मतलूब है कि बसीरत की निगाह से खुद पे नज़र डालिए। ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी होगी और मुश्किल कुशा किसी और को बनाओ और जाओ, साथ साथ चलेगा, आपने मैंने इस पे रहना है। तो अमूमन देखिए कि स्ट्रेस जो होता है ना, वो हमें मुश्किलात की वजह से होता है। मसलन चलिए अपने ऊपर लीजिए, हर एक इसको अपने कल्चर और अपने ख़ानदानी रस्म रिवाज के ऊपर लीजिए। स्ट्रेस कब होता है, यानी बंदा दुखी कब होता है? नंबर एक, खालिक से ताल्लुक़ कमज़ोर होता है, ख्वाहिशात और मकासद पूरे नहीं होते जब, कुरान सुन्नत से दूरी की वजह से, अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुक्री से, और मनफी सोच यानी नेगेटिव थॉट पैटर्न जो होता है बंदे का। इसी तरह जाहलाना रस्म और रिवाज का बोझ होता है, माली मसाइल और बीमारियां आती हैं, घरेलू मसाइल और रिश्तों में नाकामी की वजह से स्ट्रेस होता है। इसी तरह बास बच्चे हमारे जो यंग हैं, तालीमी मैदान में नाकाम होने की वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, लोगों की बातों का असर ले लेते हैं, दुनिया की बेसुबाती और आखिरत में अल्लाह ताला के वादों पर यकीन नहीं होता। इन सब को भी खुरच के निकाल दीजिए, ये वजूहात दूर होंगी तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद होंगे। अब हल भी ले लीजिए, क्योंकि दवा ना दे डॉक्टर तो फिर बीमारी बताने का फ़ायदा क्या है। तो लिखिए, जो गुजर गया सो गुजर गया, इसे मानना पड़ेगा। बस ये ज़िंदगी का एक तारीक बाब था, बंद कर दीजिए इस दरवाजे को। ज़िंदगी की गाड़ी में आगे देखिए, देखिए जो ड्राइवर सिर्फ बैक मिरर में देखता रहे वो तो हादसों का शिकार होगा ना। विंड स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन क्यों होती है आगे की, कि आगे देखिए। तो अपनी ज़िंदगी के दुखों तकलीफ़ों को बंद कर दीजिए। बस लोग गम मनाते रहते हैं, गम पालते हैं, इससे बेहतर आप एक बिल्ली पाल लें और उसके साथ लगे रहें। फिर दूसरा हल यह कि अपने रब पर कामिल भरोसा करते हुए सब्र और तवक्कुल कीजिए कि मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, ये याद कीजिए। कज़ा और कदर को मानते हुए हर हाल में राजी ब रजा रहिए। अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखिए कि ये वक्त टल जाएगा, क्योंकि हर रात के बाद दिन आता है। वो आपने वाक्या तो सुना ही होगा अगर आप रेगुलर लिसनर्स हैं, कि इट शेल पास सून, ये भी जाएगा, ये गुजर जाना है। गम नहीं रहा तो खुशी भी नहीं रहनी, खुशी नहीं रही तो गम भी नहीं रहना। फिर ये भी लिख लीजिए कि वल आखिरत खैरुल्लक मिनल ऊला, हर आने वाला वक्त बेहतरी होगा। और आप देख रहे हैं ज़िंदगी दिन ब दिन बेहतरियों में जा रही है। अपने से ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा लोगों को देख लें, जैसे यतीम और साहिल को देख लीजिए। अल्लाह की नेमतों पे गौर कीजिए, उसका शुक्र अदा कीजिए, इस्तग़फ़ार और रजू इल्लाह करें, गुनाह और नाफरमानी के तमाम काम छोड़ दीजिए अगर स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, और ईमान को बढ़ाने के लिए कुरान से जुड़ जाएं, नियत करते हैं, इरादा करते हैं इंशाल्लाह। तो बोलिए, इसी तरह नमाजों की पाबंदी और अल्लाह का जिक्र करें, इसी से दिलों को सुकून नसीब होता है। इसी तरह जहन खाली ना रखें, सादा और मुतवाजन गज़ा खाइए, एक्सरसाइजेस कीजिए। जितना ज़्यादा आपका फूड कंट्रोल्ड होगा, आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके अंदर से स्ट्रेस निकलेगा। फिर इसी तरह सुबह जल्दी जागें, रात को जल्दी सोएं, और अपने गम और परेशानी की फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला से करें। रजाकाना तौर पर नेकी के काम करें, वॉलंटियर कीजिए विदाउट एनी थिंग। आप देखेंगे कि आपका दिल खिलेगा। इससे सब्र जमील करते हुए किस्मत पर राजी रहें, दुनिया की मुसीबतों पर गम करने की बजाय जन्नत और उसकी नेमतों को याद करें, स्ट्रेस की वजह को दूर करने की कोशिश करें और इसी तरह से दिल से नफ़रत, बुग़्ज़, कीना, हसद और तमाम मनफी जज्बात को निकाल दें। अच्छी किताबों का मुतालिया कीजिए और हर वो काम कीजिए जिससे ईमान में इजाफा हो, और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे कि गमों के बदले आपके दर्जे बुलंद कर दे। 22 हल मिले हैं। क्या आपका स्ट्रेस कुछ कम हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नमा अल-उस्रि युस्रा। परेशानियों का सबसे बड़ा हल क्या है? राजी बरजा और बियदिकल खैर। बीमारियों, परेशानियों, तकलीफ़ों पे ये दो कोड वर्ड रख लीजिए। तरजीहात का तयन कर लीजिए, दूसरों की राय से नहीं अपने ज़मीर से फ़ैसला कीजिए। दूसरों की नेमत से मरूब ना हो, बेहतरीन कोशिशें कर लें तो 22 + 4 26 थिंग्स लेकर निकलिए, स्ट्रेस दूर होगा। और अल्लाह ताला हमें इस पारे को पूरा करने का भी स्ट्रेस ना दे, हम इसको अल्लाह की रहमत से पूरा कर सकें। दुआ कीजिए, बस अपने दिल को ठंडा रखा करें। देखिए, जो ड्राइवर गर्म हो जाता है ना, वो एक्सीडेंट करता है। जो सिस्टर किचन में आके घबराती है ना, वो हाथ भी जलाती है, खाना भी जलता है। रिलैक्स्ड, बी रिलैक्स्ड। अल्लाह से दुआ करके मामला तो उस पर डाल दीजिए। सूरत 3। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। कसम इंजीर की और जैतून की और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर की यानी मक्का। जवाब कसम क्या है? लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसनी तक़वीम थुम्मा रददनाहू अस्फ़ला साफ़िलीन। यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, फिर इसे नीचों से नीचा कर दिया। लेकिन जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमल किए, तो इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म न होगा। बस तुझे अब रोज़े जज़ा के जुटलाने पर कौन सी चीज़ आमादा करती है? क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों का हाकिम नहीं? कहिए, जी अल्लाह, आप सब हाकिमों से भी बड़े हाकिम हैं। तो आप देखिए कि सूरत में 3 जैतून, तूरे सीना और बलदुल अमीन की बात है। पहली दो चीज़ों का ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है, क्योंकि जिस इलाके में हज़रत ईसा पैदा हुए और बड़े, यानी वादी थी और उस तरह की जगह जहाँ बैतुल्लाहम के नाम पे जिसको याद किया जाता है। दूसरा, तूरे सीनीन का ताल्लुक हज़रत मूसा से है और बलदुल अमीन का ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। यानी सिर्फ दो आयतों और तीसरी आयत को साथ मिलाइए, पिछले बड़े बड़े अम्बिया को जोड़ दिया और ये चारों रिप्रेजेंटेटिव हैं इस वक्त के मौजूदा दीन के नुमाइंदों के, यानी क्रिश्चियनिटी, ज्यूइज्म और इस्लाम के नुमाइंदों को सिर्फ 3 आयतों में डालकर अब अल्लाह ने जो बात की है वो क्या है? इंसान को अहसनी तकवीम में पैदा किया। यह अहसनी तकवीम क्या है? खिलाफत। इंसानी तख्लीक का मकसद है कि बंदा इस दुनिया में अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करेगा। इन निजायलों फिल अर्दी खलीफा से ये बात हम सुनते आ रहे हैं और इकामत दीन तक हम पहुँचे हुए हैं। जितना अल्लाह के निज़ाम को अपनी ज़ात से लेकर दुनिया पे नाफिज करते जाएंगे, आप अहसन रहेंगे। और अगर इनको छोड़ दिया, मनसबे खिलाफत के तकाजे, अल्लाह की इताअत करना, नफ्स की इताअत छोड़ना, हमारा रद्द अमल क्या है कि अल्लाह की इताअत छोड़ के नफ्स की मानते हैं। अल्लाह ने कहा मेरे कवानीन नाफिज करो, हम ख्वाहिशात के और गैरों के कवानीन को नाफिज करें। मैं मनसबे खिलाफत का तकाजा था कि अल्लाह के कानून के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनके खिलाफ जिहाद कीजिए। हमारा अमल है सुस्ती, आसाइश पसंदी, फसा बनता व रब्बू का फ़कातिला, तो नतीजा लिखा हुआ सुम्मा रदत ना हो असफला साफिलीन। अफसोस के साथ, दर्द के साथ एक दुआ मांगने दीजिए कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इस असफल साफिलीन से निकाल, नबी की उम्मत को उभार। ये आज क्यों मायूस और स्ट्रेस्ड है? क्योंकि इसने मनसबे खिलाफत के तकाजे पूरे नहीं किए। अल्लाह ताला आपको मुझे इनको पूरा करने की तौफीक दे। आगे है वो सूरत जो पहली ईंट बनी दीन इस्लाम की। 5 आयतें हैं और आप देखिएगा कि मानी और का एक समंदर है। पूरी सूरत को पढ़कर फिर आखिर में इस पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है। जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था। सचमुच इंसान तो आपे से बाहर हो जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को बेपरवाह या तवंगुर समझता है। यकीनन लौटना तेरे रब की तरफ है, भला इसे भी तूने देखा जो बंदे को रोकता है जबकि वो बंदा नमाज अदा करता है। इशारे हैं अबू जहल की तरफ, लेकिन असल में यह है कि टू होम इट मे कंसर्न, हर दौर का वो शख्स जिसको अल्लाह का दीन और उसका काम अच्छा न लगे। भला इसे भी तूने देखा जो बंदे को रोकता है जबकि वो बंदा नमाज अदा करता है? भला बतला तो अगर वो हिदायत पर हो या परहेजकारी का हुक्म देता हो। भला देखो तो अगर ये झुटलाता हो और मुंह फेरता हो तो क्या इसने नहीं जाना कि अल्लाह ताला इसे खूब देख रहा है? यकीनन अगर ये बाज ना आया तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़ कर घसीटेंगे, और ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। ये अपनी मजलिस वालों को बुला ले, हम भी दोजख के प्यादों को बुला लेंगे। खबरदार इसका कहना हरगिज ना मानना। वसजुद वक्तरिब, और सजदा कर और करीब होता जा। ये है जी सूरत अलक, जमा व लोथड़ा। अल्लाह ताला की चार सिफात हैं पहली वही में, रब्बी का, खलक अल इंसान, अल अक्रम और अल्लामा बिल कलम। अल्लाह ने इंसान को साहिब इल्म बनाया, अल्लाह ने कलम के इस्तेमाल सिखाए और उसका फन भी सिखाया, और इल्म और लिखना बुलंद तरीन सिफात में से है। हमसे मतलूब यह कि दीनी और दुनियावी दोनों इल्म हासिल कीजिए। करीम रब तक पहुंचना है, सरकशी नहीं करनी। और जो बात इन आयतों के टाइटल में बोली थी यहाँ बोल दूँ, यानी आज के सेशन के बिल्कुल आगाज़ में एक जुमला बोला था कि पहली वही में कलम का और तख्लीक का जिक्र है, इशारा है कि माँ की और उस्ताद की इसलाह कर लो, उम्मत खुद ही संवर जाएगी। अल्लाह ताला आज के उस्तादों को भी बेहतरीन कर दे और आज की माँ को भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने वाला बना दे। यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी इकरा बिस्मी पे। पहला लफ्ज़ जिस पे दीन इस्लाम शुरू होता है वो लफ्ज़ इकरा, पढ़ो इल्म। और इल्म कौन सा? बिस्मी रब्बी का। आप कहते हैं अच्छा ये कुरान है, अच्छा ये तजवीद पढ़ना है, अच्छा ये ग्रामर है या तर्जमा है, तो झूठ है ये सब। याद रखिए हर इल्म सेक्रेड है, कोई भी इल्म सेक्युलर नहीं होता, हर इल्म सेक्युलर। ये सब जुमले जो आप बोल रही हैं ये यंग बच्चियों के फ़ायदे के हैं, और उनकी माँ को भी अपने क़िबले दुरुस्त करने हैं कि अगर आप अपने बच्चों को जो भी इल्म दे रहे हैं उससे पहले अगर आप उनको अल्लाह से जोड़ चुके हैं तो हर वो इल्म बिस्मी रब्बी का है जो आपको रब से जोड़ दे। साइंस पढ़िए, अल्लाह से जुड़िए साइंस के रास्ते देख कर। बायोलॉजी पढ़िए, जिस्म के अंदर झांकिए, फिर देखिए बायो में तो आपको कायनात के अंदर जो फूल बूटे और जो बॉटनी दिखाई जा रही है उसमें देख लीजिए। जोलॉजी पढ़ के जिस्म के ढांकों ढांचों को देखिए, अल्लाह को पहचानिए। आप जियोलॉजी पढ़ लीजिए, ज़मीन के राजों को देखिए। आज ये करने का काम है, इस यूथ को ये काम कीजिए कि दीन और दुनिया के बेहतरीन नुमाइंदे बनाइए। क्योंकि जब सिर्फ दीन का इल्म होता है तो दुनिया नहीं चलती, सिर्फ दुनिया चलती है तो आखिरत नहीं निभती, दुनिया में भी बंदा दीन का काम नहीं करता। तो याद रखिए कि इल्म की अहमियत है, हर इल्म, इसका इत्तलाक दीन की भी है, दूसरे पे भी है। बस इल्म सीखना ये कुरान की पहली बुनियादी तालीम है। इल्म की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों से आदम को सजदा करवा दिया। इल्म अम्बिया कराम की मीरास है। इल्म मौत के बाद भी साथ देता है। इल्म बिल वास्ता और बिला वास्ता शख्सियत को बेहतर बनाता है, यानी आपके लूप होल्स खत्म ही आपके इल्म से हासिल करने से होंगे। फिर इसी तरह इल्म ये इंसान को शुक्र और एहसान की तरफ ले जाता है। इल्म की वजह से कुफ्र और शिर्क और बिदात और खुराफात के अंधेरे छट जाते हैं। इल्म चीज़ों की कदर करना सिखाता है। इंसान और हैवान में फ़र्क इल्म ही की बदौलत है, और इल्म नूर है, जहालत जुलुमात और तारीकी है। इल्म से तवाजो और खाक सारी आती है। जरा सोचिए कि आज हम मुसलमान इल्म दोस्त हैं, आज हमारा दिल इल्म में लगता है, इस वक्त भी अगर जो इल्म का काम कर रहे हैं कि इस पे खुश हैं? आप कहेंगे जी इल्म ही के पीछे तो बच्चे भागते हैं, तो जरा थोड़ा सा तकाबुल, मेरे दिल की पुकार तीन जुमले। हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, बेचारे बच्चे। और अगर मेरे पास दो चार बच्चे बैठे होते मैंने उनके मुंह चूम लेने थे, चाहे वो मेरे से कद में भी लंबे हों। आज हमने अपने बच्चों को प्यार से पाला, प्यार से रखा, लेकिन उनको बेचारा बना दिया। कैसे जरा देखिएगा। अल्लाह ने कहा था इकरा बिस्मि रब्बी कल्लज़ी खलक। ये है असल में दीन और दुनिया के इल्म का मजमुआ। जो सिर्फ दीन का इल्म होता है ना, ये दुनिया कमाने के लिए भी इल्म दीन की जरूरत होती है। बस आप देखिए, आपको उर्दू लिखनी नहीं आती तो आप कैसे तर्जमा लिखते हैं? आपके मैथ के टीचर ने आपको 2+2 ना सिखाया होता तो इल्मुल फराइज कैसे सीखते, वरासत के मसले कैसे समझते? तो दुनिया का इल्म लाजमी है दीन का इल्म लेने के लिए, और दीन का इल्म नहीं होगा तो हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। पिछले दौर में हुनर और कमाल का मकसद आखरत की कामयाबी थी, अल्लाह की रजा थी। लोग इल्म को इल्म की शान समझकर पढ़ते थे। आज की तालीम और तरबियत का खुलासा क्या है? कि सिर्फ मादी ज़रूरियात पूरी हो जाएं। कदीम दौर में देखिए, उलूम के माहिर को आलिम कहते थे, और जो दुनियावी इल्म सीखता था उसको फ़न कहते थे। आर्ट थर्ड मेडिकल इज़ अ फ़न, फ़नून है, फ़नून का लफ्ज़ आप देखिए, आज जदीद उलूम के माहिर को तालीम याफ्ता कहते हैं और दीनदार को मौलवी कहते हैं। कल लोग दीन इसलिए सीखते थे कि उनको अल्लाह से अजर भी लेना है और दुनिया में भी इसलिए आगे जाना था कि वो मुसलमान नुमाइंदे होते हुए दुनिया में इस्लाम का नाम बुलंद करें। आज इल्म के बाद एक लफ्ज़ है रोटी, उसका नाम बदल दीजिए पैसा, फिंगर, रुपए, डॉलर्स, पाउंड। आज आपके मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, और आप देखिए डे हे केयर से लेकर मास्टर्स तक, या बारने हागे से लेके विदरे गोन और उसके बाद यूनी तक, क्या मकसद है? ज़रा आज अपने जवान बच्चों को अकेले में बैठकर पूछे, दिल करता है पढ़ने को? शौक होता है? नो, मैंने बहुत से पूछा है क्योंकि ये मेरा पैशन है। यूथ को पढ़ाना तो मेरा पैशन है, मैंने अपना करियर शुरू ही से किया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखिए, जिसने मुझे कहा वो कहते नहीं, आई डोंट लाइक इट, बट क्यों, मजबूरी है ना, कुछ बनना है। क्या बनना है? फिर पढ़ेंगे नहीं तो बनेंगे क्या? अच्छा, बन के क्या करना है? पैसे कमाएंगे। भाई पैसे कमाने हैं आपने, माशाल्लाह अब्बू हैं, कल शादी होगी। नहीं, फिर अगर मेरा हस्बैंड फौत हो गया तो क्या करूँगी? ये एक बच्ची के जुमले शायद पिछले 20 साल से मेरे कानों में है। तो याद रखिए, आज अपने बच्चों को आपने, मैंने जिस भेड़ चाल में डाल दिया, हमने इनको बेचारा बना दिया। इतनी किताबों का बोझ किसी पर लादा हो उसकी गर्दन टूट जाए। अब इसमें कमी बेशी क्या? चलिए देखिए, सिर्फ दुनियावी इल्म काफ़ी समझना दुनिया में तरक्की और कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके साथ आपको इल्म हकीकी, सच्चा इल्म, दीन का इल्म, बिस्मि रब्बी का इल्म, जिसमें फिर कुरान, हदीस, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की पसंद का होना, ये रस्मी तरीके से भी सीखा जाता है और इसको गैर रस्मी तरीके से भी सीखा जाता है। अगर सिर्फ बच्चों को दुनिया का इल्म देंगे ना, मान लीजिए ये नीचे चेक करते थे, हाँ दुनिया में तरक्की पा लेंगे आपके बच्चे, कामयाब होंगी आप खुद अगर आप यंग हैं, लेकिन याद रखिए मदरसों होंगे। आज वो पैसे छोड़ के कुरान पढ़ाने नहीं आएंगे आपको, क्योंकि जॉब से पैसे मिल रहे हैं, एक एक घंटे के उनको 1-1 हज़ार ना मिलते हों, वो क्यों छोड़े? और आप रखिए कि सिर्फ दुनिया का इल्म लेकर बच्चों का सुकून कल्ब नहीं मिल रहा। आज की यूथ को मैं देखती हूँ, वो बेचैन है। जो बच्चियाँ थोड़ा बहुत कुरान पढ़ जाती हैं ना, वो और बेचैन होती हैं, बाहर जाती हैं कुछ और हैं, घर में कुछ और हैं, मामा पापा कुछ और कहते हैं, स्कूल वाले कुछ और हैं, इधर कुछ, फिर कभी अकल के रास्ते गुमराही और खुदा फरामोशी की तरफ इल्म ले जाता है। आज कितने मुस्लिम बच्चे हैं जो कह चुके हैं कि आई एम नॉट अ मुस्लिम एनी मोर, आई एम एथियस्ट। फिर आप देखिए, दुनिया में आप जो मर्जी सीख लें, रैंगलर की डिग्री, 4 PhDs जमा होना फिर रैंगलर होती है, मरने के बाद फ़ायदा, कब्र के 3 सवाल नहीं आते, जवाब नहीं आएंगे, मैदान हशर के 5 सवाल नहीं आएंगे, कब्र के सवालों में नहीं मिलेगा। तो गोया कि फिर आप खुद सोचिए, अगर आप खुद पढ़ रही हैं, आप यंग हैं अभी, और माशाल्लाह हमारी जोहराबाद की यंग टीम को सलाम, वो बच्चियां जिन्होंने कैरियर को रोक कर बीच में, और कई साथ चल भी रही हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने, कैसे इस बीलुल जना उन्होंने किया है, कभी मौका पड़ा तो सुनिएगा, कैसे वो हॉस्टलों में रह कर कुरान सीख रही थी और दोनों चीज़ें, तो उन्होंने ये समझ लिया कि सिर्फ दुनिया का इल्म काफ़ी नहीं, इसके बरक्स दोनों को जोड़िए। असल में दोनों को जोड़ना दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। ये फिर इंसान को खूबसूरत किरदार भी देता है, इंसान दोस्त बनाता है। दीनी इल्म को हासिल करने से इत्मीनान, सुकून, कल्ब और बरकतें मिलती हैं। मार्फत इलाही देकर सिराते मुस्तकीम पर इंसान गामजन करता है ये इल्म, और दीनी इल्म सीखना और सिखाना मरने के बाद भी फ़ायदा देगा, और कब्र में दीनी इल्म के मुताबिक सवालात के जवाब देंगे। तो फिर आपके मेरे लिए क्या सवाल है? जदीद नस्ल की बेचैनी और जहनी कर्ब के असबाब क्या? मेरी बहुत सारी हमदर्दियाँ यूथ के साथ हैं, मैं खुद भी वैसे खुद को यंग ही कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो अपने अंदर कोई बूढ़ों वाली चीज़ नहीं दिख रही अभी तक, अल्लाह ना करे कभी हो। क्योंकि याद रखिए, ये कुरान और ये पैशन अगर आप अपनी यूथ को दे दें कि आपने ज़िंदगी में अल्लाह के इस दीन के लिए चलना है, डॉक्टर बनना है तो दीन को उसका फ़ायदा देने के लिए, आपने अगर पायलट बनना है आपके बेटे ने तो हवाओं में जाकर लोगों को दिखाना है कि मुसलमान बच्चे इतना अच्छा पढ़े लिखे होते हैं। एक बच्चे की तस्वीर जहन में आती है, बच्चा नहीं यानी यंग आदमी होगा, मतलब मुराद एक 18s में होगा या 18 एज था, और एक बहुत बड़ी सेरेमनी है और एक ही नाम बार बार आ रहा है, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अब अल्लाह के नबी के लिए सोच रहे हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह ले, उस बच्चे की गर्दन झुक गई, उसके गले इतने मेडल थे, मुझे ऐसे लगे कि वो अपने घर का बच्चा है कोई। तो याद रखिए, हमारे लिए लम्हा फिक्री है, दीनी माहौल, दीनी तरबियत और दीनी गौर व फिक्र से गफलत। दीन को मासूम जहनों से खुरच खुरच कर साफ कर दिया गया, जिन जगहों वो पढ़ने जाते हैं, कभी एतमाद में लेके अपनी बच्चियों से पूछिएगा आपको पढ़ाते क्या। मैंने खुद ये तजुर्बे करके देखे हैं कि आज बच्चों को क्या पढ़ाते, शर्म की वजह से वो घर वालों को ना बताएं। तो क्या करें, दीन और दुनिया में कामयाबी के लिए, दीनदारी, खुदा तरसी, खौफ आखरत और आला अखलाक सिखाने के लिए हमें खुद को और अपनी नस्लों को अल्लाह का तारुफ देना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके उसवे हुसना की पैरवी, और कुरान से दोस्ती और इल्म दीन देना है, वरना आपके मेरे बच्चे नहीं बचेंगे। और नस्ल जब टूटती है तो इस्लाम छूट जाता है। क्या सीखा सूरत शर्क से लेकर अलग तक, हर तंगी के साथ आसानी है। जब फारिग वक्त हो तो अल्लाह का जिक्र कीजिए, सुन्नत के मुताबिक किए हुए अमाल का न ख़त्म होने वाला अजर है। और अल्लाह का अपने बंदे को पहला हुक्म था, पढ़िए। लेकिन इंसान बहुत सारी नेमतें पाकर शुक्रगुजार होने की बजाय अपने आपे से बाहर हो जाता है। आप कहेंगे बातें तो बहुत सारी हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, किधर है ये सब कुछ, कौन है जो ये सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ते हैं? तो बताऊंगी कि बहुत सारे हैं माशाल्लाह। उनमें से एक नाम नूरुल कुरान, जो इस वक्त आपका मेरा प्लेटफॉर्म है, NURULQURAN। अब तो सबको स्पेलिंग याद ही हो चुके होंगे। दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। जितना ज्यादा आप और मैं इस पे गौर करेंगे कि हमने क्या सीखना है, तब आज दौरे कुरान का आखिरी दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह ही बि नेमति ही ततिम्मु सालिहात। अल्लाह ताला आपको मुझे इसके बाद खाली नहीं छोड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला कहे कि अब आप कुछ नहीं करें, क्योंकि हमने नमाजें सिर्फ इधर ही तो नहीं पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ही बि नेमति ही ततिम्मु सालिहात। अल्लाह मस्जिद नवला तनकुस नवक्रिम नवला तुहिन्ना वाति नवला तहरिम नवासिर नवला तो सिर अलैना वर्तिना वरदाना। और आइए आगे सूरत कदर देखते हैं। कुरान की कदर करने के लिए लैलतुल कदर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल कदर वमा अदराका मा लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरु मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलअिल फज्र। यकीनन हमने इसे शबे कदर में नाजिल फरमाया। किसे? ज़रा अपने सामने रखे हुए इस मुसहफ़ को छुए। यकीन करें, जितना प्यार बच्चे को देखकर आता है ना, उतना प्यार इस कुरान पे आता है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर इसको चूमने की इजाज़त होती तो मैं चूमती। सीने से तो बंद कुरान मैं अक्सर ही लगाती हूँ कि अल्लाह इसको मेरे सीने में खोल के डाल दे। और जितना इसको पढ़ते जाओ और पढ़ाते जाओ, उतना इस पर प्यार आने लगता है। जैसे बच्चे को जितना संभालें, उसके पास रहें, उसको खिलाएं पिलाएं, उतना उस बच्चे से प्यार होता है। फूफियाँ शादी होके चली जाती हैं तो बच्चों के प्यार भी वो दिल में नहीं रहते, और जो सारा दिन उनकी नाक साफ करती है और लॉलीपॉप उनके चूसती रहती हैं, उनको प्यार बड़ा होता है अपने भतीजों भतीजियों से और भांजों भांजियों से। इस कुरान को जो मर्जी नाम दे दीजिए, ये कुरान बड़ी कदर की रात में नाजिल हुआ और आज मेरे और आपके हाथ में। आप सोचिए, आप कुछ और भी तो पढ़ सकते थे। अक्सर जो एहसास मुझे रुलाता है, कोई और मजहब का नाम नहीं लेना चाहती दिल शिकती ना हो जाए, लेकिन क्या मैं आप ये 2 से 2.5 और 3 घंटे किसी और किताब के लिए ना लगा रहे होते, मजहब के नाम पे पढ़ते, और फिक्शन पे और दुनिया की चीज़ों पे लगाने वाले कितने। और आप सोचिए, जो इस वक्त चौकीदार बन के हर मीडियम को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट होती, ये सारी ऑडियो वीडियो चीज़ें होती, ये सब कुछ हो रहा होता, और जो A to Z चीज़ें आप लोग करते हैं, बताइए अगर ये कुरान की बजाय किसी और चीज़ के लिए होती, कोई बिदत की चीज़ में होती। ये कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हम हैं, ये है नूरुल कुरान। ना हमारा फिक्स से कोई ताल्लुक, ना हमारा मसलक से कोई ताल्लुक, बहुत छोटे लोग हैं हम, बहुत लो प्रोफाइल लोग हैं। हमारे पास कोई दावत और बड़ी बातें नहीं, हमें तो बस ये पता है कि इस कुरान की दावत को हर घर में पहुँचाना है। वमा दरा कमा लैलतुल कद्र। तू क्या समझा कि शबे कदर क्या है? शबे कदर 1,000 महीने से बेहतर है। इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती की होती है और फजर तुलू होने तक रहती है। ऐसा लग रहा है कि आज की रात ये गुजर गई। अल्लाह करे जिन मुल्कों में अभी 29वीं रात है, थाम लें उसको। क्या इस कदर वाला कुरान जिस रात में उतरा उसको लैलतुल कद्र बना गया? मुसनद अहमद की रिवायत है 230। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रमज़ान आ गया तो रमज़ान आया और फरमाया, ये बरकत वाला महीना है, इसके रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसमें जन्नत के दरवाज़े खोले जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद किए जाते हैं, शयातीन कैद कर लिए जाते हैं, और इसमें एक रात जो 1,000 महीने से अफजल, इसकी भलाई से महरूम रहने वाला हकीकी बदकिस्मत है। अल्लाह हम ऐसे लोगों में ना करे। तो ये किताब तो इतनी कदर वाली किताब है, जिसने पकड़ा वो कदर वाला हो गया, जिस शहर में उतरी उसको मक्का कहा गया, जिस किताब ने उसको थामा उसको सिद्दीक और फारूक और क्या क्या नाम ना दे दिए गए। आज पकड़िए इस किताब को, टुडे 22 मई 2020, ये डेट है आज की, 12:07 है इस वक्त UK टाइम के मुताबिक। आज इस किताब को थामने की नीयत करें, लिख के रख लें कि आपकी कदर होगी, चाहे शुरू में आप अपने आप को बेकदर ही महसूस करें। आगे ये सूरत बेशिना, ये तो क्या है? इसके लिए मैं एक रिकमेंडेशन अभी दूंगी, और YouTube पे भी है यकीनन, तदब्बुरुल कुरान, जो हमारा एक सेट सिर्फ 30 पारे का है, उसमें इस सूरत की तफसीर सुन लीजिए। अगर मैं यहाँ वो कॉन्सेप्ट खोलने बैठ गई, डर है कि वक्त ऊपर चला जाएगा, कि क्या बेजीना बन के वक्त का रसूल आता है। यानी अल्लाह के नबी बेजीना थे, आज ये कुरान बेजीना है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन मुनफक्कीन हत्ता तातियहुमुल बैजीना। क्या थी बैजीना? रसूलु मिन अल्लाह यतलू सुहुफ़ मुतहरा। अहले किताब के काफिर और मुशरिक लोग जब तक इनके पास जाहिर दलील ना आ जाए, बाज रहने वाले ना थे। वो दलील ये थी कि अल्लाह का एक रसूल जो पाक सहीफे पढ़े, जिनमें सही और दुरुस्त अहकाम हों। अहले किताब अपने पास जाहिर दलील आ जाने के बाद ही इख्तलाफ में पढ़कर मुतफरिक हो गए। इन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसी के लिए दीन को खालिस रखे, इब्राहिम हनीफ के दीन पर, और नमाज कायम रखे और ज़कात देते रहें। यही है दीन सीधी मिल्लत का। बेशक जो लोग अहले किताब में से काफिर हुए और मुशरिकीन सब दोजख की आग में जाएंगे, जहां वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलायक हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, ये लोग बेहतरीन मखलूक हैं। इनका बदला इनके रब के पास हमेशगी वाली जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हुआ और ये उससे राजी हुए। ये है इसके लिए जो अपने रब से डरे। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझसे और आपसे भी राजी हो जाए। कैसे? रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। जैसे सहाबा के नाम के साथ रदी अल्लाह लग गया, आप मैं इस सूरत को पढ़ने के बाद अगर अपने नाम के साथ अल्लाह के दफ्तरों में ये जुमला लिखवाना चाहते हैं कि फरिश्तों जाओ, मैं इस बंदी और इस बंदे से राजी हो गया, तो बैजीना को पकड़ लीजिए। अल्लाह के नबी के आने से पहले उसी मुआशरे में अबू बकर सिद्दीक भी बड़े एक्टिव थे और वलीद बिन मुगीरा भी बहुत एक्टिव था। दोनों सेम लेवल की पर्सनैलिटीज थी, लेकिन वही के पानी ने अबू बकर को तो सिद्दीक बना दिया और वलीद बिन मुगीरा का किस्सा सूरत मुद्दसिर में पढ़कर आ गए। तो याद रखिए, जब किसी जगह दीन का कोई काम हो आज के दौर में, या फिर अल्लाह के रसूल का पैगाम आ जाए और उसको करने का मौका आ जाए, तो बैजीना आ जाती है। सच्चे झूठे का फर्क पता लग जाता है, सिर्फ दावों और दलीलों वालों का फर्क पता लग जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब हम कोई नियत करें तो अल्लाह ताला में उसके तकाजे भी निभाने वाला बना दे। आगे है सूरत जिलजाल, क्यामत के जलजले। इजा जुलजिलतिल अर्दु जिलजालहा वखरजतिल अर्दु अस्कालहा वकालल इंसानु मालहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब जमीन पूरी तरह से झंझोड़ दी जाएगी और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी, इंसान कहेगा इसको क्या हो गया। इस रोज जमीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी, इसलिए कि तेरे रब ने इसे हुक्म दिया होगा। इस रोज मुख्तलिफ जमातें होकर लोग वापस लौटेंगे ताकि इनके आमाल दिखा दिए जाएं। बस जिसने जरा बराबर भी नेकी की होगी वो इसको देख लेगा, और जिसने जरा बराबर बुराई की होगी वो इसे देख लेगा। सूरत जिलजाल, क़यामत के नामों में से एक नाम जलजला और जिलजाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ज़मीन से बच के रहना, ये तुम्हारे आमाल की गवाह है। कल क़यामत के दिन तुम्हारी खबरें देंगी। और नियतों को सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ तक रखा, इस फाइल तक किसी की अप्रोच नहीं। आप देखिए, कुछ लोग कुछ चीज़ों को अपने तक रखते हैं, कहते हम किसी को नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को अपने ही तक रखा है, फरिश्तों तक को उसकी खबर नहीं होती। उसको भी क़यामत के दिन खोल दिया जाएगा। और वो क्या है कि लोगों के सीनों में क्या है, लोगों के राज खोल दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने क़यामत का मंज़र यहाँ पेश करके मुझे आपको क्या सिखाया, सूरत कदर से लेके जिलजाल तक की सूरतों में सीखा कि माहे रमज़ान और लैलतुल कदर की फजीलत बहुत है। पाक और शफाफ और आग की जीनत ये कुरान पाक है। सारी मखलूक से बेहतर कौन है और बदतर कौन है? और उस दिन ज़मीन अपना सब कुछ उगल देगी। इस दिन हर इंसान अपनी ज़रा बराबर नेकी और ज़रा बराबर बुराई देखेगा। आपको मुझे इसकी फ़िक्र लग जानी चाहिए कि मैं आप कहाँ खड़े हैं। जिस ज़मीन पे बैठकर इतने दिन से सुन रहे हैं, प्यार से इसको देखिए, इस कुर्सी को देखिए, इस टेबल को देखिए, ये सब मोहरें सब्त कर रहा है आपके मेरे इस अच्छे काम की। अल्लाह न करे मेरे घर में और गाड़ियों में बैठकर सड़कों पे कुछ ऐसी मोहरें हम बाद में साबित कर दें जो गुनाहों की तरफ ले जाएं। तो ज़िंदगी में यही है, माकद्दम हुआ सारहुम, अल्लाह ताला हमें अच्छी अच्छी मोहरें छोड़ने और अच्छे अच्छे प्रिंट्स और अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स छोड़ के जाने वाला बना दे, और हमारी औलादें हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बन जाएं, हमारे दीन के साथी और कुरान के ये तालिबे इल्म बेहतरीन तरीके से सदका जारिया बन जाएं। हम अपने पीछे सिर्फ यही छोड़ के जा सकते हैं। तो एक जुमला पूछिए, व्हाट एम आई लीविंग बिहाइंड। आगे है सूरत आदियात, पीछे भी जिक्र हुआ था इसका, क़यामत के भी मंजर हैं और दौड़ धूप का भी जिक्र है। घोड़ों से सबक लो क्या। वलादियाति दबखन फल मूरियाति कद खन फल मुगीराति सुबखा फसर नबी नक़ा फवसत नबी जम आ हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फिर टाप मार कर आग झाड़ने वालों की कसम, फिर सुबह के वक्त हवा बोलने वालों की कसम, बस उस वक्त जब गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी के साथ फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। और सारी बातों में जो बात है, इन्नल इंसान अली रब्बी ही लखनूत, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। कितना नाशुक्रा इंसान, जिसने दिया जिसका खाता है जिसके पास रहता है उसको ही नहीं जानता। और असल बात यह है कि ज्यादातर लोग तो नाशुक्रे हैं, अक्सरियत तो पार्ट टाइम मुस्लिम है, फुल टाइम तो बहुत थोड़े हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वह इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, यकीनन वो इस पे खुद भी गवाह है। क्या बात कि वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद, ये माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। बंदा खुद जानता है उसको कितना प्यार है माल से। क्या इसे वो वक्त मालूम नहीं जब कब्रों में जो कुछ है निकाल लिया जाएगा और सीनों की पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी। और इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल खबीर, बेशक इनका रब उस दिन इनके हाल से पूरा बाखबर होगा। ये है जी वहुस्सिला मा फिस्सुदूर, अंदर से अल्लाह निकाल कर लाएगा वो चीज़ें जो सिर्फ आज अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। हमने देखा कि इंसान मालो दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुबतला है, तो ये खुशहाली के फितनों में यानी फितना सर्रा में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जितना माल ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा इंसान का माल को दिल करता है। हमारे वालिद कहते थे जो बच्चे ज़्यादा खाते हैं ना वो ज़्यादा भूखे होते हैं। और दो चीज़ें आप जितनी मर्जी बढ़ा लें, नींद और भूख, आज यही है। माल कभी कम नहीं हुआ, याद रखिए माल की हसरत बढ़ी। और आप देखिए सूरत आदियात में मालो दौलत नेमतों की कसरत और इनका जिक्र है ना, तो लंबी उम्मीदें और मौत को भुला देना और अंधी तकलीद और बुरे माशरे का जब असर कबूल किया जाता है ना, तो बंदे का गम सिर्फ यही रहता है कि दुनिया की लज्जत ऐश परस्ती साजो सामान, और नतीजा क्या है कि इंसान माल की मोहब्बत में जाता है। करना क्या है, दिल से खुरचने के लिए माल की मोहब्बत को, आखरत की नेमतों पे गौर करना है, नफसानी ख्वाहिशात को दबाना है और दुनिया से ज़्यादा आखरत से ताल्लुक़ जोड़ना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। सूरत अल-क़ारिया, क़्यामत के नामों में से एक और नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ारियतुम अल-क़ारिया वमा अदराकुम अल-क़ारिया, खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली, तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ाने वाली क्या है। यौम यकूनुन्नासु कल्फराशिल मबसूस, जिस दिन इंसान बिखरे हुए परवानों की तरह हो जाएंगे। बारिश के बाद के पतंगों को जहन में लाइए, कैसे नालियों में कीचड़ में कचरे पे घर के बैकयार्ड में गिरे होते हैं, ऐसे हो जाएंगे इंसान बेकीमत। आज इंसान कितना बड़ा बनता है, अपने आप को क्या कहता है और क्या समझता है, और वहाँ इंसान किस चीज़ में जाना चाहेगा, सोचिएगा इसको बाद में। ये तो इंसान का हाल था, क़यामत का धमाका बड़े बड़े पहाड़ों को हटा देगा। वतकून उलजिबालु कलिहनिल मनफूश, और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। फम मन सकुलत मवाजीनुहु फहुवा फी ईशतिर राधिया, फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद आराम की जिंदगी में होगा। वम मन खफ्फत मवाजीनुहु फउम्मुहु हाविया, फिर जिसके पलड़े हल्के होंगे इसका ठिकाना हाविया होगा। लफ्ज़ उम है, माँ होगी इसकी, यानी जैसे माँ गोद में लेती है ना बच्चे को, तो हाविया नामी जहन्नम जो सबसे नीचे है। पांचवें पारे के आखिर में भी आपसे जिक्र हुआ था इस पे कि हाविया में ख्वाहिश परस्त लोग जाएंगे, मुनाफिकीन, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकि असफल मिनन नार, तो दरकि असफल का नाम हाविया है जिसमें ख्वाहिश परस्त लोग जाएंगे। तुझे क्या मालूम वो क्या है, नारुन हामिया, आग है वो तुंदो तेज। तो आप देख लीजिए ख्वाहिश परस्त लोग बिल आखिर जब अपनी ख्वाहिशों से थक चूर के गिरेंगे तो जहन्नुम का सबसे निचला गढ़ा होगा। सूरत तकासुर, ये है खुशहालियाँ। अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। ज़्यादती की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, कसरत की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया, और पाने की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। किस से? अल्लाह से, नमाज से, कुरान से, आखरत से, जन्नत से, मेहनत करने से, दीन का इल्म सीखने से। बस तुम तो हर वक्त दुनिया दुनिया के पीछे जाते हो, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम जान लोगे, हरगिज़ नहीं, फिर तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो तो बेशक तुम जहन्नुम को देख लोगे, और तुम इसे यकीन की आंख से देख लोगे, फिर इस दिन तुमसे ज़रूर बिल ज़रूर नेमतों का सवाल होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, हासिबु कबला अन तुहासबु। अपना हिसाब खुद ले लीजिए, इससे पहले कि आपका मेरा हिसाब हो। आप देखिए कि सारी ज़िंदगी माल के पीछे इंसान भागता है, और आखिर में क्या है? कब्र, जिसके अंदर गिर पड़ेगा। सारी ज़िंदगी भागते रहते, और वहाँ जाएंगे तो क्या होगा? हर एक अपने आप से पूछ ले। अल्लाह ताला ने आपको मुझे ये सिखा दिया इन सूरतों में कि छोटी सी नेकी को छोटा समझकर मत छोड़ो, और छोटे से गुनाह को छोटा समझकर इख्तियार न कर लो। किस तरीके से इंसान इन चीज़ों पे आता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आदम का बेटा कहता रहता है, मेरा माल मेरा माल, यकूलुल अब्दु माली माली, लेकिन माल उसका कौन सा है? जो खा पी लिया फना हो गया, कल रात जो खाया था आज जिस्म में नहीं होगा, पहन लिया पहनकर बुसीदा कर दिया, पुराने कपड़े कैसे फिर जाते हैं डोनेशन सेंटर्स में, खुदा के लिए हमारे कपड़े ले लीजिए, हमें ये नहीं चाहिए। आखिरत में हिसाब होगा, अगर माल को ज़ाया किया होगा तो सिर्फ उसका, तो वो है जो सदका करके बाकी छोड़ दिया। याद रखिए कि कसरत की ख्वाहिश मकसद हयात को भूलने का जरिया बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, क़यामत के दिन आदम का बेटा कदम हटा नहीं सकेगा अल्लाह के सामने से जब तक 5 सवालों के जवाब न दे दिया जाए। ला तज़ूल क़दमन इब्ने आदम इंदि रब्बिही हत्ता युसअलु अन्हु खमसा। पहला सवाल होगा नुमरी ही फी माफना हो, उम्र कहाँ गुजारी। फिर दूसरा होगा अन शबाब ही फी मा बिलाहु, जवानी कहाँ पुरानी की। फिर तीसरा होगा मिम माल इन मिन नक्तसबहु, कमाया कहाँ से। फिर अगला सवाल होगा मिन ऐन अनफ़क़ु, खर्च कहाँ किया। और आखिरी सवाल होगा माज़ा मिला बिमा अल्लमा, इल्म पे अमल कितना था। ये है आखिरत का पर्चा जो आउट हो चुका है। आप और मैं देखें कि दीन की सरबुलंदी में मेरी उम्र चल रही है या ख्वाहिशात की पैरवी में, जवानियां दिल पसंद मशगलों में है या अल्लाह की इताअत में, माल हलाल और जायज़ तरीके से कमाते हैं या हराम से, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे खर्च करते हैं या नाफरमानी में, सारा जाकर हम मॉल्स वालों को तो नहीं दे आते और पार्लर्स वालों पे तो नहीं लग जाता, और इल्म कैसा चल रहा है, अमल अपने मुफाद की चीज़ों पे अमल करते हैं या दीन की खातिर। अल्लाह हमारी तरजीहात बदल दे। सूरतुल असर, जिसकी तफसील हम पारे के आगाज़ में बहुत अच्छी कर चुके, यहाँ भी इसमें कुछ चीज़ें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलअस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। ज़माने की कसम, इंसान यकीनन सरासर नुकसान में है, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, और जिन्होंने आपस में हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। इमाम शाफी कहा करते थे कि अगर अल्लाह ताला सिर्फ सूरत असर ही नाजिल कर देते तो यही काफ़ी थी, अगर इसी पे बंदा तदब्बर कर ले तो किफ़ायत होगी। और असर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता गुजरने वाला वो वक्त जो आसानी से गुजर जाए। पूरे कुरान का खुलासा है ये, बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि ये ईमान का खुलासा है तो गलत ना होगा। ये ऐसी खूबसूरत सूरत है। तो कामयाबी क्या है आज हमारे मेयार तो बदले में, इसीलिए तो आप देखिए सुबह शाम हमारी और हमारी औलादों की और हमारे मर्दों की जो दौड़ धूप है वो जिस चीज़ की तरफ है, हम उसको कामयाबी समझते हैं लेकिन वो कामयाबी नहीं। डॉक्टर बन गए कामयाब है, लेकिन बीवी पसंद ना आई, तलाक हो गई, तो क्या कामयाब है? और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सूरत एक बार फिर हमें गौर व फिक्र की दावत देती है। अगर वाकई माल कामयाबी की दलील होता तो कारून सबसे बड़ा कामयाब था, इक्तदार दलील होती तो फिरौन और नमरूद का जिल्लत अमेज इंजाम क्यों हुआ, और आज के इक्तदार वाले लोग लोगों की इतनी बातें क्यों सुनते हैं। शोहरत अगर होती तो वाकई भी शोहरत वाले लोग और बड़े बड़े स्टार्स और जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार क्यों होते। और अगर आसाइश पसंदी में अगर आपकी मेरी कामयाबी है तो फिर जिस्मानी और जहनी बिगाड़ क्यों होता और स्ट्रेस में क्यों चले जाते। करना क्या आमनो, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, वामिलु सालेहात, मुकम्मल इता करना अमल बिल जवारे, और तवासी बिल हक है अमर बिल मारूफ और नहीं निल मुनकर। जिसको दावा कह लीजिए, तबलीग कहिए, इल्म और सीखना सिखाना कहिए, या शहादत हक की गवाहियाँ कहिए और हक पे जमना, और तवासी बेसब्र, जज्बात को थामे रहिए, डोंट बी रिएक्शनरी। पहले लोगों का अंजाम खसारा है, इधर है फलाह, और खसारों से बचने का चार नुकाती नुकता, क्या सीखा, सूरत आदियात से लेकर सूरत अल असर तक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। इस दिन अमाल का वजन होगा, तराजू लाया जाएगा। माल की कसरत दीन से गाफिल कर देती है, और ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले नुकसान से बच के हक को खुद भी पहचानना और दूसरों तक भी पहुंचाना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमसे ये सारे ही काम ले ले। आगे है सूरत हुमजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल्लि कुल्लि हुमजतिल लुमजा अल्लसी जमा मालं व अददा यहसबु अन्न मालहू अखलदा। इस पे हाईलाइट कीजिएगा। बड़ी खराबी है हर ऐसे शख्स के लिए जो ऐब टटोलने वाला, गीबत करने वाला हो, जो माल को जमा करता जाए और गिनता जाए। वो समझता है कि इसका माल इसके पास सदा रहेगा। ये भी एक फितना था फितनों में से। हरगिज़ नहीं, ये तो ज़रूर तोड़ फोड़ देने वाली आग में फेंक दिया जाएगा। मरते ही उसकी सारी चीज़ें उठा के डब्बों में भर के मस्जिद भेज दी जाएंगी कि इसकी आप किसी को दे दो, हमें नहीं चाहिए। अपने अब्बा जी की और अम्मा जी की चीज़ें सब फिक जाएगा आपका मेरा। और तुझे क्या मालूम कि ऐसी आग क्या होगी? वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग होगी। नोट करें, ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ने आग को अपना कहा। नारुल्लाहिल मुकद्दर। जब अल्लाह आग जलवाएगा तो बाकी कामों की तरह उसका ये काम कितना आला दर्जे का होगा। कौन सी आग? अल्लती तत्तली अल अफिदा, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, हर तरफ से बंद की हुई होगी, और इन पर बड़े बड़े सतूनों में, जैसे चिकन को ओवन में डालकर ढक्कन बंद कर दें कि अब जलो या कटो या जो भी कर लो, अब तुम्हें तो हमने इसमें डाल दिया। तो तकासुर और हुमजा के पैगाम जो हैं, इनका ज़रा तकाबुल देखिएगा। पहली आयत में कहता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें कसरत की हवस ने गफलत में डाल दिया। वजह थी कुरान से दूरी। और सूरत हुमजा में जमा माल वददा, इंसान माल गिन गिन कर रखता है और जमा करता है। वजह दुनिया और माल की मोहब्बत और अल्लाह ताला से दूरी है। तो माल थोड़ा ही हो काफ़ी है, उस माल से जो ज़्यादा हो और आपको मुझे वो परेशान कर दे। किस चीज़ में कर दे? एक रिवायत का खुलासा है, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है, कि जो थोड़ा हो लेकिन किफ़ायत कर जाए वो उससे बेहतर है जो ज़्यादा हो और किफ़ायत ना करे। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं तो फिर बाज़ दफ़ा स्ट्रेस का शिकार होते हैं। मा कल्ला व कफ़ा खैरु मिम्मा कसूरा व लहा, यानी जो इल्हाक का शिकार कर दे। और आप देखिए कि दुनिया की दौड़ धूप में इंसान भाग रहा था कि सामने कब्र आ गई। जैसे वही लोमड़ी जिसने कर्ज दिया हो, एक हदीस में मिसाल है, एक लोमड़ी के सर पे जमीन का कर्ज था और वो उससे भाग रही थी कि मुझे नाप देना, पर भागती रही आखिर थक के हार के जमीन ही की गोद में मर गई, यानी कब्र में आ गई और जमीन ने उसको थाम लिया। इंसानों के साथ भी यही कुछ हो रहा है। और हम इतने तकासुर का शिकार हुए कि कब्रों तक पहुंच गए। कौन मरा, किधर मरा, किसका मुर्दा किधर, बल्कि कफन के वक्त मरने के कौन था, किसने जनाजे की नमाज पढ़ाई, शहर के बहुत बड़े आलिम कौन दर्स देने आया। आज तो हम दुनिया की रैट रेस में ऐसा भरे कि हमें तो मरने के बाद भी अपने स्टेटस की फिक्र है कि अगर अच्छे तरीके से हमने स्वयं न किया और कैटरिंग न करा ली तो क्या होगा और कैसे मामले होंगे। अल्लाह ताला इससे बचा कर आपको मुझे कहता है कि तुम उस आखिरत की फिक्र कर लो, तैयारी कर लो। और आगे सूरत फील है। अल्लाह के घर को ढाने वालों के इरादों को अल्लाह कैसे तोड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तारा कई फफाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, कि इनके मकर को बेकार न कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए, जो इनको मट्टी और पत्थर की कंकरियां मारते थे, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। कोई मैली निगाह से न देखे अल्लाह के घर को। अब्रहा नाम का एक शख्स हुब्बे जाह और लालच का भरा हुआ, खाना काबा के मुकाबले पे यमन में उसने एक कलीसा बनाया और लोगों की तवज्जो उधर करने के लिए कहा, जाके जरा इसको तो पहले खत्म करूं। आज भी कुछ दीनदार जिनका तस्किया नहीं होता, खुदा खफी नहीं होती, वो दूसरे दीनदार के बारे में कुछ ऐसी ही बातें सोचते और करते हैं, पहले इनको खत्म करूं ताकि लोग मेरे पास आए। तो याद रखिए, ये ऐसा छुपा हुआ फितना होता है कि जो दीनदारों को नहीं छोड़ता। लिहाजा उस शख्स ने अपने साथ कुछ लोगों को लिया और वो उनका दीनदार था, यानी जिसने हमला किया वो कोई सियासी शख्स नहीं था, वो अपने दीन के अड्डे को चलाने के लिए अल्लाह के घर को तबाह करने आया। उसको पता नहीं था उसका सामना किससे है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको कोई नेमत मिल जाती है ना, तो वो एक आजमाइश भी होती है। जब आपको चाह मिल जाए, यानी कोई स्टेटस मिले, तो उसकी मोहब्बत में और मजीद लालच पाने में जो इंसान के अंदर चीज़ें आती हैं, उसमें देखिए मसलियत अंदेशी यानी निफाक आने लगता है। फिर ऐसे लोग चाहते हैं हम हर दिल अजीज रहें, लोग हमें लाइक करें, अपनी राय पर इसरार करते हैं, नहीं बिकॉज आई सेड दिस आई से सो, ये अंदाज होता है। फिर इस तरह असबियत और जाहिलियत का मारा हुआ था ये शख्स भी, और उसी की बात इधर है। फिर इस तरह बुरे फहम, सुए फहम होते हैं, बदगुमानियाँ होती हैं, बहुतान दराजियाँ शुरू हो जाती हैं, और जज्बा इंतकाम कि जिसमें अल्लाह के घर तक लोग पहुँच गए, और इसी तरह हुब्बे शोहरत, मैं मशहूर हो जाऊँ। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे अंदर शोहरत का शौक ही ना डाले। ये शोहरत का फितना भी बहुत बड़ा फितना है, अल्लाह हमें मशहूर ना करे बल्कि हमारे काम को मशहूर कर दे। सूरत कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीला फी कुरैशी ला फी रिखलतश्शिताई वस्सईफ फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत। ये जुमला इसमें से गौर तलब है। कुरैश के मानूस करने के लिए, यानी इन्हें सर्दी और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के लिए बस इन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। किसी हिंदू ने कहा एक मौके पे किसी से कि देखो हम भी पत्थर को पूजते हैं, तो तुम भी तो पत्थर के बने हुए घर को पूजते हो ना, तो फ़र्क क्या है? हम उसको बुत कहते हैं, तुम काबा कहते हो, तो उसका जवाब ले लीजिए। अगर कल कोई आपसे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन करे कि हम मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते बल्कि फलयाबुदू रब हाजल बैत, उस घर के रब की इबादत करते हैं जिसने इन्हें भूख में खाना दिया और डर और खौफ में अमन और अमान दिया। अल्लाह ने कुरैश वालों के पास अपना प्यारा नबी भेजा था, लेकिन लोगों को इज्जत रास नहीं आती। उन्होंने अल्लाह के नबी की नाकदरी की, उसी का एहसास इस सूरत में दिलाया गया। सूरत माउन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम इस्तेमाल की चीज़ों को माउन कहते हैं, मान से है, माइंस का भी लफ्ज़ आप सुनते होंगे। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु वला ताअमिल मिस्कीन। क्या तूने देखा उसको जो रोज़े जज़ा को छुटलाता है? यही वो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत नहीं देता। इन नमाजियों के लिए अफसोस और वेल नामी जहन्नम की जगह है, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज़ों को रोक देते हैं। चलिए, खुशहाली के फितनों में एक ये भी फितना है कि फिर दूसरों से शेयरिंग नहीं होती। शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग। क्यों? क्या अपनी नहीं पूरी होती? याद रखिए, जितना बंदा सेल्फ सेंटर्ड होगा उतना दूसरों से दूर होगा। पारे के थीम के साथ चंद चीज़ें नोट कर लेते हैं। फितनों में एक फितना क्या कि लिबास की खरीदारी में मुबालगा, 100 वाली चीज़ 1000 से छोड़कर अब लाखों पे आ गई। खाने पीने में गलत लगता है, फाखिराना यानी फ़ख्र वाली चीज़ें और बेशकीमत बर्तनों में खाने खाए जाते हैं। खाने के लिए महंगे तरीन होटलों का इंतखाब होता है। शादी की महफिलें और तकरीबात जो है वो मुंह बोलती तस्वीर होती हैं तबजीर और इसराफ की। महंगे मोबाइल और दीगर अशिया पे रैट रेस लग जाती है। गाड़ियाँ और उनके लिए प्राइवेट नंबर्स और बड़ी बड़ी रकमें खर्च की जाती हैं। रिहाइश गाहें और खूब से खूब होने लगती हैं और आरइश के साथ आसाइश और नुमाइश का जरिया बनती हैं। बेहिसाब नौकर चाकर खिदमत कार रखे जाते हैं ताकि बताएं हमारे घर तो 20 मुलाजिम हैं। इसी तरह मारूफ शख्सियात के मालो मता की खरीदारी को देखा जाता है, अच्छा सिग्नेचर चीज़ें लेनी है, और इसी तरह खेल कूद तफरीह में मुबालगा होता है। अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचाए। तो सूरत खुमजा से लेकर माउन तक क्या सीखा? वसनी बेड़ियाँ और कैदोबंद को हमेशा याद रखना है जो जहन्नमियों को पहनाई जाएंगी। अल्लाह चाहे तो छोटी सी मखलूक से अपने काम करवा ले। अमन अमान की जमानत ली है अल्लाह ने दे दी कुरैशियों को कि तुम अमन में रहोगे जब अल्लाह के इस घर की खिदमत करते रहोगे। आम इस्तेमाल की चीज़ें ना देने वाले भी बखील हैं और नमाज में गफलत और यतीमों से नफरत करने वाले नापसंदीदा लोग हैं। आगे है जी सूरत कौसर। कौसर क्या है? जन्नत का एक दरिया है, खैर कसीर है। अल्लाह के नबी के बेटे का इंतकाल हुआ और आपकी औलाद नरीना नहीं बचती थी। दुश्मनों और हासिदों ने ताना दिया, आपकी नस्ल नहीं चलनी, आपका नाम कहाँ रहेगा, आपका तो बच्चा नहीं, जिसको अवतर और नखत्तर के लोग नाम कहते हैं। अल्लाह ने कहा लोग औलादों को रोते हैं, उनकी औलादों ने तो शायद इनको रुलाना ही है। किसी के नसीब में खुशी होगी तो मिलेगी। आए हम आपको बताते हैं कि आपके नसीब में क्या है। इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। यकीनन हमने आपको हौज़े कौसर और बहुत कुछ दिया है, बस तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। यकीनन तेरा दुश्मन ही लावारिस और बेनामो निशान है। और आज ये सूरत किससे सच्ची साबित हुई कि ज़मीन के एक कोने से लेके आखिरी कोने तक 24 घंटे अल्लाह के नबी का नाम लिया जाता है, कभी अजान में, कभी तकबीर में, कभी कुरान में। और अल्लाह के नबी का ये हौज़े कौसर के नाम पे मैदान हशर में होगा। आपने अपनी उम्मत को बहुत प्यारी खबर दी थी कि अगर तुमने क़यामत के दिन मुझे ढूंढना हो तो हौज़ पे मिलना, वहाँ अल्लाह के नबी अपने हाथ से पानी पिलाएंगे। अल्लाह हम सबको हौज़े कौसर से सैराब करना, फरमाए हर उम्मती से सैराब होगा सिवाय जो खुद इनकार कर दे। कहा खुद कौन करेगा? कहा जो बिदात ले आए दीन में इजाफे कर दे। अल्लाह के नबी पानी पिला रहे होंगे, कहा पहचानेंगे कैसे? वुजू के निशानों से। लेकिन फरिश्ते रोक देंगे, अल्लाह के नबी ये नमाज़ें तो पढ़ते थे लेकिन इन्होंने आपका दीन बदल दिया, तो अल्लाह के नबी कहेंगे फसुक्कन फसुक्कन, उनको निकाल दो मेरे से, दूर कर दो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया। और आप एक रिवायत में कहते हैं कि लोगों क़यामत के दिन मेरा चेहरा स्याह न कराना। तो आज उम्मत देखे कि नबी से मोहब्बत के दावे तो बहुत हैं लेकिन क्या हकीकत में नबी के साथ ताल्लुक भी है। आगे है सूरत अल काफिरून, दो कौमी नज़रिया, टू नेशन थेरी। मुसलमान काफिर कभी भाई नहीं हो सकते, चाहे किसी भी नाम पे आप कह दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। आप कह दीजिए काफिरो, ना मैं इबादत करता हूँ इसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और ना मैं इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। ऐसे लगता है जैसे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो मुझे मेरा दीन। आप देखिए कि जब मुसलमान दूसरों के कदमों पे चले तो उनको पैगाम दिया गया तुम नहीं बराबर हो सकते, तुम्हारी कामयाबियों के मेयार और उनके, और तुम्हारी खुशियों के मेयार कुछ और हैं उनके कुछ और हैं, उनके जीने मरने के रंग ढंग उनके रिवाज कुछ और हैं तुम्हारे कुछ और हैं। तो मुसलमान को आज ये भी एक फितना लाहक हो गया कि शायद उनको भाई कह लेंगे तो हम बहुत कामयाब होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी रग़बतें दिलाई गई, ये ले लीजिए आपको सरदार बना लेते हैं, आपको सबसे खूबसूरत औरत से ब्याह देते हैं, लेकिन आपने कहा लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। ये होना चाहिए एक मुसलमान के दिल में दीन को सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने और उस पर जमने के बाद। आगे है सूरत नसर, फतह और कामयाबियों को कैसे संभालो। सूरत फतह का मजमून जहाँ पूरा होता हुआ दिखता है कि कामयाबी और खुशियों के मेयार क्या हैं। इजा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरायतन्ना सयदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहू काना तव्वाबा। जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाए और तो लोगों को अल्लाह के दीन में चौक दर चौक आता देख ले, तो अपने रब की तस्बीह करने लग हम्द के साथ और इससे मगफरत की दुआ मांग, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। अबू बकर सिद्दीक इस सूरत को सुनकर रो पड़े। लोगों ने कहा अबू बकर इसमें तो इतनी खुशी की बात है, देखिए अब कितने लोग सीखने लगे, कितने आगे मस्जिद नबी भरी रहती है, आपने नहीं देखा उस दिन कितने थे हज्जतुल विदा पे 1.25 लाख थे। आम सतह वाले लोग यही सोचते हैं लेकिन अबू बकर की नज़र ये थी कि जब काम पूरा हो जाता है तो इंसान वापस बुला लिया जाता है, फितरत का असूल है। अल्लाह के नबी के दुनिया से विसाल की बातें थी और अल्लाह ने इसमें बता दिया कि थोड़ा सब्र के साथ चले, एक रुख पे चलोगे तो थोड़ों से ज्यादा होगे। और ये है वो सूरत जिस पे आप कह सकते हैं तन्हा चले थे लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, कारवां बनता गया। आज तहदीस नेमत के तौर पे और उन सारे साथियों को दुआओं में याद करने के नाम पे कहूँगी कि आज इस वक्त नूरुल कुरान के प्लेटफॉर्म पे अल्लाह की तौफीक और उसकी रहमत से इतने वॉलंटियर्स, इतने एडमिन्स, इतने जिम्मेदारान और इतने दिन रात खपने वाले हैं कि जिसका 10वां हिस्सा भी हमारे इब्तदाई दिनों की क्लासेस में नहीं होते थे। 10 से 20 लोगों की मेरी पहली क्लास थी, यकीन करें। आज जब मीटिंग रूम खोले और रूम भर जाए और लोग ना पूरे आए तो मैं और हम सब साथी फिर रोते हैं, जो हमारे पुरानी मेखे हैं हमारे साथ, जो चले में एक रुख पे अपना सर डालकर, किसी को उनके नाम भी नहीं पता, ये भी याद रखिए। ये जो चंद नाम आपको दिखते हैं सिर्फ ये नहीं है, इनसे पीछे बैक एंड पे जो लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, मैं उनके नाम लेके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन अल्लाह के ऊपर नजरें हैं कि अल्लाह ने उनको मुझसे ज़्यादा देना है इंशाल्लाह, और मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ज़्यादा देना है इनको। मेरे नाम के साथ तो पता नहीं लोग क्या सोच लें, कितनी गलतियां तो मैं इधर से करके उठती होंगी, लेकिन इनके तो नाम भी नहीं। तो याद रखिए चलते जाएंगे ना तो आप सीधे निकलेंगे, और अगर आपको शौक है ना टीचर बनने का तो फिर पहले आप काम करना भी सीखिए, फिर एडमिन भी बनिए, आप वो हर काम करें। वल्लाही मैं वो बातें कभी बड़ी बेतकल्लुफ बातें हो जाती हैं, हर काम खुद किया पहले, मैं अपने वो दिन सोचती हूँ मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन यहाँ ये देख लीजिए कि अल्लाह के नबी के साथ 1.25 लाख का मजमा मारूफ बात में है, तो सोचिए वो दिन देखिए जब हजरत उमर फारूक मुसलमान हुए थे, तकरीबन 4था 5वां साल था नबूवत का, तो सहाबा ने तकबीर कही अल्लाह अकबर के, इतने ज्यादा हो गए, उमर आ गया। और फिर उमर के बाद कौन कौन सा हीरा अल्लाह ने ना दिया, खालिद बिन वलीद हीरा नहीं थे, इकरमा हीरा नहीं थे। तो याद रखिए सही रुख पे काम कीजिए, और ये मेरा मैसेज भी है सब काम करने वालों को जो किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किसी नाम, किसी इदारे, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन काम ऐसे कीजिए कि आप किसी एक रुख पे जाते हुए दिखे। और ये भटक के और इस तरह से करने वाले काम नहीं होते, सर उठा मुंह फाड़ नहीं है। मैं तो कहीं खो चुकी होती अगर मेरे साथ से खूबसूरत साथी ना होते। अल्लाह इनको करवट करवट दुनिया आखरत की नेमते और रहमतों के खजाने उंडेल दे इन सबके ऊपर, नए और पुरानों पे, डे वन से लेके आखिरी दम तक जिंदगी में जो ये काम में मददगार होगा, अल्लाह उसको बेहतरीन खजाने दे दे। उनके घर वालों को अल्लाह चुन ले इस रस्तों में और उनकी औलादों के दीन ईमान की हिफाजत कर दे। ये काम अकेले करने का नहीं होता। यहाँ ये सिखाना चाह रही हूँ इस वक्त कि दुश्मनों की नाकामी के लिए अल्लाह का जिक्र करें, मुशरिक से बरात और बेजारी का इजहार करें, मुशरिकीन अलग हो जाएं, मुवाहिदीन अलग हो जाएं, और आप अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगते रहें और अल्लाह की हमदो सना करते रहें, तो एक दिन आपकी ज़िंदगी में भी ये वक्त आएगा, आपके सामने आए या आपके बाद आए, ज़रूरी नहीं कि आपके सामने आए। मुखलिसीन से तो अल्लाह ने उनके बाद ज़्यादा काम लिया है, मैं कराम इसकी मिसाल है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस नसर का मुस्तहक बना दे। आगे है सूरत मसद, जिसको तब्बत भी कहते हैं। वाहिद शख्स है पूरे कुरान में जिसका उसकी बेगम के साथ यानी मिस्टर एंड मिसेस या अबू लहब का जिक्र है। इसके अलावा किसी का नाम लेके रुस्वा नहीं किया, इवन अबू लहब भी नहीं। क्यों? कि जो अल्लाह के नबी से दिल में बुगज रखे और आपके रास्ते में कांटे फैलाए, वो हक रखता है कि उसका नाम लेकर उसको रुस्वा किया जाए। अल्लाह के नबी का चचा, आपका हमसाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन वतब, मा अग्नानहु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया, ना तो इसका माल इसके काम आया ना इसकी कमाई। वन करी भड़कने वाली आग में जाएगा और इसकी बीवी भी जाएगी जो लकड़ियां ढोने वाली है। इसकी गर्दन में पोस खजूर की बटी हुई रस्सी होगी। अल्लाह के नबी के रास्ते में रुकावटें खड़े करने वाले इस कपल को अल्लाह ने नाम लेकर जब रुस्वा किया, तो गुस्से में आकर ये औरत आई और कहने लगी कि मेरी हज की है। अल्लाह ने कहा की है, मुझे हक है। और ये कोहे सफा पर आपकी दी हुई दावत का जवाब था, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू माई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये था कि तब्बा या मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह, मुंह पे लाने को दिल नहीं करता जुमला, क्या मोहम्मद तेरे हाथ टूट जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो कहते पहले दिन 100 लोग आए, 1,000 आए, कंपेयर करते हैं, गिनते रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने से ज्यादा लोगों को गिनते हैं। छोड़ दीजिए, आप इखलास पैदा करें। कैसे? सूरत इखलास पढ़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना इससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई इसका हमसर है। मेरा प्यारा अल्लाह, मेरा अल्लाह, जैसे लाड नहीं करता बंदा बच्चे को, मेरा बेबी, माई गुड्डा, मेरा फुला, यानी एक लाड, एक मोहब्बत का जो जोश आता है ना, अगर आपके दिल में वो नहीं उठ रहा तो मान लीजिए वल्लज़ीन आमनु अशद्दु हुब्बा लिल्लाह, नहीं है मोहब्बत तो है पर शदीद है, अशद नहीं है, क्योंकि अल्लाह से मोहब्बत के बगैर इखलास आता नहीं है। और नाम तो देखिए सूरत के एंड पे क्या देखे जा रहा है कुरान आपको, मुझे तौहीद, शिर्क फिज़्ज़ात की नफ़ी, ला मिसल लहू, ला मिसाल लहू, ला मकसूदा, ला मतलूबा, ला माबूद इल्लल्लाह, ये है समद। सरदारों का सरदार, सिफाते कामिला की हामिल हस्ती, जो सबसे बेनियाज और सब उसके मुख्ताज। इस समद को आज अपने दिल पर रखे, लोग कहेंगे अच्छा इसका तवीज़ बना के गले में ना लटका ले, नहीं लिखिए। स्ट्रेस की वजह दुनिया के गम, परेशानियाँ, बीमारियाँ, वजह क्या कि नज़रें अल्लाह पर नहीं, लोगों पर हैं। कहिए ला मतलूबा इल्लल्ला, ला मकसूदा इल्लल्ला, ला माबूदा इल्लल्ला। हासिल क्या होगा? ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे जिनको अल्लाह गम फिक्र से बिल्कुल बेनियाज कर देता है, अल्लाह जिनको गम और फिक्र से, और आप कहने पे मजबूर हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह ये लज्जत आशनाई लगा दे, फिर मुझे आपको परवाह भी ना रहे बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है, लोग जाने उनका रब जाने, हमें तो पता ही नहीं चला ये लॉकडाउन है, हम तो खुद को लॉकडाउन करना चाहते हैं। मुझे आजकल इतना ज्यादा इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का कॉल याद आता है, जब आखिरी दौर में उनको जेल में डाल दिया गया तो लोग अफसोस और हसरत करते होंगे, हाय बेचारे, तो वो कहते थे ना ना इन्ना जन्नती माइश, मेरी जन्नत मेरे साथ है, कहते थे मैं इसमें ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। और रियली मैंने इस दौरे कुरान को बहुत इंजॉय करा, मेरी ज़िंदगी का ये एक बेहतरीन दौरे कुरान है जिसने मुझे क्या क्या नहीं दिखा दिया। तो आइए आखिरी दो सूरतों में से सूरत फलक और नास, जिसको जड़वा सूरतें कह लें, ट्विन कह लीजिए, मुअव्वज़तैन कह लीजिए, इकट्ठी ही नाजिल की गई। अल्लाह के नबी पर जादू किया गया ताकि दिखाया जाए कि उम्मत पे भी जादू हो सकता है, जैसे कि बाकी चीज़ों में आपको मिसाल बनाया गया। अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि ऐसे लोग जो सहर ज़दा हैं या जिन पे कोई बोझ है या जादू टोने का शिकार हैं, और सब टूट के छोड़ दें, सब बाबे बाबियाँ तीर तवीज़ सब पानी पड़ा हुआ छोड़ के इन दो सूरतों को पूरे यकीन से पढ़ ले। क्यों? इसलिए कि इनमें शुरूर से पनाह है। नोट कीजिएगा, मैं पहले बोल रही हूँ ताकि आप तर्जमे पे गौर करेंगे उस वक्त सुनते हुए। इंसान को अमूमन दो किस्म के शर लाहिक होते हैं ना, एक अंदर की दुनिया का आपके अपने अंदर नफ्स के फितने, और एक बाहर की दुनिया का। तो सूरत फलक और नास इन दोनों में है। सूरत फलक में बैरूनी आफात से पनाह है और सूरत नास में अंदरूनी आफात से पनाह। यानी आप कह सकते हैं कि सूरत नास आपको मुझे नफ्स के शर से बचाती है, जो फितनों में से एक फितना था, और सूरत फलक आपको बाहर की दुनिया के सारे ही फितने, जिसमें कोरोना भी है और जिसमें सारे जरासीम भी हैं और सब कुछ है, और जादू टोना नज़र हसद और ये सब कुछ है, ये आपको मुझे बताती है के आओ इसको पढ़ो। 11 आयतें, और अल्लाह के नबी ने ये 11 आयतें पढ़ी और आपके ऊपर से वो 11 गिरे खुलती गईं, जो एक औरत ने आपके बाल लेकर किसी कुएं में डाल दी। इसकी तफसीर बाद में आप सुनना चाहें तो हर सेट के एंड पे मौजूद है। दौरे कुरान में बहुत हम बात नहीं करते, लेकिन एक्स्ट्रा इसकी बहुत सारी तफसीरें मौजूद हैं और इसको हम इन डिप्थ भी सुन सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो क्या पता चला कि अल्लाह कौन है? देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्री मा खलक व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्री नफ्फासात फिल उक़द। आप कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ, पहली चीज़, और हर उस चीज़ के शर से जो इसने पैदा की, और अंधेरी रात के तारीकी के शर से जब इसका अंधेरा फैल जाए, और गिरा लगाकर इनमें फूकने वालियों के शर से भी, और हसद करने वालों की बुराई से भी जब वो हसद करे। यानी पनाह एक की है, रब्बे फलक, तीन चीज़ों से बना ली जा रही है। इससे बरक्स अगली सूरत में हम देखेंगे कि अल्लाह ताला की तीन सिफात हैं, रब्बिन नास, मलिकिन नास और इलाहिन नास, लेकिन जिस चीज़ से बना ली जा रही है वो एक ही है, जो आपके मेरे अंदर का नफ्स है। तो इस सूरत फलक में क्या देखा? हद से बड़ी हुई ख्वाहिशात, नतीजा हसद और उनाद में आता है। यानी जब हम बहुत एक्सपोज करते हैं ना, फ्लॉन्ट करते हैं, इजहार करते हैं, डिस्प्ले करते हैं ना अपनी नेमतों का, तो लोग हमसे हसद करते हैं, और असद नेकियों को खाने वाला गुना है। रश्क चंद उमूर में जायज़ है, बस आप देखिए कि तमन्ना न करें जो दूसरों को मिला है वो उससे छिन कर आपको मिल जाए। अपनी सलाहियतों पर नज़र रखें और अल्लाह ताला से इसकी नेमतों का सवाल करें। औरत मर्द की माशरती जिम्मेदारियाँ चूँकि मुख्तलिफ होती हैं, तो औरत मर्द एक दूसरे से तकाबुल ना करें। अपने अमाल पर नज़र रखें, अच्छाई और बुराई का अजर दोनों के लिए बराबर है, अल्लाह ने वहाँ किसी को एक दूसरे पर अलग नहीं किया। फिर आप देखिए कि आजमाइशों पर सब्र और नेमतों पर शुक्र करने से अल्लाह का फजल मिलता है, वो मांगिए, अल्लाह मुदखलन करीम अन इज्जत की जगह देगा आपको मुझे। सही रिवायत है सहीहा की 2942, उकबा बिन आमिर से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं आपको ऐसी सूरत की तालीम ना दूं जो ना तो तौरात में, ना जबूर, ना इंजील में, और ना मैं कुरान के बकिया हिस्से में इसको पाता हूँ। कितना प्यारा अंदाज है रग़बत दिलाने का। हर रोज़ इनकी तिलावत ज़रूर किया करो, और वो सूरतें हैं सूरत इखलास और सूरत फलक और सूरत नास। तो ये सूरतें इस वक्त आप और मैं पढ़ रहे हैं, आइए आखिरी सूरत पढ़ते हैं, सूरत नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। आप कह दीजिए, मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ, लोगों के मालिक की, लोगों के माबूद की पनाह में, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, ख्वाह वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो। तो क्या सीखा? सूरत लहब से सूरत नास तक बदतरीन और बदनसीब मियाँ बीवी का जिक्र है। अल्लाह ताला हमें अपने शोहरों के साथ और शोहरों को बीवियों के साथ नेकियों के और दीन के काम करता ही रखे, यहाँ तक कि हमारी सांस की डोरी छिन जाए और दोनों में एक भी रह जाए तो वो भी करता रहे। अल्लाह ताला अपनी हिकमत और तदब्बुर में वाहदहु ला शरीक है, मजबूत पनागाहें, नाकाबिले तस्खीर मुदाफियत, शाफी इलाज बीमारी का, वबाओं का, जादू का और अनदेखी बलाओं से बचाओ इन आखिरी दो सूरतों में है। और फिर अल्लाह के खालिक होने, मालिक होने, हुक्मरान होने और माबूदे बरहक होने का जिक्र सुना, और इससे हमें ये पता चल जाता है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला ही पर नज़रें लगानी है। और आप देखिएगा कि कुरान का आगाज़ था अल्हम्दुलिल्लाह से, फातिहा से, यानी एक दुआ थी ना, और ख़त्म हो रही है रुकिया से, पनाह मांगो। अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद ये बात समझ आ जाएगी कि तुम अल्लाह की पनाह में आए बगैर बच नहीं सकते। शैतान साथ साथ चल रहा है आपके मेरे, कैसे उसने आपको मुझे किनारों में रखा हुआ है। तो ये था 30वां पारा। गोल्डन वर्ड्स लीजिए, सुनहरे हरूफ हैं, दुनिया की बजाय आखरत को तरजीह बनाएं। यकीन करें कि एक एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, ये ऐसी आदतन और रस्मन नहीं पड़ रहे हम। इल्म आखरत को फिक्रे आखरत में ढलना है, ईमान तज़किया नफ्स और अमल सालेह की कोशिश करनी है, ईमान को बढ़ाना और तज़किया करके नफ्स का अमल सालेह की कोशिश करनी है। अल्लाह ने हमें दो तरह के रास्ते ज़िंदगी में और इंजाम और दो आखरत के दिखा दिए, अब जिस पे मर्जी चल लें। और तंगी के साथ आसानी है, और कुरान और शरीयत बमुकाबला ख्वाहिश परस्ती और नफ्स परस्ती के है, अब आप मैं किस राह पे चलें पूरी आज़ादी है। रब की पकड़ खशियत इलाही और हिसाब किताब की फ़िक्र करनी है, और हकीकत है कि दुनिया की बजाय आखरत को तरजीह देनी है। जिसने ये चंद जुमले कर लिए उसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं रहेगा। फितनों का हल लीजिए, क्या फितना था, खुशहालियों का फितना जिसके अंदर तकरीबन 10-12 फितने मौजूद हैं। दीनी इल्म को छोड़कर सिर्फ दुनियावी इल्म को हासिल करना स्ट्रेस और स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाले दूसरे फितने लाता है। तो लिहाजा हमने दीन का इल्म लेना है और इस बात का इदराक करना है, जानिए कि रियली ये भी एक बात है सोचने की। फिर इसी तरह उम्मत की दुनियावी तनज़ुली और दीनी जवाल के तमाम पहलुओं को सोचते हुए इनकी वजूहात तलाश करनी है। हर शख्स को अपना मुहासबा करना है कि मेरा माल, वक्त, सलाहियतें और अल्लाह ताला की दीवी नेमतें कहाँ लग रही हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन्नाइम। इसी तरह मकसद हयात, दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ से वाकफियत हासिल करनी है। इखलास पैदा करके ताल्लुक़ बिल्लाह को मजबूत करना है, और हर मामले में अल्लाह ताला पर नज़रें और उम्मीद लगाते हुए तवक्कुल करना है। कुरान से जुड़ना है, और यही इंसान की तमाम परेशानियों, बीमारियों का इलाज और फितनों का हल है। तकवा वाली बा मकसद ज़िंदगी गुजारनी है, और निफाक दिलों का जमूत और सर्द मोहरी को ख़त्म करके कुरान को समझ कर पढ़ना है। जितना ज़्यादा इसको समझ कर पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके मेरे दिल में और पढ़ने की चाहत और तलब पैदा होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी चाहत और जितनी ज़्यादा आपकी तलब और आपकी ख्वाहिश होगी अल्लाह ताला आपसे उतना ही काम ले लेगा। और फिर ये सारा कुछ करके मुहासबा भी करना है कि मैं असहाबुल जमीन से साबिकून अव्वलून की तरफ चल पड़ी कि नहीं पड़ी। इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह की नज़र नतायज पर नहीं बल्कि हमारी पूरी कोशिश पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कलाम लफ्ज़ों के एतबार से पूरा हुआ। कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो अल्लाह ताला आपके मेरे लिए उसको समझना आसान कर दे। अब यहाँ कहाँ खड़े हैं, आपको अगली ज़िंदगी का भी एक सांचा देना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेडिकल कर लें तो आप डॉक्टर बन जाते हैं ना, तो जब मेडिकल से फारिग होते हैं तो डॉक्टर बन के काम करते हैं ना, मरीजों को देखते हैं। अब मैंने आपने क्या करना है, और इंशाल्लाह हमारी अगली पूरी ज़िंदगी इस पे होगी, और वो क्या है कि दीनी फ़राइज़ का जामे तसव्वुर। और दीनी फ़राइज़ में सबसे बड़ा फरीज़ा लफ्ज़ बंदगी है। पहले हमने खुद अल्लाह के बंदे बनना है, बंदगी रब करनी है। इसके लिए आप देखिए कि हमारे दिल में अल्लाह का प्यार और मोहब्बत हो। सूरह हुजरात 15 में हम पढ़ चुके कि जब दिलों में अल्लाह की शान भर जाती है, दिल अल्लाह को मानकर दिल से तस्दीक करते हैं और फिर ज़ुबान पे आता है तो सच्चा ईमान आता है, यानी बुनियाद है आपका मेरा अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकरार बिल लिसान कर देंगे तो कानूनी मोमिन तो बन जाएंगे, मज़हब के खाने में इस्लाम है, लेकिन अपने फ़राइज़ यानी नमाज, ज़कात, कुरान, रोज़े, हज के ज़रिए दिन ब दिन आप बंदगी के दर्जे पे बढ़ते जाएंगे। फिर इस्लाम, इताअत, तकवा, इबादत, ये आपके होंगे। ये पहला लेवल होता है कि बंदा खुद रब का बंदा बनता है। इसके बाद अगला लेवल है दावते बंदगी। अब आपने दूसरों को बंदे बनने की दावत देनी है अल्लाह के। इसके लिए तबलीग है, दावत है, अमर बिल मारूफ और शहादत अलिन्नास है। और फिर आखिरी दर्जा है निज़ाम बंदगी, यानी ये कुरान आपसे मुझसे बंदगी का निज़ाम राइज करवाना चाहता है। फिर इसका दर्जा है तकबीर रब, फकब्बिर हो तकबीरा, इकामत दीन, इजहार दीन हक, और आखिरी मंजिल है वयकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह। इसमें आप देख रहे हैं साथ साथ कुरान और जिहाद चलता ही जा रहा है। जिद्दोजहद और कुरान जिसकी यहाँ रुक गई, अगर मैं पहले स्टेप पे रोक दूँ कि आपने बस अल्लाह के बंदे बन के सबीलुल जन्नत पे ही अपने आप को रोक लिया है, तो अगले काम नहीं होंगे। अगला दर्जा आपका नूरुला नूर का बनेगा, तभी आप फिर दावते बंदगी देंगे और फिर इल्म नाफिया पे जाएंगे तो निज़ाम कायम होगा। और एक साइड पे आपको रुकावटें भी दिख रही हैं, शुरू में हम खुद ही रुकावट है, हमारा नफ्स ही बड़ा बुरा होता है, नफ्स हमारा शैतानी रगबतें, बिगड़ा हुआ माहौल, लेग पुलिंग करता है, कोई ज़रूरत नहीं कोर्स करने की, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, बस पढ़ लिया ना काफ़ी है, ज़रा सा उससे लड़ झगड़ के ऊपर निकलते हैं तो बातिल नज़रियात के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू होता है। आप इंजार, तबशीर और तज़कीर बिल कुरान का काम करने जाते हैं, बाहर वाले आपको पता नहीं किन नज़रों से देखते हैं, तो हिकमत, मौइज़त हसना और जिदाल हसना से ये काम करते रहें और फिर आखिर में हकूमती सतह पे पहुंच जाएं या मुल्की और इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो तागूत के निज़ाम के ख़िलाफ़, जिसमें सूद भी है और जिसमें बहुत कुछ है, उसमें फिर सब्र महज है। आज तो सब्र और मुसाबरत है, मैं आप ये कुछ अभी नहीं कर सकते, इस पे सब्र कीजिए, अपने नफ्स को काबू कीजिए, अपनी नस्लों की बेहतरीन तरबियत कीजिए, तसादम जब रास्ते में आता है तो उस पे फिर लड़ने मरने को तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सफ़र में हमने जिन फितनों को देखा, पहले पारे से लेके 30वें पारे तक, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको इन सारे फितनों से बचा ले। और एक आखिरी जुमला बोल कर दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से बात शुरू हुई थी और इसके बाद मिनल जिन्नति वन्नास पे बात पूरी होती है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक तुझको रहमत के सिवा कुछ ना पाया, ये है रहमान रहीम। इस पूरे सफ़र में अल्लाह से जुड़ना सीखा और जोड़ना सीखा, सिबगत अल्लाह में ढलना सीखा, जो पहले मुस्लिम बनाकर फिर मोमिन बनाकर फिर मोहसिन बना देती है इंसान को, और फिर अपना सर अल्लाह के सामने रख कर बंदा कहता है कि वो घोड़ा जिसका मालिक उसको सिर्फ चारा खिलाए, वो मालिक के आगे सर झुका दे, तो मेरा तो वो खालिक भी है, मालिक भी है, राजिक भी है, फिर मैं उसके आगे क्यों ना झुकूं। और वलादियाती दबहन की तरह वो घोड़ों से भी सरपट दौड़ता है अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए, इस शेर की सूरत में कि मेरा मरकज़, मेरा महवर, मेरा दस्तूर हयात, मेरा ईमान व यकीन अलहम्द से वन्नास तक। आप सबको अल्लाह ताला बेहतरीन जज़ा दे, मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने लाइव सुना, क्योंकि आप इसमें प्रिजर्व हो गए हैं, और मैं उन सब के लिए बहुत दुआगो हूँ और उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ जो बाद में इन चीज़ों को ऑडियोज़ और वीडियोज़ की सूरत में सुनते भी रहेंगे, फिर इसको एडिट करके दूसरों तक पहुँचाते भी रहेंगे, इसके शॉर्ट क्लिप्स बना बना कर लोगों को देंगे कि ये इस बारे में से ये क्लिप निकला है तो आप इसको सुनिए, आपको इससे फ़ायदा होगा। और मैं उन सब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस सफ़र में ही नहीं अगले आने वाले कोर्सेज में भी हमारे साथ हैं। ये सारा काम जो आपके सामने होता है और चंद लोग आपको दिख रहे होते हैं एज ए एडमिन्स जो रूम में लाइव एडमिन होते हैं और मैं जो बोल रही होती हूँ, तो याद रखिए कि ये सिर्फ हम चंद लोगों का काम नहीं, अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही बरकतें दी हैं, ये मैं अल्लाह के सामने जाकर भी कहने को तैयार हूँ। तो वो साथी जो अंसारुल्लाह वाकई जाजा नसरुल्लाह वल फत इस सूरत के मुताबिक वो इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर दे और उनकी इन कोशिशों को कबूल कर ले और बाकी अल्लाह ताला फिर हम सब को अंसारुल्लाह बना दे। तो माशाल्लाह इस लिस्ट में हमारे पास ऑनलाइन एडमिन्स होते हैं, इनके ऑनलाइन एडमिन्स, इसी तरह से हमारे पास सोशल मीडिया की पूरी टीम है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला उनको आफियत में रखे। वेबसाइट की अलग टीमें हैं, एक वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों पे काम करते हैं। मेन वेबसाइट आप नूरुल कुरान के नाम से लेंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर अभी बहुत कुछ आ रहा है, अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे। NURULQURAN.com आपको याद हो चुका होगा, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हमारा सारा काम उसके अंदर आपको दिखेगा ताकि आप एक जगह से सब कुछ पा लें। फिर इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हर प्रोजेक्ट की टीम है, हमारे प्रोजेक्ट्स में कुछ दावा प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ सोशल वर्क के, और प्लस ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दीन की कामों के हैं, और प्लस इसी में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें नज़र आती हैं उनमें से आप देखिए कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ब्रॉडकास्ट टीम जिनके ज़रिए से आप ये काम सुनते करते कराते हैं। फिर इसी तरह हमारे ऑन साइट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारे पास गुजरांवाला में एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट है जहाँ बड़े इखलास के साथ लोग काम कर रहे हैं, इसी तरह लाहौर में बहरिया टाउन में हमारे पास एक जगह मौजूद है, अलग से क्लासेस तो बहुत सी हैं लेकिन जितने भी लोग जिम्मेदारान हैं ऑन साइट पे। फिर इसी तरह ऑडियो एडिटिंग की एक पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको मेरे एक एक क्लिक पे जो वो मेरी गलतियाँ चुनते हैं बेहतरीन जजा दे। और मैं उनको जो दुआएं देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि वो मेरी गलतियाँ चुनते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को मिटा दे उनके नामे माल में से। फिर इस तरह लाइव स्ट्रीमिंग टीम के काम बज़ाहर आप देख भी रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे सुन रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स पे, तो हम सब अपनी इस टीम का दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं। वो नहीं दिखते लेकिन उनका काम दिखता है, और अल्लाह करे कि उनका काम जन्नत में जाने तक दिखता रहे, कि अमाल नामों में भी वहाँ हमें अपनी ये खूबियाँ दिखती रहें कि अल्लाह हमारी वजह से इतनों को फ़ायदा हुआ। एक बड़ा खूबसूरत जुमला किसी एडमिन ने ही कहा कि मैं तो पढ़ती हूँ, मेरा तो अजर पढ़ने का है, रीडिंग मटेरियल में लोग मेरे साथ मदद करते हैं। तो जो हमारे डिज़ाइनिंग का काम करते हैं साथी, उनमें से किसी का जुमला कि ये बताइए कि मेरा क्या अजर है, मैं तो डिज़ाइन बनाता हूँ, या मेरे से तो ये डिज़ाइन बनता है, आप बताएं, मैं तो सिर्फ ये काम करती हूँ। तो मैंने उस पर यही कहा था कि अगर आपका डिज़ाइन ही लोगों को सुनने पे माइल कर दे और देखने पे, तो आपका अजर अल्लाह ज़ाया कैसे कर सकता है। आप देखिए, कपड़े पहनते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो फिर ही लोग आपकी तारीफें करते हैं ना। तो याद रखिए, वो नुक्ता नवाज है। कहीं स्लाइड टेढ़ी जाती है, मैं कहती हूँ जाने दीजिए, वो है ना ऊपर ठीक करने वाला, कर लेगा, हम कुछ नहीं कर रहे, फिर के कोई बात नहीं है, लेकिन अजर अल्लाह के पास है। फिर इसी तरह हमारी सपोर्टिव प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट टीम्स हैं जो नूरुल कुरान के साथ नहीं भी लेकिन उसके साथ दूसरी जगह है। माशाल्लाह इस साल हमारे इस दौरे कुरान में मुस्तकिल हमारे साथ इस्लाम 360 चैनल वाले साथी रहे, आज भी ये चाह रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी बेहतरीन जजा दे। इस तरह GLM TV जो कि हमारे इस साल के होस्ट, भरमिंगम की एक बड़ी वेल नोन खूबसूरत मस्जिद जिसमें जाकर एक दफ़ा हरम ज़रूर याद आता है, और जिसको ग्रीन लेन मस्जिद के नाम पे बर्मिंगम वाले तो जानते हैं, यूके में भी बड़े मशहूर हैं, आगे भी दूसरी जगहों में भी जानते ही होंगे, तो हम उनका भी दिल की गहराई से शुक्र अदा करते हैं। और इंशाल्लाह आगे जाकर वहाँ ऑन साइट भी काम होगा, जो ही अल्लाह ताला ने ये लॉकडाउन की कैफियत से निकाला, तो मेरा ख्याल है तहदीस नेमत पे हम सब वहाँ मिलेंगे, और पूरे यूके को तो मैं दावत दूंगी, और पेरिस वालों को तो आना ही पड़ेगा, यानी यूरोप वाले तो कम अज़ कम उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होंगे कि हमने वक्त के साथ ये काम किया। इसके बाद हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप टीम का। बिलीव मी, मैं जब उनकी कोशिशें देखती हूँ तो मुझे अपने ऊपर शर्म आने लगती है, कैसे वो एक एक ऑडियो को अलग करके, रिसाइज करके, उनको छोटा बड़ा करके, फिर पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ फैलाते हैं। माशाल्लाह उनकी एक मेन जिम्मेदार है, फिर उनके बस जिम्मेदारान जिम्मेदारान, एक लंबी चेन है। इसी तरह ऑडियो वीडियो टीम है। अब ये दौरे कुरान यहाँ नहीं रुकेगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप इस क्रेडिटेड फॉर्म में देखेंगे, और फिर वो लोगों तक पहुँचेगा। फिर रीडिंग मटेरियल टीम का तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्र गुज़ार हूँ कि मेरे चंद जुमले, मेरी बातें, मेरी दी हुई चीज़ों को उन्होंने क्या खूबसूरत चीज़ों से एडिट भी किया, सब कुछ कर करा के लोगों तक पहुँचा दिया। और सबसे बड़ी बात है, हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार प्यार से कहने दीजिए, हमारे बच्चे, प्यारे बच्चे, बेचारे बच्चे, वो स्टूडेंट्स जो मेरे सामने जब बैठते हैं तो मेरा बोलने को दिल करता है। और मैं आप सब जो जूम से इस वक्त सुन रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आपने मुझे वो फीलिंग दी जो मुझे किसी भी ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट्स को देखकर होती थी, और फिर मैं बोलती थी उनको देखकर। अब इस वक्त तो ऑनलाइन पे मैं सिर्फ अकेली बात करती हूँ ना, तो वो स्टूडेंट्स जो हमारे वर्ल्ड वाइड इस साल दौरे कुरान में मेरे साथ थे, मैं उनको खुशखबरी देना चाह रही हूँ कि आप मेरी बहुत सारी बातें जो मैंने शेयर की ना उसकी वजह हैं। आप ना होते ये दौरे कुरान इतना कम्पैक्ट और इतना मुश्किल नहीं होना था, जो अल्लाह मुझे माफ़ करे मैंने इतना मुश्किल कर दिया। पब्लिक को तो मैंने इसमें नहीं उलझाना था, जिन बड़े बड़े मैंने फ्लो चार्ट्स में आपको उलझाया, तो आप सबका यहाँ बैठना, इट हैज़ मेड द डिफरेंस। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, इस सोच के साथ कि आप और मैं बेहतरीन तरीके से ये काम ले दे सकें, और अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, हमारी कमी बेशियों से दरगुजर करे, हमें मुआफ़ करे, और हम सब से राजी रहे, और अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों का हक अदा कर सकें। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो, पहले तो खुद अपने लिए दुआ करें फिर मैं बोलूँगी, इसलिए कि आपके अपने भी तो अल्लाह ताला के साथ रबते हैं ना। इज्तमाही दुआ कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन मैं तो ये दुआ जो कराती हूँ और अभी थोड़ी सी करूँगी भी साथियों की फरमाइश पे, वो इस सोच के साथ होगी कि अच्छे काम करने के बाद जो दुआएं की जाएं कबूल होती हैं। हमने सूरत आले इमरान में ये बात समझी थी कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इबादत में मसरूफ़ थी तो वहीं खड़े खड़े हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ मांग ली थी। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला तहदीस नेमत पर दुआ करते हुए, एक दुआ जो मुझे अपने बहुत ही प्यारे उस्तादों से मिली, मैं आपके साथ शेयर करूंगी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। سبحانہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے قبول فرمائے اپنی شان کے مطابق، اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمیں اہل القرآن میں سے اٹھائے. ہمارے اور آپ کے اوقات کا فرق ہے، اس لیے آن لائن حاضر ہونا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ دل سے دعائیں ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائے آپ کے لیے. جنہوں نے بھی پڑھایا یا پڑھا ہے یا سنا ہے، اسے ان سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے، اور پھر اس کے بدلے میں اپنا دیدار عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے استادوں کی دعائیں لینے والا اور ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے بڑوں کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں جنہوں نے ایک لفظ سے بھی ہماری مدد کی. وہ اب دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پہ ان کو نہ پکڑے، لیکن ہم سے اگر کوئی خیر کا کام لے لے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجھک وعظیم سلطانک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما. یا اللہ اگر اس میں تیری رضا تھی تو یا اللہ تجھ سے راضی ہو جا، اور یا اللہ ہمیں اس کام میں اگر کسی اور کی رضا مطلوب تھی تو یا اللہ اس کو اس سے نکال کر اپنی رضا میں ڈھال دے. یا اللہ اس کی کمی بیشیوں کو میں اپنے اور شیطان پہ لیتی ہوں، اور اس کی خیر کو، اس کی اچھے کاموں کو تجھ پہ اور ان ساتھیوں پہ ڈالتی ہوں جنہوں نے اس میں مدد کی. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ اس کتاب کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کی بہترین طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر سکیں. یا اللہ اس میں تو ہمارے ماں باپ، ہمارے استاد اور ہمارے شوہروں کے ماں باپ کو شامل فرما. یا اللہ میں نے تو زندگی میں یہی سیکھا کہ جو ان تین کی قدر کر لے گا اللہ اس کی بڑی قدر کرے گا. یا اللہ ہماری خیر میں ان سب کو شامل فرما. اور یا اللہ اس میں اس کے بعد حق ہے دعا دینے اور لینے کا، تو وہ ہمارے گھر والے ہیں، اور گھر والوں میں ہمارے شوہر اور شوہروں کی بیویاں ہیں. یا اللہ ان کو بہترین جزا دے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمارے شوہروں پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھیوں کے شوہر ہیں ان پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ جو ہمارے ساتھیوں کی بیویاں ہیں ان پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہمارے سارے سلسلے میں جو مددگار ہیں، یا اللہ ان کی بیویوں کو بھی ان کے دین کے اس کام میں معاونین بنا، ان کی نسلوں کو معاونین بنا. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ اب تو ہم ہفتوں مہینوں ان سے بات بھی نہیں کر پاتے. یا اللہ ایک گھر سے اٹھنے والے لوگ بعض دفعہ پیچھے ہو جاتے ہیں، اور ایمان کے اور مقصد کے ساتھ ہی دن رات ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. یا اللہ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کی تھی، وجلی وزیر و مناخلی، یا اللہ ہماری بھی یہ دعائیں اپنے بھائی بہنوں کے حق میں لگا دے. یا اللہ ان سے اپنے دین کے کام لے لے. یا اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے. یا اللہ ان کو صرف ایک غم لگا دے کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا کو بھی سنوارنا ہے. یا اللہ ان کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بھائیوں کے بچے، ہماری بہنوں کے بچے. یا اللہ ان کی بیویاں اور ان کے شوہر، یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. یا اللہ ہمارے عزیز و قارب، ہمارے چچا، ہماری پھوپھیاں، یا اللہ ہمارے والدین کے رشتہ دار، یا اللہ ہمارے ماموں، ہماری خالائیں، ہمارے باپوں کے باپ، ماؤں کے ماں، یا اللہ سب پہ رحمت فرما. یا اللہ جو موجود ہیں ہم ان کی تو قدر کر لیتے ہیں، جو چلے گئے ان کا تو ہمیں نام بھی نہیں پتہ. अल्लाह ऊपर तक हमारे पापाओं के बाबों की बेहतरीन तरीके से मदद फरमा। अल्लाह मन तनूर समावाती व मन फी हिन्ना। अल्लाह तो आसमान ज़मीन का नूर है, या अल्लाह हमारे दिलों को नूर से भर दे। या अल्लाह अंत कय्यिमु समावाती वल अर्द। या अल्लाह तू ज़मीन व आसमान को कायम रखने वाला, या अल्लाह तू हमें भी कायम रख दे। या अल्लाह अंत अल हक्कु, तू हक पे, या अल्लाह हमें भी हक दिखा। या अल्लाह तहज्जुद की ये दुआ जो तेरा नबी मांगता था, या अल्लाह इसके मुताबिक हमारा अकीदा बना दे। या अल्लाह जन्नत हक है, हमें जन्नत का यकीन दिला, उसकी कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वो हर काम जो जन्नत और जन्नत के करीब ले जाए उसके करने की तौफीक दे। या अल्लाह तेरी जहन्नुम हक है, या अल्लाह हमें जहन्नुम से बचने वाला बना दे। या अल्लाह नारु का हक्कुन, या अल्लाह हमें उस जहन्नुम का इतना खौफ लगा दे हमारे बच्चे आग में ना चले। या अल्लाह बड़े प्यार और मोहब्बत से पाले हुए बच्चे, या अल्लाह इनको आग में ना डालना। या अल्लाह किसी का बच्चा आग में ना जाए। अल्लाह दुनिया में किसी का बच्चा इस्लाम ना छोड़े। अल्लाह दुनिया में किसी का बच्चा अपने आप को एथियस ना कहे। या अल्लाह हमारे साथियों के बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गैरों के तसल्लुत में पलने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। इनकी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। इनकी निगाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह कैसे आंखों से अपने बच्चों को आग में जलता देखेंगे। या अल्लाह हमारी गर्दनों को आग से आज़ाद कर दे। या अल्लाह हमारे बच्चों की गर्दनों को आग से आज़ाद कर दे। या अल्लाह हम सब को जहन्नुम से बचा। या अल्लाह हक का ईंधन हमारी नस्लें ना हो। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा। या अल्लाह बड़ी मोहब्बत से तेरे नबी ने ये उम्मत जमा की थी। या अल्लाह इस उम्मत को इसकी कदर की तौफीक दे। या अल्लाह हम भूल गए, हम भटक गए। या अल्लाह इन नस्लों के हाथों में कुरान दे दे। या अल्लाह इस कुरान को हमारा इमाम बना दे, इसको हिदायत बना दे। या अल्लाह हमें इस किताब के मुताबिक जीने वाला बना दे। अल्लाह इस कुरान की वजह से हमारी वहशतों को दूर करना। या अल्लाह हमारी कब्रों को रोशन करना। अल्लाहुम्मा अनिस वख्शती फी कब्री। या अल्लाह कब्र में मानूस कर दे मेरी वहशत को। या अल्लाह वो तन्हाई का घर है, या अल्लाह सांप बिच्छू है, वहाँ तो कब्र झुकती है। या अल्लाह तेरे नबी ने कहा कि अगर कब्र किसी को छोड़ती तो 7 बिन मास को छोड़ देती। कि जो एक जंग में मारे जा रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उनको अपने हाथ से दफनाया, कितने तो उनके काम हुए। जिस्म अल्लाह के रस्तों में छूर छूर है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अगर कब्र ने झंझोड़ा तो हमारा क्या होगा। या अल्लाह डिप्रेशन वाले लोगों को कब्र का डिप्रेशन याद दिलाते। या अल्लाह हम अपनी ज़िंदगी से हर वो चीज़ छोड़ दे जो इस बारे में हमने ख़ास तौर पे पढ़ी कि जिसकी वजह से दुनिया भी तंगी का शिकार होती है और आखिरत भी। वमन आरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन का। या अल्लाह हम सूरह तौहा में पढ़ के आए, जो इस जिक्र से मुंह फेरेगा उसकी ज़िंदगी तंग होगी। या अल्लाह हमें कब्र की घुटन से बचा। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरआन अज़ीम। अल्लाह इस कुरान की वजह से मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह कुछ भी पास नहीं है। या अल्लाह सिर्फ ये कुरान और इसकी मोहब्बत है, तेरा प्यार, तेरे नबी का प्यार, तेरे नबी की उम्मत का दर्द। अल्लाह इसी के बदले में राजी हो जाना। या अल्लाह कोई नेकिया ना मांगना। वजल हुली इमाम व नूर व खुदम व रहमा। या अल्लाह इसको मेरे लिए इमाम, नूर, रहमत और हिदायत का जरिया बना। या अल्लाह ये सारी दुआएं मेरे साथियों के लिए लगा दे। अल्लाहुम्मा अनिस वख्शतना फी कुबूरिना। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन अज़ीम। वजल हुलना इमामम व नूरम व हुदम व रहमा। या अल्लाह सब के लिए ये खैर की चीज़ें जमा कर दे। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हुमा नसीत। अल्लाह मैं इसमें जो भूल जाऊँ मुझे याद करवा देना। अल्लाह कमी बेशियाँ दूर करवा देना। वअल्लिमनी मिन्हुमा जहिलतु। और मुझे वो सब सिखा दे जो मुझे मालूम नहीं। वरजुकनी तिलावतहु आना लैली व आना नहर। अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं रात और दिन की घड़ियों में इसकी तिलावत कर सकूं। या अल्लाह रमज़ान के बाद भी हाथों में कुरान ही रहे, सुबह शाम क़याम हो, कभी रात का कभी दिन का। या अल्लाह इस बात की तौफीक दे कि मैं इस किताब के साथ जीऊँ, इसके साथ मरूँ। अल्लाह मुझे तौफीक दे इस चीज़ की कि मैं इस किताब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूँ। या अल्लाह हमारे बच्चों के हाथों में कुरान दे दे। या अल्लाह इनके हाथों के फ़ोन्स को कुरान में बदल दे। या अल्लाह ये टेलीफोन पकड़े तो कुरान के लिए। या अल्लाह ये चिट चैट करे तो कुरान के लिए। या अल्लाह इनके फेसबुक हों तो कुरान के लिए। इनके ट्विटर, जो भी चीज़ें, या अल्लाह इसमें कुरान भर दे। या अल्लाह हमारी बच्चियों की प्रोफाइल्स पिक्चर्स में से उनकी तस्वीरों की जगह कुरान की आयतें लगवा दे। या अल्लाह इस किताब को हमारे इर्द गिर्द कर दे। वालिम निमिन हुमा जहिल तू, या अल्लाह हर एक को जो कुरान से दूर है उसको इसके करीब कर दे। या अल्लाह जिन्होंने अभी तजवीद नहीं सीखी उनको तजवीद सिखा दे। या अल्लाह जो तर्जमा ना कर सके उनको तर्जमे पे लगा दे। जिनका तज़किया और तरबियत ना हो सकी उनका वो लगा दे। और या अल्लाह वजल हुली हुज्जत या रब्बिल आलमीन, या अल्लाह इस कुरान को मेरे हक में और हम सब साथियों के हक में दलील बना, हमारे हक में हुज्जत बना, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाना। या अल्लाह ये किताब हमारी जिंदगी की बहार बन जाए। अंत जलिल कुरान अलअजीमा रबी कल्बी व नूर सदरी व जला हुज़नी व ज़हा बग़म्मी व हम्मी। या अल्लाह इस कुरान का नूर हमारे दिलों में भर दे। या अल्लाह हमारे मुल्कों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो इस्लाम के नाम पे जगहें ली हुई हैं, या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह उधर इस्लाम को डाल दे। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे लिए हुए मुल्क की हिफाजत फरमा। शर और हसद से और हर तरह के फितने से बचा। या अल्लाह गैरों की नज़रों से बचा। लोग आज झपटने को तैयार हैं, या अल्लाह जैसे तेरे नबी ने कहा कि भूखे दस्तरखान पे झपटते हैं, एक वक्त आएगा लोग मुसलमानों पे झपटेंगे। या अल्लाह हम मुसलमानों की तो अपनी रहमत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दे। या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे। या अल्लाह हमने आज इसको पीछे डाल दिया तो इसको सबसे आगे कर दे। या अल्लाह अगर हमने अपने माँ बाप के दिल दुखाए, या अल्लाह उनको तौफीक दे हमें माफ़ कर दें। या अल्लाह अगर हमारे ससुराल वालों के दिल हमसे दुखे हैं, या अल्लाह उनसे माफ़ कर दे। या अल्लाह हर रिश्ते में सुरखरू करना। या अल्लाह क़यामत के दिन कोई रिश्तेदार हमारा दामन न थाम रहा। या अल्लाह लोग ये ना कहे ये तो कुरान पढ़ते पढ़ाते रहते थे, हमारे गम इन्होंने नहीं सुने, इन्होंने अपने माल सारे दीन पे लगा दिए, हमें अपने माल नहीं दिए। या अल्लाह हर रिश्ते की अदालत में सुरखरू करना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे बाद भी और हमारी ज़िंदगी में भी अपने दीन के नुमाइंदे बना ले। या अल्लाह हमें अपनी औलादों की बहारें दिखा। या अल्लाह इनके दिल बदल दे। या अल्लाह सारे माहौल एक तरफ और माओं की दुआएं एक तरफ होती हैं। या अल्लाह हमारे वो साथी और भाई बहन जो किसी भी मुश्किल में फंसे हैं, जो उदास है, जो बेचैन है, जो बार बार अल्लाह की तरफ नजरें लगाए हुए हैं, या अल्लाह उनके दुख दूर कर दे। अम्मई युजीबुल मुस्तर्रा इज़ादा। या अल्लाह तूने अपने नबी के तो आसमान पे देखने की वजह से किबला बदल दिया। या अल्लाह हमारे ऐसे भाई बहनों के गमों के बीमारियों के किबले बदल दे। या अल्लाह उनको चुपके चुपके तुझसे मांगने वाला बना दे। या अल्लाह तेरे नबी को जब लोग सताते थे तो तू कहता था कि बस बिर अलामा यकूलून वाहजुरहुम, उनको छोड़ के रब के आगे ले आ। तो या अल्लाह हमारे उन सारे साथियों को भी तेरे आगे झुकने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे ख़ानदानों से शिर्क ख़त्म कर दे। या अल्लाह जो कब्रों पे जाते हैं उनको कब्रों से रोक ले, जो गैरों से मांगते हैं उनको गैरों से निकाल दे। सिर्फ अम्मई युजीबुल मुस्तरा और इन्नी करीब वाले पे ले आ। या अल्लाह हमारी दुआओं को सुन ले, हमारा ईमान है तू सुनता है। कद समे अल्लाह कौलती तुजा दिल कफ़ी ज़ौजिहा। या अल्लाह तूने उस औरत की पुकार को सुन लिया जिस पे अल्लाह का नबी भी खामोश हो गया। या अल्लाह हमारा भी सुन ले। या अल्लाह उस औरत पे जुल्म हुआ, दुनिया में उसकी किसी ने मदद ना की। या अल्लाह तूने आसमानों से उसके लिए आयतें उतार दी, खौला की जैसे सुनी, आज हमारी भी सुन ले। और या अल्लाह जैसे तूने दुनिया के फासिक तरीन इंसान की बीवी की दुआ सुन ली, बीबी आसिया रब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना, या अल्लाह से हमारी भी सुन ले। या अल्लाह तूने उस औरत जिसके मर्द ने उस पे दीन के नाम पे जुल्म किया, उसके दिल की निकली दुआ को कुरान का हिस्सा बना दिया। या अल्लाह हमारे दिल की इन दुआओं को भी दूसरों की हिदायत का जरिया बना दे। या अल्लाह वो मासूम सी मरियम के जिसके पास उसका मालिक बेमौसम के फल भेजता है, या अल्लाह उस पाक बच्ची को तूने जैसे बिन शोहर के बेटा दे दिया, या अल्लाह शोहरों वालियों को औलादे दे दे। या अल्लाह वो जोड़े जो औलाद से महरूम है उनको अल्लाह औलाद दे। या अल्लाह शाहीन को नेक सवाले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन जिनको मैं जानती और जिनको नहीं जानती, या अल्लाह उनको औलादे दे। और या अल्लाह जिनको दी है उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी नन्ही सी प्यारी सी मुस्तकबिल की एडमिन या अल्लाह आयशा सिद्दीका की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इसके माँ बाप के लिए इसको सदका जारिया बना। या अल्लाह हमारे बच्चे अब्दुल्ला जो हैं इनको अब्दुल्ला बना। या अल्लाह जो अब्दुलरहमान उनको अब्दुलरहमान बना, जो इब्राहिम उनको इब्राहिम बना। या अल्लाह यान को चुन ले, या अल्लाह हमार को चुन ले। या अल्लाह हमारे होस्ट इनके बच्चों को चुन ले। या अल्लाह जिन्होंने हमारी मेहमानियाँ की तो इनकी जन्नतों में मेहमानियाँ कर। या अल्लाह हम पे गम दुख डाल कर जो हमारे गुनाह माफ़ करते हैं, या अल्लाह वो हमसे नेकियाँ करवा ले। या अल्लाह ताहिरा को अपने दीन के लिए ऐसे खड़ा कर ले जैसे पहाड़ खड़े। या अल्लाह हमारे नॉर्वे के हर साथी को ऐसे जमा दे जैसे पहाड़ जमते। या अल्लाह ये बुनियादें हैं, या अल्लाह इनको ना हिलाना। इस वक्त भी या अल्लाह हमारे जो साथी नॉर्वे के स्कूल में बैठे सुन रहे हैं, या अल्लाह उनके दिल की हर दुआ कबूल फरमा। और सिर्फ उस मुल्क में इजाज़त मिली कि आप 50 तक कर सकते हैं, आज उस जगह मौजूद हैं। या अल्लाह जब तू रोकेगा हम रुक जाएंगे, जब तू इजाज़त देगा हम निकल आएंगे। आज हम तेरे नाम पे घरों से कर रहे हैं, कल तेरा नाम होगा तो हम खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह जैसे तेरे नबी की नाका अगर रुकी तो तेरे हुक्म से रुकी, और अबू अय्यूब अंसारी को अपना मेज़बान बना लिया आपने, और जहाँ रुकी वहाँ मस्जिद नबी बन गई। अल्लाह ऐसी इताअत दे हम अब सिर्फ इस लॉकडाउन के नाम पे सुस्त होकर घरों में ना बैठ जाएं। या अल्लाह जो नेमतें दी हैं उनका हक अदा करा। या अल्लाह हमारे सारे इदारों को आबाद रखना। या अल्लाह ये जगह, ये जिसने हिस्से डाले, या अल्लाह उनका क़यामत के दिन हाथ और हमारा गिरेबान ना हो। या अल्लाह हमारी जो कोशिश है जोहराबाद में, या अल्लाह उसमें अपनी मदद फरमा। या अल्लाह सारी दुनिया से लोगों ने उसको सपोर्ट किया, या अल्लाह क़यामत के दिन वहाँ तक उनका नूर पहुँचा दे। या अल्लाह जो बच्चियाँ इस वक्त भी वहाँ से ये सीख रही हैं, और जो साथी काम कर रहे हैं, या अल्लाह उनको आसान दर्जे पे करने वाला बना दे। या अल्लाह पेरिस के साथियों पे अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह उनको अपनी जगह दे, या अल्लाह ताकि वो खुद दरवाजे खोल के जाए, किसी का फिक्र ना हो। या अल्लाह लंदन वालों को भी अपनी जगह दे। या अल्लाह ये जगह सिर्फ तेरे नाम पे मांगी। या अल्लाह हमारी सारी जगह बिक जाए, हमारा सारा जेवर बिक जाए। या अल्लाह हमारा एक एक पैनी, एक एक क्रोन तेरे रास्ते में लग जाए, और तेरे दीन के पौधे पे बहार आ जाए। या अल्लाह दुनिया से कुछ नहीं चाहिए। तेरे नबी ने कहा था वमा लिए फिर दुनिया, मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, मैं तो एक रास्ते का मुसाफिर हूँ। मैं यहाँ थोड़े दिन रहूँगा, आगे चला जाऊँगा। कि उमर फारूक को अल्लाह के नबी ने कहा, उमर तेरे दिल में अभी भी कोई शक है? तू मुझे कैसरो किसरा के गद्दों और तख्तों से जोड़ता है? या अल्लाह मेरा भी दिल ऐसा कर दे, हमारे सारे साथियों के दिल ऐसे कर दे। या अल्लाह तेरे नाम पे बड़े घरों से हम छोटों में आ जाए, लेकिन सूद की लानत से निकल आए। जो हमारे नेकियों के रास्ते की रुकावट, जो हमारे बच्चों की नाफरमानियों की सूरत में सामने आता है, या अल्लाह तेरी रजा से मिले तो दोनों हाथों से लेंगे, या अल्लाह तेरी नाराजगी से लेंगे तो हम उसकी तरफ नजर नहीं डाल के देखेंगे। या अल्लाह मैंने जिन जगहों के नाम नहीं लिए, या अल्लाह तू उन जगहों को भी आबाद करते। या अल्लाह गुजराला में बहुत छोटा सा मदरसा है, सिर्फ डेढ़ दो मरले का मदरसा। या अल्लाह इखलास के साथ उसमें कुशादगियाँ दे दे, वसअतें दे दे। या अल्लाह अमन मस्जिद की वसी मस्जिद में हमारा मदरसा, या अल्लाह उसको पूरे शहर पे फैला दे। या अल्लाह सियालकोट के मदरसे को आबाद कर दे। या अल्लाह जिन्होंने वहाँ मेहनत की कमाइयाँ कर करके एक एक पैसे से जगह बनाई, और जो उसको चला रहे हैं, जो वहाँ आ रहे हैं, या अल्लाह उनको बेहतरीन तरीके से उसमें रखना। या अल्लाह हमारे ऑनलाइन के हर मदरसे को कायम रखना। या अल्लाह पेल टॉक हमारा वो पुराना घर था जहाँ से ये एक छोटा सा काम शुरू हुआ था। या अल्लाह उस वक्त से लेके जो साथी हमारे साथ हैं आज तक, या अल्लाह उनकी बेहतरीन मदद फरमा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह जो वादे तूने अपने नबियों से किए, या अल्लाह हमारे लिए भी वही हैं। या अल्लाह तू हमें बेहतरीन तरीके से कबूल फरमा। या अल्लाह हमें किसी दूसरे से मांगना ना पड़े, बेनियाज कर दे। या अल्लाह तेरा पूरा कुरान पढ़ लिया, कैसे तेरे प्यारे बंदे, तेरे नबी क्या क्या दुआएं कर गए। या अल्लाह वो सारी दुआएं मैं इस वक्त तुझसे कहती हूँ, जो तेरे नबियों ने दुआएं मांगी, वो सारी दुआएं मेरे और इन सब सुनने वालों के हक में कबूल फरमा ले। तेरे नबी की वो दुआ, اللهم إني أسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم। या अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी में दुआएं मांगी, हम भी तुझसे वो सारी चीज़ें मांगते हैं। और जिससे तेरे नबी ने पनाह मांगी, या अल्लाह हमें भी उससे पनाह दे दे। और या अल्लाह कमी पेशियों को दरगुजर कर दे। या अल्लाह मैं शैतान के दिलासों में आकर तुझसे मांगने से महरूम न कर दे। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। या अल्लाह हम जितने भी गुनाहगार हैं, शैतान जो मर्जी कह ले तुम्हारे कहाँ कबूल होंगे, तुम तो गुनाहगार हो। या अल्लाह हमें फिर भी दुआएं मांगने वाला बना। और या अल्लाह हमारी दुआएं सब की औलादों के हक में कबूल फरमा। या अल्लाह जो बाहर निकलते हैं, जो दीन का इल्म देने लेने के लिए निकलते हैं, या अल्लाह उनकी औलादों की हिफाजत फरमा। जिस्मानी और जज्बाती तौर पर या अल्लाह हमें मजबूत कर दे, बीमारियों को दूर कर दे, हमारे बच्चों की ख़ताओं को दूर कर दे। या अल्लाह बाहर के माहौल से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी बच्चियाँ मरियम अलैहिस्सलाम की तरह जवानियों को अल्लाह के नाम पर लगाने वालियाँ बन जाएँ। या अल्लाह हमारी वो बच्चियाँ जो कुरान पढ़ चुकी हैं, या अल्लाह उनके दिल में दुनिया की हुब कम करके उसको दीन की हुब में डाल दे। और या अल्लाह हमें वो औलादें दे जिनको देख कर, जिनकी नेकियों को देख कर हमारी आंखें ठंडी हों, उनको नमाज़ें पढ़ता देख कर हमारी आंखें ठंडी हों। या अल्लाह हमारे रोज़े कबूल कर, नमाज़ें कबूल फरमा, और अल्लाह मैं उन लोगों में कर दे जो सिर्फ़ एक बार कुरान पढ़ते हैं और पूरा कुरान उनके जिस्म रंग रूप से दिखने लगता है, और या अल्लाह वो साथी जिन्होंने अब आगे से कुरान सीखने की नीयतें और इरादे किए हैं और रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं डरते दिलों से, या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनके लिए इस तालीम को आसान फरमा, या अल्लाह उनके दिल में इसकी और ज़्यादा कदर बना दे, या अल्लाह हमारे वो किरदार बना जो पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, या अल्लाह वो बदनामियों का ज़रिया ना बने, या अल्लाह वो हमारे लिए बेहतरीन सदका जारियाँ बने, या अल्लाह वो लोग जो हमारे इन घरों में शामिल हैं, या अल्लाह उनको इसमें शामिल फरमा, हर शर फितने से बचा, पूरी दुनिया में मुसलमान जिस जिस आसमाइश में उनको निकाल, और या अल्लाह जो कुफर पे है या नाफरमानियों में है, या अल्लाह हमारे ज़रिए से, हमारी नस्लों के ज़रिए से उन तक इस्लाम ले जा, या अल्लाह जो कबायर का शिकार हो चुके हैं, जो शराब गुनाह जिना में पड़ चुके, फुखश पे चले गए, हराम पे चले गए, शैतान के हर वार पे चले गए, या अल्लाह उनको वहाँ से ले आ, क्योंकि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों की आपस में मोहब्बतें डाल दे, या अल्लाह भाई बहन जायदादों पे ना झगड़ें, या अल्लाह ख़ानदान वाले करीबी प्यारे सिर्फ रिश्तों के छूटने की वजह से अलग ना हो जाएं, या अल्लाह बच्चों को नेक मुत्तकी बीवियां दे और उनको बेहतरीन शौहर भी अता फरमा, और या अल्लाह कोई बुरी नज़र जो हमारे बच्चों पे डाले, या अल्लाह तो उसके मुकाबले में खुद काफ़ी हो जा, हमारे औलादों को दीन के खादिम बना, हाफिज़े कुरान, आलिमे कुरान, दाईये दीन बना, उनको शेयूख के दर्जे पे फाइज कर दे, उनको अपने रास्ते के शहीद बना, दुनिया में हक की गवाहियां दें और उनकी जान निकले तो तेरे रास्तों में निकले, या अल्लाह आज हमारा सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा गम जन्नत को लगा दे और जहन्नुम से बचने को लगा दे, या अल्लाह ख़ानदान का एक एक फ़र्द जो तेरे पास जा चुका उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह करीब के और दूर के जो तेरे पास चले गए बख्श दे, या अल्लाह हमारे माँ बाप पे अपनी रहमतें फरमा, जो जिंदा उनको सेहत और आफियत और तंदरुस्तियों के साथ जिंदा रखना, जो तेरे पास चले गए उनकी बख्शिश फरमा, या अल्लाह हमें उनके हक में सदका जारिया बना, या अल्लाह उनकी कब्रों में हम आग लगवाने का जरिया न बने, शर का जरिया न बने, या अल्लाह हम तो अपनी अक्ल से मांगते हैं, तू अपनी हिकमत से हमें अता फरमा, हर वो दुआ जो मेरे हक में बेहतर हो वो कबूल फरमा, और हमने बच्चों की तरह अगर कोई ऐसी दुआ मांग ली है कि जो हमें नहीं मांगनी थी, या अल्लाह उसको बेहतर करके इसलाह के साथ कबूल फरमा दे, तेरे खताकार बंदे, तेरे गुनाहगार बंदे, या अल्लाह तेरे जैसा कौन है, तू मालिक अल मुल्क है, या अल्लाह तो अहकमुल हाकिमीन है, या अल्लाह खूबसूरत दिनों में से एक दिन, खूबसूरत रातों में से एक रात गुजर गई, या अल्लाह सारी कायनात के निज़ाम चलाने वाले हमारे मामले सीधे कर दे, हो फव्विज़ अम्री इलल्लाह, या अल्लाह सारे काम तुझ पे डालती हूँ, या अल्लाह मैंने तो आज तक अपना कोई काम किया ही नहीं, आता ही कुछ नहीं, या अल्लाह मुझसे अपने काम करवा, हम सब से अपने काम करवा, और उसके बाद हमारे काम तू कर, रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह हमारे बूढ़े माँ बाप पे रहमतें फरमा, या अल्लाह हमें उनके साथ मोहब्बत करने वाला बना, या अल्लाह हमें इस बात की तौफीक दे दे कि हम कल क़यामत के दिन तेरे पास आए तो किसी का कोई एक आने पाई का हिसाब ना हो, या अल्लाह स्कूल के मामले में हमें सुरखरू रखना, या अल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट चला है इस रमज़ान में, राशन प्रोजेक्ट, साथियों ने अपनी सी पूरी कोशिश की है, या अल्लाह एक एक पैनी जो किसी ने दी और जो जिसके घर में पहुंची उसमें इनका हिस्सा डाल दें, या अल्लाह जो लिखत पढ़त हुई जो खरीदा गर्मियों में जा जा के घरों में दिया गया, या अल्लाह खुद भूखे थे दूसरों को दिलाया गया, या अल्लाह उन सब के इस एक एक काम को कबूल फरमा, और या अल्लाह हम से कोई कमी बेशी कबूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दे, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना वअख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, या अल्लाह जैसे तूने अपनी रहमत से हमें जौहराबाद कैंपस में अलबरका में बरकत दी, हमने वो जगह ली, अब उसके ऊपर के मामलात और उसको बनाने और उसमें भी तू खुद मदद कर, हमें किसी के ऊपर नजरें लगाने वाला ना बना, और या अल्लाह इन अमानतों की बेहतरीन हिफाजत करने वाला बना, या अल्लाह तू सिर्फ हमारा ही रब नहीं है, तू हमारी ज़िंदगी और मौत के फैसले करने वाला, या अल्लाह तो आसमानों का रब, ज़मीनों का रब, या अल्लाह तो पहाड़ों और समंदरों का मालिक है, या अल्लाह तो इंसानों और जिन्नों का रब है, या अल्लाह तो अर्श अजीम का रब है, ए अल्लाह तो फरिश्तों का माबूद है, तुझे इतने पूछते हैं, या अल्लाह तेरे आगे झुकते, तेरे लिए हमारी क्या औकात है, हम तेरी बड़ी कमज़ोर बंदियाँ हैं और तेरे बड़े कमज़ोर बंदे हैं, या अल्लाह हमारी सुन ले, या अल्लाह तू इज्जत देने वाला, तू जिल्लत से बचाने वाला, या अल्लाह हमें इज्जत दे दीन की और जिल्लत से बचा, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, खताकार बंदे, या अल्लाह माँ को भी अपना कमज़ोर बंदा अच्छा लगता है, या अल्लाह माँ को अपना कमज़ोर बीमार बच्चा, हैंडीकैप बच्चा ज़्यादा प्यारा लगता है, या अल्लाह हम इकरार करते हैं, या अय्युहन्ना अंतुमुल फ़ुक़रा, या अल्लाह हम सब तेरे आगे फ़कीर हैं, कमज़ोर हैं, गुनाहों में लुथड़े पुथड़े, हमारे अगले पिछले सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे, दूसरों के कहने पे किए, अपने नफ्स के कहने पे किए, या अल्लाह हमने जान के खुद को मजबूर कर लिया, या अल्लाह हमारे वो गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह हम पूरी तौबा के साथ तेरे सामने शर्मिंदगी की तस्वीर बने बैठे, कटहरे में खड़े हैं तेरे, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है ला तकना तो मे रहमत इल्ला, या अल्लाह मायूस नहीं है, या अल्लाह हम तेरे ना शुक्रे तो हैं, लेकिन तू भी तो कान अल्लाह शाकिरन अलीम है, या अल्लाह आज भी हम तेरे नाम ले पाए, या अल्लाह हमारा बस एक ही काम कबूल कर ले कि हम अपना नाम तेरे नाम के साथ जोड़ दें, तेरी नबी की उम्मती, या अल्लाह तेरे नबी ने बदर में दुआ की थी कि अगर आज 313 चले गए तो तेरा नाम नहीं रहेंगे, या अल्लाह आज भी तेरे नबी की उम्मत 2 बिलियन को पहुंच गई, लेकिन लोग उनके नाम मिटाने वाले इसलिए कि उम्मत में वो किरदार नहीं रहा, अल्लाह मुसलमानों को आम कर दे, तौहीद की गवाहियां देते हैं सुबह शाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है हमारा ईमान है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है अल्लाह, या अल्लाह तेरे सिवा किसी की तारीफें नहीं, या अल्लाह हमारे गुनाह बहुत है लेकिन तेरी रहमत उससे भी बड़ी है, समंदरों का मालिक अपनी रहमतें समंदर बना के हमारे ऊपर ले आ, या अल्लाह जैसे गुमराहियों के रास्तों से हटाकर आज सीधे रास्ते पे ले आया, अब चलाना भी, कोई एक ऐसी नमाज पढ़ा दे जो तुझे राजी कर दे, कोई एक ऐसा सजदा दे दे जो तेरा कुर्ब दे दे, या अल्लाह इबलीस ने एक सजदे के इनकार से तुझे नाराज किया, या अल्लाह हमें सजदों पे सजदे करके अंदर से झुकने वाला बना दे, ऐसी जिंदगियां दे कि जब गुजार के तेरे पास जाएं तो तू हमसे राजी हो, और या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजीला रब्बी की रादियत मर्दी, या की पुकार लग जाए, ईमान पे जिंदा रखना, ईमान पे मौत देना, तेरे हुक्मों की फरमा बरदारी करने वाला बना, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक दे दे, और या अल्लाह जो नहीं मांग सक रहे या अल्लाह वो दे दे, तेरी रहमतों के खजाने खुले हैं या अल्लाह महरूम ना करना, या अल्लाह इस सारे सफर में जहाँ वक्त की कमी बेशी मुझसे हुई, या अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, अगले सालों के लिए मुझे और अच्छी प्लानिंग की तौफीक दे, और जिन हमारे साथियों ने इस सफर में सब्र किया या अल्लाह तो उनको भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमा, या अल्लाह हम तो मच्छर के पर से भी हकीर हैं, या अल्लाह इस कोरोना वायरस को पूरी इंसानियत से दूर कर दे, हमें इस बात के लिए मोहलत दे कि हम दावत इल्लाह का काम करते हुए इन तक पहुँचे, और गैरों को इसलिए मोहलत दे कि वो अल्लाह की कुदरत और ताकत को मानकर अब इस्लाम के करीब आए, तेरा कुर्ब हो, या अल्लाह मैं एक एक के साथ तेरी बात करने वाला बना दे, और या अल्लाह अपने घर को आबाद रखना, या अल्लाह मैं इस साल हज की तौफीक दे, या अल्लाह जिसने भी नियत की है तू गैब से इसबाब बना दे, या अल्लाह अपने घर के दरवाजे ना बंद कर, या अल्लाह रूठा हुआ भी नाराज हुआ बच्चा भी वापस आता है तो माँ दरवाज़ा खोल देती है, या अल्लाह हम तेरे दर से वापस न चले जाए, या अल्लाह हम इतनी बड़ी सजा न दे हमारे गुनाहों की, अब तेरे घर आए और तू हमें अंदर ना आने दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह इस उम्मत पे अपना रहम कर, या अल्लाह सूद की गंदगी से बचा, या अल्लाह हमें पता है हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुझे नाराज़ होना चाहिए था, हमने खुद तेरे साथ इलाने जंग किया, या अल्लाह हमें ऐसे सारे मामला से पाक करके फिर अपने घर ले जा, तू चाहता शायद ये कि हम इससे पाक हो जाए, या अल्लाह इन सारी चीज़ों से बचा, हमारे इज्तमाही और इनफरादी गुनाहों को माफ़ फरमा, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व हसनुल जज़ा।